أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی میری آواز کم آ رہی ہے؟ جی مجھے بتائیں میرے, کیونکہ میرے پاس تو فل ہے وائس اوکے ہے. ٹھیک ہے, صحیح. جی کیسا لگ رہا ہے رمضان کے ساتھ؟ جی میں نے اپنا جو ہے والیوم فل کر دیا ہے جہاں پہ بھی ہے, تو دوبارہ سے اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ چیک کر لیں, وہاں پہ آپ کے وائس کم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مجھے بتائیں کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے؟ جی اچھا لگ رہا ہے بالکل, میری بھی یہی فیلنگس ہو رہی ہیں کہ ڈیلی کا ایک قرآن کا ہم پارا سن رہے ہیں نا, اور یہ سوچیں کہ جب ہم اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جو لوگ جنہوں کر رہے ہیں ماشاء اللہ, ان کی کیا فیلنگس ہوگی. تو ابھی جیسے روز ہی ہم لوگ بات ہوتی ہے کہ کافی لوگوں نے میرے گمان کے مطابق ارادہ کر لیا ہوگا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بعد میں ضرور جو ہے, ہاں جی بالکل, قرآن کو علم کو ہم نے بڑھانا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی مزہ ہے, اس کو جو چکھ لیتا ہے نا اس سے منہ موڑنے کو دل نہیں کرتا. جس طرح آپ کے جسم کے لیے خوراک کی ضرورت ہے نا, اسی طرح ہماری روح کے لیے اس قرآن کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ہم کل سے ماشاء اللہ ہمارا صبح بھی ریکیپ ہوتا ہے کلاس سے پہلے, اور اینڈ میں بھی جیسے ہماری ساری جتنا بھی استاذہ جی کرواتے ہیں تھوڑا سا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اتنا ٹائم نہیں لیتے کیونکہ ہمارا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے کل کا ہم نے لیسن کیا ہے, ہم ابھی جیسے القصص کے نام سے بھی ہم نے قصہ سب انبیاء کے پڑھ رہے ہیں, تو کیا لیا ہے آپ نے یہ لیسن؟ کسی ایک کسی سے بھی جو بھی آپ نے لیا ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں کہ فلاں نبی سے آپ نے کیا, سب کا ایک مقصد تو ایک ہی تھا, توحید کا تھا. جی سب لبیک بھی پہلے ٹائپ کر دیں, ون ٹائپ کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ میں. اور ایک اور چیز کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کلاس کے دوران اگر آپ آ جاتے ہیں نا, تو جو ہے اس میں جب ہمارے استاذہ جی کی کلاس لائیو سیشن ہو رہا, تو اس کے درمیان میں آ کے لبیک ٹائپ نہیں کیے کریں. ٹھیک ہے, نہ آپ السلام علیکم لکھیں, کچھ بھی نہیں لکھیں. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم جو لوگ آتے جاتے ہیں نا اسٹوڈینٹس ماشاء اللہ جن کی ڈیوٹیز ہے, وہ آپ لوگوں کو چیک کر لیتے ہیں, آ کے ادھر آئی ڈی شو ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کی جو ہے اٹینڈنس مارک کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا جس وقت آپ کو کہا جاتا ہے, ویسے تو پوری کوشش کریں آپ لوگ سب آن ٹائم پہ آئیں, کیونکہ جب ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ ہم ایک کام کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں, ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے, تو کوشش کرنی ہے کہ واقعی ہم اس کا انتظار کریں, نہ کہ کلاس میں جیسے استاذہ جی بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, سب لوگ سیٹل نہیں ہوئے ہوتے, تو یہ تھوڑی سی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہوتی ہے نا. ہم لوگ تو سب دیکھیں, ہر کوئی, ہم لوگ تو گھروں میں ہے نا, آرام سے سن رہے ہیں, ہمیں ماشاء اللہ اتنا اچھا. جی جی وہ مجھے ابھی پتا چل گیا, یہ آج کبھی کبھار جو ٹیکسٹ کلوز ہوتا ہے وہ نو پرابلم, آپ لوگ ابھی آن ٹائم ہیں الحمدللہ, یہ آپ آن ٹائم ہیں, کیونکہ پورے دو یا دو سے پانچ منٹ اوپر ہماری جو ہے جب لائیو کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو پہلے بلانے کا, کہ ہم لوگ خدا نخواستہ ہمارے لیپ ٹاپ میں یا کوئی ہمیں کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے, تو ہم اس کو پہلے سے سالو کر لیں. صحیح جی, حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھا لگا کہ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ انہوں نے غرور نہیں کیا تھا. بالکل صحیح. واٹ شرک اسٹرائک می آلو یاد واس ये मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है. एन एम व्हाट स्ट्रैक मी आल्सो यस्टरडे वाज के उस्ताजा जी सेड नॉट रसूल बट रसूल रसूल बिकॉज जिसने एक को जितना. हाँ जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा कि जिसने एक रसूल को जुटलाया उसने सब रसूलों को जुटलाया. सही, अल्लाह के अहकाम पर अमल और रसूल की पैरवी करनी है और खुद अमल करना है, दूसरों तक पहुँचाना है, सब्र और इस्तेकामत की जरूरत है. जी अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोगों के लिए तड़प देखे हमें भी तड़पना है. जी बिल्कुल सही बात है, जब हमारे अंदर तड़प आएगी तो हमें भी परेशानी लगती है. जैसे हमने कल किया क्योंकि आपका रिकैप कल भी हुआ तो उसमें था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आपने करीबी रिश्तेदारों में दावत फैलाएं, लोगों को दावत दें. जी कुरान वो समंदर है जिसमें डूबे जाए सुकून मिलता है. देखें अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआएं जैसे साजा जी साथ है, जब आपको अमल की बात लिखते हैं ना, कहते हैं ना इस आय से आपने क्या सीखा है, इसमें आप सोचें, तो वो जरूर पॉइंट नोट कर लिया करें और उसको उसको उससे ये फायदा होता है. देखिए हम इंसान हैं, हम अभी एज अ स्टूडेंट जब क्लास में होते हैं, क्योंकि जहां से भी इल्म मिले लेना है. जैसे साजा जी बार बार कहते हैं आप लोगों के कंसेप्ट अभी क्लियर है, लेकिन अभी तो देखिए हम सिर्फ ट्रांसलेशन के गो थ्रू जा रहे हैं, ऐसे ही है ना. उसमें देखिए इतना ज्यादा हम डिटेल से बात नहीं करें, सिर्फ ट्रांसलेशन साजा जी बता रहे हैं तो कितना मजा आ रहा है. ऐसे ही है ना, मूसा अलैहिस्सलाम से किताब के लिए वक्त देना था. जी से किताब के लिए वक्त देना है एज मूसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल जैसे उन्होंने दिया. फिर एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह आवर अचीवमेंट्स आर अल्लाह फजल ऑन अस. जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, इम्प्लीमेंट नहीं करवाना किसी को. तो मैं नहीं पढ़ना जैसे तमाम अंबिया ने किया. ये लास्ट वाला नहीं समझ आया क्या लिखा आपने. जी माशाल्लाह, कोशिश वाकई आपने यही करनी है. जैसे साजा जी साथ साथ बोलते रहते हैं ना कि गुनाह करे बंदे, गुनाह करने बंदा डरे तो अल्लाह बचा लेता है, गुनाह करना और ना डरना अल्लाह के अजाब को दावत देना है. ठीक है, वास्तव हम गुनाह करके क्या सोचते हैं, ये ऐसी चीजें मैं साथ साथ मैं ये नोट करने से ये होता है. जी हक पे जमे रहना है, बिल्कुल गुनाह करके हम डरते नहीं, बात कहते हैं कोई बात नहीं कर दिया तो अल्लाह ताला गफूर रहीम हमें माफ कर दे. अगर इस नियत से साथ करेंगे, ये सोचे जब हम गुनाह कर रहे होते हैं उस वक्त ही अगर हमें मौत आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें हमने लाजमन कोशिश करनी है. अच्छा सूरह शुरा में भी हमने माशाल्लाह डिटेल से देखा था, वहां पे 148 में एक शख्स का जिक्र मिलता है. वो कौन सा है जिसने बिल्कुल जिस वक्त कुरान में जिक्र आया था कि जन्नत का इतना अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दी गई है तो उसने वैसे ही बनवाई, लेकिन उसको वो जन्नत जो उसने बनवाई थी उसमें नसीब नहीं हो सकी थी. जी मतलब किसी को फॉलो नहीं करना, इन्वेस्टिगेट नहीं करना, बस पैगाम पहुंचाना. जी बिल्कुल बी फियर इन योर डीलिंग, हक इज हक एंड बातिल इज बातिल. बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक देखें बार बार हम अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से पढ़ो, सबसे ज्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है. और जी तोबा प्लस ईमान प्लस अमल सालेह, अल्लाह इन के बुराइयों को नेकियों में से बदल देते हैं. जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. जी वॉल्यूम जिनको नहीं आ रहा, जी यहाँ पे इंशाल्लाह ताला आप विस लिंक आपको डेली दिया जाता है, उस पे आप इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लें. जिसको आवाज नहीं आ रही पड़ जाती, या तो रीलॉग कर लें या दोबारा से स्टार्ट कर लें. सही. अच्छा मुझे ये बताएं, क्या तबलीग के बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे तबलीग करने के लिए? जैसे अभी आप साथ साथ बता रहे हैं कि हमें फेयर रहना है, हक को हक बताना है, बातल और हिकमत से बात करनी है, हालात और वाकया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. हाँ जी टीम वर्क भी बिल्कुल करेंगे, और साथ में जो शुरा में जो हमें पैगाम मिला है लास्ट में, कि तबलीग करने वालों को ताना तशनी से काम नहीं लेना, बड़े आराम से बड़े तहमल के साथ डिसिप्लिन के साथ काम करना है. बिल्कुल जी डिसिप्लिन के साथ भी करेंगे और सब्र हौसले के साथ. आप देखें जो आप सीख रहे हैं ना, अभी आपने सिर्फ ऐसा अभी सिर्फ दोरे कुरान की ट्रांसलेशन हम सीख रहे हैं, तो उसी के लिहाज से आप देख लें कि आप जिसको भी इन्वाइट करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, क्या सीख रही है? आप बोलेंगे कि हम सिर्फ कुरान पढ़ रहे हैं ना, कुरान में सिर्फ हम जी मकसद के हसूल सब्र इस्तकामत है जी, मकसद का हसूल क्या है? सब्र इस्तकामत है, और ये हमने जम जाना है इसको, ये नहीं कि अभी हमने दोहराए कुरान कर लिया, जैसे दादाजी बार बार कहते हैं तो बाद में अब हम फिर भूल जाए, नहीं बल्कि नेक्स्ट स्टेप अभी से हमने ले लेने हैं जी। हमकनेस, हम्बलनेस, ये आपने लिखा है सिस्टर आपका, ये आपने नहीं मुझे समझ आया क्या लिखा आपने, हम्बलनेस बिल्कुल होनी चाहिए, आजी होनी चाहिए बार बार जी। सूरह नमल, सूरह नमल उसमें मुझे बताएं अतियात, ठीक है? सूरह नमल में चिमटी से क्या सीख है? चिमटी माशाल्लाह जैसे दीन की दावत देने वालों को आने वालों की बहुत खातिर वजारत करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, उनको बहुत वार्मली वेलकम करना चाहिए। टीम वर्क सीखा, कमिटमेंट सीखी, जैसे हमने पीछे शहद की मक्खी का देखा था, अभी इनका भी देखें। और क्या सीखा है? कि सिर्फ आज से सीखी है बिल्कुल, और चिमटी है क्या, छोटी सी है देखें, और उसमें कमिटमेंट कितनी है। अगर जैसे सादा ही बोल रहे थे ना, अगर आप इसका गूगल पर सर्च करें, हारून याहिया की ट्रांसलेशन किताब मिल रही है उसमें, तो वो कभी आप उनकी बुक्स इंग्लिश उर्दू में या आप देखें तो माशाल्लाह वहां पे उनके देखें कि उनकी कॉलोनी जो रहने की जगह, वो हम इंसानों से भी ज्यादा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रही। फीमेल अ बिग रोल इन ऑल एजेस, बिल्कुल सही बात है, शहद की मक्खी का भी और अभी इन्हीं का भी देखें। अगर ये छोटी रकी से अल्लाह तला की एक मखलूक है, वो इतना अच्छे तरीके से काम कर सकती है, तो हमारे लिए तो ये बात शर्म की बात है ना, कि अल्लाह तला ने हमें सब कुछ दिया, इसके बावजूद हम ना शुक्री करते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर सलमान अलैहिस्सलाम का देखें, कितना बड़ा हुदा था, कितनी बड़ी बादशाहत थी, जानवर इंसान की कितनी बोलियां सीखी हुई थी, और बादशाह उन्होंने कितना देखें, दुआ जो अभी काजा जी ने, ये कुरानी दुआएं जो आपको बार बार कहा जाता है, ये वाली जो पड़ी है मसला, उन्होंने मांगी थी, रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ये वाली दुआ एंटा, ये लाजमन अपनी दुआओं में शामिल करें। और हमने एक और मुझे अपने वालदैन के लिहाज से, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये लाजमन अपनी दुआओं में शामिल करें, क्योंकि वालदैन का शुक्र है जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने का बायस बने, और ये देखें आप कुरान सीख रहे हैं, और उन्हीं के लिए हमें बेहतरीन सबका जारिया बनाए जी। शुक्र नेमतों को बढ़ाता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही। और आजी देखिए, क्योंकि अगर सुलेमान और अगर दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मिली थी नेमत, वो अभी तक बाकी पैगम्बरों को भी है, लेकिन इनकी खास का जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जैसे हवाओं का इंशाअल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, उनकी किताबें थी, फिर इसके अलावा जिन्नात उनके अंडर थे। जैसे एक शख्स का जिक्र आता है कि जब वो तख्त की बात होती है तो वो कहता है कि आप एक पलक जपने झपकेंगे आंख जो है, तो उससे पहले जो मैं तख्त इधर ले आऊंगा। अभी तक वो इल्म किसी के पास नहीं आया, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस दौर में हम हैं, ये तो बहुत एडवांस और तरक्की याफ्ता दौर, और हर चीज हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम उस मेयार को नहीं पहुंच सके जो उस वक्त का उनके पास था। उनका महल देखें कि कितना खूबसूरत था, जब मलके सबा अजर सुलमान इस्लाम के महल में दाखिल होती हैं, वो कितनी उसके खूबसूरत कुरान डिस्क्रिप्शन दी है ना, तो हमने भी कोशिश करनी है बहुत अच्छे तरीके से करना है जी, सही। और मुझे ये बताएं कि आगे हमने सूरह कसस दोबारा से स्टार्ट कर की है, माशाल्लाह नेक्स्ट सूरह है वो भी कंप्लीट हुई है सूरह कसस, वहां पे फिर दोबारा से अंबिया के हमने जी, अच्छे उस्ताद हर स्टूडेंट पर नजर आता है जी, बिल्कुल सही बात है। और हम जो स्टूडेंट देखे घर में बैठ के सीख रहे हैं ना, हमने अपने ऊपर खुद अपनी नजर रखनी है, यही है ना, ऐसे ही है ना, तो हमने भी कोशिश करनी है कि हमें कोई नहीं देख रहा सिवाय अल्लाह ताला की जात के, कि हम किस तरीके से और किस नीयत के साथ लेते हैं डेली। लाजमन जब क्लास स्टार्ट हो, नवाफिल शुक्राने के अदा करके, बल्कि पढ़ के अल्लाह ताला खैर वाफियत के साथ दुआ किया करें कि अल्लाह ताला खैर वाफियत के साथ हमें ये क्लास अंजाम तक पहुंचे, और बाकी भी जो पारे खैर वाफियत के साथ हम लोग कर चुके हैं। और उस्तादा जी की जो बातें वो उनके दिल से निकलती है ना, उनको लाजमन सोचा करें, सच 3 सेकंड हमें कहते हैं ना सोचें से क्या है, तो लाजमन हमने अपना सेल्फ चेक करना है साथ में जी। सबसे बड़ा जिहाद तो अकेले बैठ कर क्लास लेना है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कि हम लोग घर में होते हैं और आराम से सुकून से, ये भी तो मैं बोलूंगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और जितना इस पे शुक्र अदा किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, कि आराम से सुकून के साथ हम लोग घर बैठ के क्लास ले रहे हैं ना, सही। अच्छा, अब देखिए सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है कुरान में, सबसे ज्यादा? थोड़ा सा पहले आप सा देख लेते हैं कि आपने कितना भी पढ़ा है। सबसे ज्यादा सभी अंबिया का जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का। एक्सीलेंट, सही। अच्छा मुझे ये बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम का देखिए उनका मतलब जैसे बार 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 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला उनका जिक्र करते हैं, तो जेलस नहीं फील होता? कैसा लगता है कि अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत थी मूसा अलैहिस्सलाम से? आप दोबारा से जैसा सामने सूरह कसस में आप दोबारा से उनकी जैसे आज की माँ को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से सबक लेना है। बिल्कुल सही बात है। उनका हौसला था और किस तरीके से उनकी तरबिया की गई और किस तरीके से माँ को जब बोला गया कि इसको समंदर में एक बॉक्स में डाल के डाल दो, तो उन्होंने किस तरह किया? तो जैसे सादा जी कहते हैं कि सोचे क्या हम आज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे सादा जी ने यहाँ तक एग्जाम्पल दी है कि हम दरसों तक में नहीं बेचते, अगर किसी को कुरान के लिए बेचना हो तो हम नहीं बेचते, हमें इतनी ज्यादा है क्योंकि हमें अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हमें अल्लाह पे तवक्कुल होगा तो हम हर काम अल्लाह की खातिर करेंगे और उसे अल्लाह ही के हवाले करेंगे। ऐसे ही है ना? सही। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरतीब के साथ दोबारा से हमें जो कहानी बताई गई है उसमें अभी दोबारा से इसमें डिटेल फिर बता दी गई है ना, बार बार आ रही है, तो उसमें ये बताए उनका ये स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद क्या है? अभी जो दोबारा सूरह कसस में जिक्र आया तो उसका मकसद क्या था? और बार बार हमें अंबिया के किस्से बताए जा रहे हैं, बार बार इसका मकसद क्या है? वहां पे तो नबी सल्लल्लाहु को बताए जा रहे हैं उनके जरिए बने इसराइल की, हमें इससे क्या लिया है, हमने क्या सीखा इसे जी, क्या सबक लिया इसे? इबरत और तौहीद पे पक्के रहना है, इबरत और खोरो है। बिल्कुल सही बात है। तदब्बुर बहुत ये जरूरी चीजें हैं, ये लाजमी। पता है बात हम लोग उकता जाते हैं, ये क्या बार बार फिर वही लर्न फ्रॉम मिस्टेक पिछली कौमों से। बिल्कुल सही बात है, हमें पिछली कौमों के जो उन्होंने गलतियां की हैं, और ये सोचें कि बड़ी बड़ी जिन कौमों ने महल तराशे थे, जिनके जैसे साजन बताया था जैसे कौम के नाखून जो है वो लोहे के अल्लाह ताला ने बना दिए थे, तो उससे वो तराश उन्होंने पहाड़ों को घर बनाए हैं, और इतनी माशाल्लाह वो लोग बहुत ज्यादा जंगजू कौमें थी, ताकतवर और उनकी कद्दावर कौमें थी, और फिर भी इसके बावजूद उनको नीस्त नाबूद कर दिया गया सिर्फ नाफरमानी की वजह से। बिल्कुल हमने ये नहीं करना, और हमने कोशिश करनी है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि कोई भी अमल करो मुसलसल करो, लेकिन चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, तो हमने जरूर ये कोशिश करनी है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, इसको हमने परमानेंट करना है, टेम्परेरी नहीं करना। ये जरूर प्लीज हर कोई अपने तौर पे, क्योंकि हम इंसान हैं, साथ साथ हमसे खताएं हो जाती हैं, गुनाह भी हो जाते हैं, तो हमने कोशिश करनी है। जी देखिए सागा जी अभी तक मेरे हाथ में रेडी नहीं है, इसीलिए हम टाइम करा काफी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर भी इसके लास्ट से भी अगर कोई आपको फीलिंग्स हो अच्छी हो तो लाजमन एक कमिटमेंट करें। जैसे सागा जी ने कहा था अगर आप नए कोर्स के लिए इरादा रखते हैं यहाँ पे विया ईमेल जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो लोग लाजमन सेंड करें कि क्या आपका इरादे हैं, अगर ईमान वाले सच्चे हों तो अल्लाह उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल जी ऐसा ही है, आप खुद सोचें कि जितना ज्यादा आपका अल्लाह पे तवक्कुल होगा अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा। जी जरूर पूछें आप, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप क्लास में, क्योंकि हम क्लास में अभी हमारे पास टाइम है, जब तक सजा जी आ जाते हैं। इखलास होना चाहिए, सही बात, कमिटमेंट होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा हमने नमाजों को चेक करने बार जैसे हमने पीछे पढ़ा ना नमाज से, जैसे सजा ने बताया था आई एम नॉट गेटिंग मेल्स फ्रॉम लास्ट 2 डेज प्लीज। जी नहीं मिले, चले ठीक है इंशाल्लाह ताला, ये अभी हमारे इधर एडमिन्स हैं जो बैकअप पे हैं वो इंशाल्लाह ताला वो ले लेंगे। उस्तादा वाज टेलिंग ऑफ दौरे कुरान, जी दौरे कुरान के बारे में भी, उसके अलावा हमारी काफी क्लासेज जो ऑनलाइन हो रही हैं, अगर नूरुल कुरान की वेबसाइट पे जाएंगे आपको काफी क्लास वहां पे मिल जाएगी कौन कौन सी क्लास हमारी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है ना? और अगर आप इंटरेस्ट हो सकते हैं अल्लाह ताला चाहे आपके लिए कोई नई क्लास स्टार्ट हो जाए, दैट शी इज डूइंग इन विच ओनली 17-18 मिनट्स पर जूस। जी सही बात है, लेसन फ्रॉम कुरान, बिल्कुल सिस्टर आई डिड नॉट रिकॉर्डिंग एनी। जी ठीक है, सही, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही जी। यहाँ पे लिंक जो आपको साथ साथ सेंड कर दिए जाते हैं सिस्टर साइमा, अगर आपके पास लिंक है यहाँ पे सेंड कर दें इनको। जो भी अभी इधर एडमिन सुन रहे हैं तो प्लीज इधर इनको लिंक सेंड कर दे, डेली रिकॉर्डिंग के आपको लिंक सेंड किए गए हैं या ईमेल भी किए गए इंशाल्लाह ताला। दोबारा से जो लोग रजिस्टर्ड हैं इंशाल्लाह ताला आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको इंशाल्लाह ताला हम लोग ईमेल कर देंगे, ठीक है? आप वरी नहीं करें जी। जैसे तरावी में रिव्यू होता है तो कैन यू प्लीज टेल द लिंक फॉर, ओके यस 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 ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला अभी एडमिन से ये क्लास में है जी, तो इंशाल्लाह ये आपको विया ईमेल, ये देखें एक तो विस लिंक भी आ गया है सारा और नए कुरान का जिस ताज़ा ने जिक्र किया था बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको विया ईमेल जिनका है तो इंशाल्लाह आपको उसका लिंक जो है सेंड कर दिया जाएगा। वेन सबीलुल जन्नाह कोर्स स्टार्टिंग, जिस सबीलुल जन्नाह कोर्स सारे स्टार्ट हुए हैं काफी, मतलब हमारे एक अभी 10th पारा 11th पारा स्टार्ट होना है आफ्टर रमादान इंशाल्लाह ताला, ईद के फौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई हमारा 19वां पारा है, कोई उससे ज्यादा हो सकता है, कोई नई क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो जाए। तो जी आप इंशाल्लाह ताला खुलासा कुरान का लिंक इंशाल्लाह ताला जी एडमिन सारे हमारे नोट कर लिया है चीज को, इंशाल्लाह ताला आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह अभी हमारी जो है सुरंग कबूत जो है 20th पारा का स्टार्ट करेंगे। ये देखिए रिकॉर्डिंग लिंक भी आपके पास आ गया है, यहाँ से ये प्लीज अपने पास सेव कर लें, ठीक है? यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग लिंक भी है, और अगर मिक्स एल आर की वेबसाइट पे वहां पर भी जाए वहां से भी आपको डेली रिकॉर्डिंग जो है हमारी दौरे क्लास की वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? वो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये वाला भी आपको साथ मिल गया है क्योंकि मिक्स वगैरह का एक और ये फायदा है वहां पे, ये देखिए आपको अभी सेंड कर दिया है यूट्यूब पे डेली तरावी रिफ्लेक्शन बाय साजा जी जी, ठीक है जी। साजा जी रेडी हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आप लोग देख ही रहे हैं, और रमजान के बाद जो 6 रखने पड़ेंगे तो कैसे लगेंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत ही प्यारी सूरत है हमारे पास, हम शुरू करेंगे बगैर किसी डिले के। आप सब जो सामने स्पेशली बैठते हैं ना, तो थोड़ी सी चीजें जो ज़ाहिर पता नहीं चलता ना, तो एक तो ये कि वो रिकॉर्डर बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो पेज पलटते हुए का थोड़े से रिलैक्स हो। आप लोग जब भी अपने मार्कर रखते हैं ना टेबल इस पे, इसकी आवाज आ जाती है, और कुर्सी के ऊपर ज्यादा हिलजुल करे आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कभी किसी और से कहता हूँ, कहते हैं जिंदा लोग तो हिलते जुलते हैं। जब कभी घर में रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं अपने हस्बैंड को कभी कुछ कहूँ ना कि जरा ऐसे, तो कहते हैं जिंदा इंसान तो शोर करते हैं ना, लेकिन समटाइम ऐसा होता है बिल्कुल छोटी सी जगह है कि कमरा है, अब उसमें एक बंदा बैठा है तो वो हिलना जुलना भी चुपता है ना। तो लेकिन यह है कि आप माशाल्लाह आपको जिंदगी दे लंबी चौड़ी नेकियों वाली, लेकिन सिर्फ मैं आपको केयरफुल इसलिए कर रही हूँ कि जो बशरी खता से हो जाए इट्स फाइन, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, ठीक है? हम शुरू करेंगे जी। ऑनलाइन वाले भी माशाल्लाह डर गए होंगे, बल्कि कुछ शुक्र तो नहीं कर रहे लोग, शुक्र हम घर से सुन रहे हैं, हमें इतनी पाबंदी में ना सुनना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए शुरू करते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सूरत अनकबूत, थोड़ा सा सूरत का हम खुलासा देखेंगे। पहले नाम बड़ा अनयूजल है, मकड़े को कहते हैं स्पाइडर इंग्लिश में अगर आप देखें। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने चींटी के नाम पे सूरत नमल रख दी, और स्पाइडर के नाम पे सूरत है। बीच में आपने जुबाब का जिक्र पढ़ा, शहद की मक्खी का जिक्र पढ़ा नहल की सूरत में। क्या पता चलता है इन सारी चीजों से कि ये सब चीजें अल्लाह ताला की मखलूकात हैं, और अल्लाह सुब्हानहु तआला जिसको जो चाहे काम दे दे वो उस काम को कर रहा है। हमारे लिए इसमें बड़ी अहम बात यह है कि असल चीज इताअत है। जो बंदा इंसान होते हुए अल्लाह की इताअत ना करे उससे वो मक्खी और मच्छर बेहतर है, जो अल्लाह ने उसको काम दिया है कम से कम वो उस काम को कर तो रहा है। सूरत अनकबूत बहुत ही खूबसूरत सूरत है। इसका नाम सुनते ही मेरा दिल ऐसे दुखी हो जाता है जैसे कभी कुछ चीजों के साथ दुख की बातें मली होती है ना, क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लम पर उस दौर में नाजिल हुई थी जब बहुत तकलीफें थी, इतने सदमे थे तकलीफें। तो आप इस पूरी सूरत को अगर इसका मेन थीम देखें तो आजमाइश, अहले ईमान की आजमाइशें, दीन पे अमल करते हुए क्या होता है, और इसी तरह से हिजरत तक की नौबत आती है। इस पूरे सूरत का खुलासा यही है। अगर आयतों के हिसाब से देखें 69 आयतें, आयत 1-7 में बताया गया कि आजमाइशें तो आकर ही रहेंगी। आयत 8-13 में बताया गया कि हकूमत और सरदारों के दबाव में ना आओ, और तौहीद के मामले में वालदैन तक की बात नहीं माननी अगर वो शिर्क का हुक्म दें। आयत 14-40 आजमाइशों की तारीख है, जिसमें मुख्तलिफ अंबिया कराम की कौमों का तस्करा, और उस वक्त जो आजमाइशें आई थी उनका तस्करा है। आयत 41 से 43 में मकड़ी की तमसील है, यानी कैसे शायद की मक्खी, सॉरी कैसे मकड़ा या मकड़ी अल्लाह ताला के हुक्म पे घर बनाती है, और उस पर इंशाल्लाह हम देखेंगे क्या होगा। पारा 20 पे एंड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पारा जो है वो 44 से 47 वाला हिस्सा जो है, हबशा के अहले किताब को दावत दी गई है और कुछ एतराजात है और कुछ तौहीद के दलाइल है। आयत 56 से 60 तक हिजरत का हुक्म और रिस्क का वादा है। आयत 61 से 65 में तौहीद के दलाइल भी हैं कि अल्लाह को अगर माबूद मानते हो तो हाकिम भी मानो। और आयत 66 से 68 हरम की नेमत के बावजूद कुरैश की नाशुक्री और उनका इंजाम। और आयत 69 में फिर बता दिया कि हिजरत होगी तो उसके बाद अल्लाह की मदद जरूर आएगी। और ये जिंदगी का असूल बना लीजिए कि आज आप अल्लाह के रास्ते में जहां भी आजमाए जाएंगे, कल अल्लाह ताला उसका आपको बेहतरीन बदला देगा। अगर आप माली तौर पे परेशान हो गए, कोई बात नहीं, देखिएगा अल्लाह कुशादगी देगा। और बाकी चीजों में भी अल्लाह ताला का यही वादा है। आइए देखते हैं कि इस सूरत में आज हमारे लिए क्या है। देखा जाए तो आज के हालात भी कुछ इसी किस्म के हैं। हमने सूरत के शुरू से शुरू करना था ना जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम इसको पढ़ने के दौरान अपना मुहासबा भी करें। और आज के दौर में जो हमारा एक पेट जुमला बन चुका है कि मुसलमानों पे हालात बड़े तंग है, मुसलमानों के ऊपर बड़ी सख्ती है, तो जरा थोड़ा सा उसका तकाबुल भी कीजिएगा कि क्या वाकई आज सख्ती है। मैं तो कहती हूँ कि आज तो बहुत ही ज्यादा सुकून। जी लाइट चला दीजिए पीछे की। आज के दौर में तो आप देखिए कि बहुत सारा, यानी कर्टसी का दौर है, रिलीजियस फ्रीडम का भी नाम है, लेकिन ये उस दौर की कहानियां आप पढ़ें कि जिस वक्त ना कोई कानून था ना कोई बात थी, और मजहबी तासुब इस हद तक बढ़ा हुआ था कि खुले मुंह कहा करते थे कि अगर तुम इस्लाम में आए तो हम तुम्हें मार देंगे। तो अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए। शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये आयत तदब्बुर भी है, इसको हाईलाइट करेंगे। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा? हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे। अल्लाह को तो जरूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं, किस बात में, कलमे में, और झूठे कौन हैं। इसके बरक्स हम हसीबल लजीना या मलूना सही आती हैं यस बेकूना सामा या कुमून। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं वो ये समझ बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? तो वो बड़ा गलत हुक्म है जो लगा रहे हैं। तो सुन लीजिए, क्या जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसको मालूम होना चाहिए क्या कि अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त आने वाला है? खुद से पूछिए कि अल्लाह से मिलने की भी उम्मीद है, तवक्को है? और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। रह के जिंदगी में इस्लाम लाने के बाद करना क्या है? वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदू लिनफ्सी। और जो कोई मेहनत करता है, यानी मुजाहदा करता है, मुश्किलात से गुजरता है, तो अपने ही भले के लिए करेगा। यानी आज अगर मैं कोई काम करूंगी अच्छा, तो इसका फायदा कल मुझे ही होगा। और अगर आज आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपसे ही करवाएगा ये काम, इसमें कोई शक की बात नहीं। रह के अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला तो यकीनन जहान वालों से बेनियाज है। यहाँ तक आप देखिए कि सूरत का शुरू ही ऐसे लगता है हलचल मचाने वाला। इस तरह जोश से बात हुई कि देखो क्या कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए हो? क्या तुम कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहकर जन्नत के दावेदार बन गए? ये नहीं हो सकता। वो एक शेर इकबाल कहते हैं कि मैं खुद को मुसलमान कहते हुए डरता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद क्या मुश्किलात आती हैं। तो याद रखिएगा कि दुनिया में हर जगह टेस्ट होता है। आप किसी को कहते हैं ना आई लव यू, तो वो भी आपका इम्तिहान लेगा कि क्या वाकई वो आप वाकई उससे मोहब्बत में सच्चे हैं। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं ना, तो हम भी अल्लाह ताला के साथ एक किस्म का वादा कर रहे होते हैं कि अल्लाह हम तुझसे प्यार करते, तो अल्लाह ताला मुझसे आपसे फिर उसका टेस्ट लेता है कि बताओ क्या तुमने वाकई इस चीज के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है कि जो अल्लाह कहेगा वो करोगे? बंद मुट्ठियों से जन्नत कभी नहीं खरीदी जा सकती। आप देखिए, किसी के पास कोई बीज हो और उसको मुट्ठी में बंद रखे, कभी भी उसमें से पौधा नहीं उगेगा। फसल कहाँ आएगी और फल कहाँ से आएगा? कब होता है उस बीज को थोड़ी देर के लिए आपको मिट्टी में दबाना पड़ता है, फिर पानी देते हैं, फिर इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद कहीं जाके फसल पाते हैं। इसी तरह मैं और आप नेकियों को छुपा कर रख लेंगे, दिल से हम बड़े नेक हैं, हमें बहुत पता है, क्या करें, हमारे हालात बड़े खराब है, हमारी मजबूरियां ऐसी हैं, तो जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए मुश्किलात तो आएंगी। जिस तरह अल्लाह ताला का वादा ईमान वाले के साथ जन्नत का है ना, लिख लें ये भी, इस पारे का जम बना दीजिए, क्या कि जिस तरह अल्लाह ताला का ईमान वालों से मदद का वादा है ना, इसी तरह ईमान के बाद मुश्किलात का भी वादा है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी मुश्किलात में लोगों को बचा लेता है। मतलब देखिए कि बात लोग जो होते हैं ना, लफ्ज मुश्किल से या इम्तिहान से डरते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कोर्सेज में ज्वाइन नहीं करते, और लिसनर तो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम को आ सकता है, गेस्ट भी बन के आ सकते हैं। लेकिन अब उन्हें कहा जाए कि आप रेगुलर स्टूडेंट बनिए, आप फॉर्म फिल करें, आपको हम ग्रुपिंग देंगे, तो बस लोग कहते हैं नहीं, टेस्ट होंगे, इम्तिहान होंगे, असाइनमेंट होंगे। लेकिन आप कभी सोचिए कि आप माशाल्लाह बचपन से अब तक कैसे बड़े हुए, मैट्रिक भी किया तो 10 साल क्या किया, हर साल आपसे आपकी उम्र के मुताबिक इम्तिहान लिया गया। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपसे आप दूसरी क्लास के बच्चे से तीसरी क्लास का टेस्ट ले लिया जाए, एबीसी सिखाया तो ईएफजी का टेस्ट ले लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई साथ ऐसा नहीं करता। दूसरी बात देखिए कि उम्र के साथ जो जो हमारा इल्म बढ़ता है ना, तो हमारे फिर सवाल मुश्किल होते हैं। बच्चों को 2+2 मिलता है, बड़े होते हैं तो अगली क्लास में 2×2 आ जाता है, उससे आ गया तो 22×2 आ गया, होते होते उम्र के साथ इम्तिहान बहुत बड़े होते हैं। आज आप अगर अपनी तीसरी क्लास की बुक देखें तो आपको आसान लगेगी कि मुश्किल लगेगी? बहुत ही आसान लगेगी। पर जब आप तीसरी क्लास में थे, आप रोते हुए स्कूल जाते थे, हाय अम्मी ये बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं करना है। इसी तरह याद रखिए, जितना ईमान बढ़ता जाता है ना, उतने टेस्ट बढ़ते जाते हैं। शुरू में जिस वक्त आप उस टेस्ट में होते हैं ना, आपके बिल्कुल इवन होता है। आज से ये मिसाल लिख ले अपने लिए, इसको बना के पैरेबल दूसरों को बता दीजिए कि आपका जितना इम्तिहान है, जितना ईमान है उतनी आजमाइश है। अल्लाह ताला कभी आपको, मुझको, आपकी मेरी वुस्सत से ज्यादा मुश्किल में नहीं डालेगा। ये अल्लाह का वादा है, ये मेरे आपके कहने की बात नहीं है, बल्कि हकीकत की बात है कि अल्लाह ताला आपको मुझे उतना ही आजमाएगा। हाँ, फिर इसके बाद देखिए कि एक इम्तिहान के बाद ही तो अगला पर्चा, अगली क्लास में आप कब आए? पूरी किताबें पढ़ ली कि आप आगे नहीं आए? आप कब आए? जब आपने इम्तिहान पास किया। तो मैं और आप जिंदगी में अगर अगले दर्जों पे जाना चाहते हैं, ईमान के, तकवा के, शुक्र के, सब्र के, तवक्कुल के, तो हमें खुद टेस्टों में कूदना है कि अल्लाह जी आप हमारा टेस्ट लीजिए ताकि मैं अगली क्लास में जाऊं। हमें अपने ऊपर हैरत होनी चाहिए, कब से ईमान के एक ही दर्जे पे चल रही हूँ, कब से एक ही अमल चल रहा है, कब से मेरा हिजाब एक ही अंदाज का चल रहा है, कब से मेरी नमाज एक ही अंदाज की है। खुद को चेक किया करें। अगर जिंदगी में टेस्ट आ रहे हैं, इम्तिहान आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिक्र नहीं करना, बल्कि खुश हो कि अब अल्लाह ताला मुझे अगली क्लास में लेकर जाएंगे। फिर इसी तरह आपसे पूछा गया, अल्लाह के नबी सबसे मुश्किल आजमाइश किसकी हुई? तो आपने फरमाया अंबिया की, फिर सालेहीन की, और फिर दर्जा बदर्जा ईमान वालों की। ये चीज वाकई आपको मुझे यकीन दिला देती है कि हम कहाँ खड़े हैं। सूरत बकरा में भी हम ये चीज पढ़ चुके, और अब पर सूरह कुरान पाक का आप देखिए कि आखिरी हिस्सा शुरू होने वाला है, इसमें तो खास तौर पर इसकी फिक्र करें कि मन का नजर जूल खाल हो, क्या मेरी आपकी दिन ब दिन जिंदगी मौत से करीब नहीं होती जा रही? तो इसी बहाने हमारा अल्लाह से मिलने का वक्त भी तो करीब आ रहा है ना। तो अपनी जिंदगी में संजीदगी लाने की जरूरत है। हमें हर वक्त इस बात की फिक्र कर देनी है कि अल्लाह तू मुझे अपनी तौफीक दे कि मैं नेकियों की तरफ आ जाऊं। फिर आप देखिए कि बाज दफा इंसान को दीन पर जो इम्तिहान आते हैं ना, वो क्यों मुश्किल लगते हैं? क्योंकि इसमें लोग फिर हमसे दुखी होते हैं, लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। तो ये सोच लीजिए कि एक ही वक्त में अगर अल्लाह और बंदों दोनों को खुश करना हो, तो मैंने अल्लाह को खुश करना है। बाकी वक्तों में बंदों को खुश कीजिए, लेकिन उस वक्त अल्लाह को चूज कीजिए जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इम्तिहान हमें पुख्ता करने के लिए आते हैं। आज अगर आप अपनी जिंदगी के पीछे मुड़ के देखें, आप अगर पीछे मुड़े हैं, तो आपको कुछ चीजें जो अपने वक्त पे बहुत बुरी लगी होंगी, चीखें निकल गई, हाय ये इम्तिहान क्यों आया, हाय ये मौत क्यों हो गई, हाय ये सदमा क्यों आया, लेकिन आज आप उसको अपने लिए नेमत समझेंगे। आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस तकलीफ से, उस मुसीबत से ये सीख लिया। तो सीख लिया तो आपकी खैर हो गई। तो बिल्कुल इस तरह अपने दिल को खोल करके कि अल्लाह अगर कोई इम्तिहान आए तो बस मुझे साबित कदम रखना, मुझे मुश्किल में ना डालना। एक औरत थी तो बीमारी की वजह से उसका सतर खुल जाता था। अल्लाह के नबी के पास आई तो कहने लगी मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो आपने कहा कि तू चाहती है कि इस बीमारी के बदले तुझे जन्नत मिले? कहा हाँ। तो कहा फिर तू सब्र कर ले। कहा अच्छा चले ठीक है, फिर मेरी बीमारी ऐसे ही रहे, बस ये दुआ कर दें कि मेरा सतर ना खुले, मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ। तो हर छोटी बड़ी मुसीबत, मुश्किल, तकलीफ मुझे आपको अल्लाह ताला के काबिल करती है। फिर आखिरी बात जो हमने नायतों में पढ़ी कि जो मुजाहदा करेगा, जिहाद करेगा, तो वो अपने ही लिए करेगा। तो मुजाहिद कौन होता है? वो बंदा जो हर वक्त अल्लाह की इताअत में सरगर्म रहे। किससे लड़ना पड़ता है? नफ्स से पहले लड़ना पड़ता है, इसको इताअत पे माइल करना पड़ता है, फिर इसी तरह अपनी सुस्ती से लड़ना पड़ता है, नींद से लड़ना पड़ता है, दौलत से लड़ना पड़ता है, अपनी मनपसंद चीजों से लड़ना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा आप इस जिहाद में कामयाब होते हैं तो उसके बाद दीन को समझना, सीखना, फैलाना, उसके लिए निकलना, सुबह को निकलना, रात को निकलना, जिस सब अल्लाह के वादे हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह को निकलना या एक रात को निकलना दुनिया व माफीहा से बेहतर है। यानी आपका आज इस बारे को सुनने के लिए घर से निकलना, मुजाहिदा किया ना, मेहनत की, गाड़ी लगी, पेट्रोल लगा, क्या कुछ सेट करके आए, तो हो सकता है ये आज एक दिन का आपका निकलना आपकी पाकी दुनिया और माफा सीहा की जो आपकी दुनिया की बाकी चीजें उससे भी आपको कोई बड़ी खैर दे दे। हदीस में आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह सुबहान तआला जन्नत को बुलाएगा, वो बड़ी जीनत और सजावट के साथ आएगी, नुमाइश और आराइश के साथ होगी, बहुत सजी भी होगी, समरी भी होगी। फिर अल्लाह सुबहान तआला उससे पूछेंगे कि बता तो किसके लिए तैयार हुई है, तो वो कहेगी कि मेरे वो बंदे की, अल्लाह तआला कहेंगे मेरे वो बंदे किधर हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में किताल किया और उनसे किताल किया गया, उनको तकलीफें हुई, दी गई, वो सताए गए, और जिन्होंने मेरे रास्ते में जिद्दोजहद की, तो वो सब लोग आएंगे जो कि वाकई अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करते हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा इन सबको, जाओ तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितना प्यारा वक्त होगा, सबको ये छोटी छोटी तकलीफें याद रहेंगी, बच्चों का रोना, घर वालों का नाराज होना, ये करना वो करना, ये सब भूल जाएगा। सिर्फ आज मुझे आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत है कि कहीं हम अपनी इतनी प्यारी जन्नत को कहीं जाया ना कर दें। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि जब जन्नत की बात होती है ना, तो साथ ही साथ ईमान और फिर मुनाफ़त का तकाबुल भी होता है। अगली आयतों में देखिएगा, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, इनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे और इन्हें इनके बेहतरीन अमल की जजा देंगे। इसको भी आज समझ ही जाइएगा। आप देखिए कि बुराइयां कैसे दूर होती हैं, चॉइस बदलने लगती है, एक ही कैफियत होती है, मेरी तो नहीं होती। कभी कोई नमाज इतनी मजे की कि दिल करता कोई छोड़ा ही ना आपको, आप बैठे ही रहे अपने जाए नमाज पे, बैठे अल्लाह से बातें ही करते रहे, और कभी सिर्फ घड़ी देख कर नमाज पढ़ रहे हैं, कभी बच्चे शोर कर रहे हैं तो उनको देख रहे हैं, कभी कोई बड़े को काम है कहीं निकलना, फर्क है ना। ये जो है ना अफसन माँ का अनुयामल, क्यामत के दिन एक अल्लाह ने आपको मुझे गिफ्ट देना है, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसा कर दे। अल्लाह ताला हमारी सारी जिंदगी की नमाजें लेकर आएगा, फिर उसमें से कभी जो सबसे खूबसूरत नमाज पढ़ी थी, इमेजिन करें जिस दिन वाकई लगा कि मिलके ही आए अल्लाह से, अल्लाह ताला बाकी सब नमाजों को अपग्रेड करके उसके बराबर करके कबूल कर लेगा। अक्सर नुमा का दिया मालूम, ये है नुकता नवाज। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कोई ऐसे अमल जरूर कर लें कि जो हम अल्लाह ताला को दिखा सके। फिर इसके बाद माँ बाप के कुछ हकूक की बात आती है। वसईन अल इंसान अभिवालिदैह एहसान हुस्ना, वसईन अल इंसान अभिवालिदैह हुस्ना, हमने इंसान की हिदायत, इंसान को हिदायत की है कि अपने वालदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो भी तुझ पर जोर डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को माबूद ठहराए जिसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो इनकी इताअत न कर, मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा तुम क्या करते रहे हो। क्या पता चला कि माँ बाप की खिदमत तो करनी है, माँ बाप की रिस्पेक्ट तो करनी है, लेकिन उनको होली नहीं बनाना। ये उस दौर की कहानी है जब घर घर में जंग, बच्चे उठ उठ के इस्लाम पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नबी का साथ दे रहे हैं। अब उनके बड़े हो सकता है कुछ और ही खानदानी रिवायात में पड़े हुए थे, दीन के नाम पे बिदात को तरवीज दी हुई थी, तो उनके बच्चे जब मुसलमान होते, यंगस्टर टीनेजर जब कुरान पढ़ते आते तो चेंज होते, तो फिर माँ बाप उनको फोर्स करते आराम से बैठो, ठीक हो जाओ, शिर्क करो, नबी का साथ छोड़ो। अब कुछ नेक बच्चों के दिल में ये गिल्ट था कि हम नेकियों का काम करते हैं लेकिन हमारे माँ बाप हमसे खुश नहीं, तो उस पर अल्लाह ताला ने माइंड सेट किया, डोंट वरी, उनकी इज्जत करो, खिदमत करो, बदतमीजी नहीं करनी, लेकिन बात वो माननी है जो कि अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक होगी। और जो लोग ईमान लाए हों और जिन्होंने नेक अमल किए हों, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, तो हम इनको जरूर सालेहीन में दाखिल करेंगे। दोबारा देखिए फिर एक इंसान का किरदार, ये निफाक वाला शख्स है, शुरू में ईमान की आजमाइशों की बात थी, तो अभी आजमाइशों के डर पे ईमान को छोड़ने वाले की बात। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, लोगों में कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब अल्लाह के मामले में सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह से ले लिया। अब अगर तेरे रब की तरह से फतह नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा हम तुम्हारे साथ थे, यानी लोगों की बातें उसको अल्लाह का अजाब लगता है। ये थोड़ा दिला शख्स है कि जो अल्लाह की इबादत नहीं करना चाहता और लोग सिर्फ उसको थोड़ी सी कोई बात ही कर देना, एक जाते जाते किसी ने बुली कर दी, किसी ने निंजा कह दिया, किसी ने मुस्लिम का नाम लेके छेड़ दिया, तो वो कहता है पता नहीं ये अजाब हो गया। यानी आप कह लें कि ये पीपल प्लीजर शख्स होता है। वो कहते मैं हिजाब तो पहनूंगी लेकिन कब, जब लोग मुझे कहेंगे आप कितनी प्यारी लगती हैं हिजाब पहन के, आप तो और भी खूबसूरत हो गई, आपके चेहरे पे तो नूर आ गया। ये कहेगा मैं हिजाब करूंगा, ये कहेगी मैं हिजाब करूंगी। और अगर हिजाब पहना और कोई कहता है ये कैसी लग रही हो, बड़ी लग रही हो, अम्मा लग रही हो, बस फौरन उतार दिया। यानी ये इस शख्स की कहानी है। तो याद रखिए कि जब भी दीन के नाम पर कोई मुश्किल आती है ना, तो दो में से एक काम जरूर होता है। एक तो ये है कि इस्लाम ऐसे लोगों से पाक हो जाता है, और दूसरा ये कि ईमान वालों के दिल में जो थोड़ी थोड़ी खोट खपट इंसानी तकाजों के तहत होती है ना, वो निकल जाती है। जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो कभी प्रीशियस नहीं बन सकता। बस अगर आप देखें कि कार्बन है, लोग आए कार्बन आप जानते हैं कोयला होता है, उसको बोझ में डालते हैं, डला रहता है, जब पहाड़ों के अंदर खूब दबता है तो वो डायमंड बन जाता है। फिर उसको जौहरी काट काट के खूबसूरत काट देता है, वो और कीमती से कीमती कितने कैरेट का डायमंड बन जाता है। आप मैं दीन के नाम पर जो मुश्किल आए उस पर यह सोचें कि मैं डायमंड बन रही हूं। अगर मैं और आप प्रेशर नहीं समझे, बर्दाश्त करेंगे, पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, पीयर बन जाएंगे ज्यादा ज्यादा, और तो कुछ नहीं बनेंगे। अगर डायमंड बनना है तो उसके लिए कोशिश करना होगा। बहुत से सारे लोग जो थे ना इंस्पायर हो जाते हैं, कहते हैं बहुत इंस्पायर्ड हो रहे हैं आजकल दौरे कुरान सुन के। इंस्पायरेशन से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसके बाद मेहनत और मुशक्कत और मुजाहिदा करना पड़ेगा, बातें सुननी पड़ेंगी। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इल्म दोस्त बना, अल्लाह मेरी इम्प्लॉयमेंट पक्की कर दे, मुझे इस किताब के लिए कहीं ना कहीं खपा दे, इससे पहले कि मैं जाया हो जाऊं और बेकार ईंटों की तरह इधर उधर पड़ी रहूं। अल्लाह ताला तू मुझे किसी न किसी रास्ते में लगा ले, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फायदा होगा। ये शुरू के छोटे छोटे मुजाहिदे जो है ना, इसके बाद असल जंग और किताल तो कभी आता है कभी नहीं आता, हर एक के लिए तो ये नहीं होती। तो मुझे आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को रब के सामने पेश करना है कि तू बचा बचा के न रख इसे कि तेरा आईना जो शिकस्ता हो, तो अजीज दर है निगाह आईना साज में। तो अल्लाह ताला मुझे आपको मुहसिन बना दे और हम अल्लाह के रास्तों में चलने लगे। लेकिन इसके बरक्स मुनाफिक का हाल क्या होता है, फरमाया अब अलैहि सल्लल्लाहु बिआलम बिमा फी सुदूरिल आलमीन, क्या दुनिया क्या ये नहीं जानते कि दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम है, और अल्लाह को तो जरूर ही ये देखना है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन है। अल्लाह तो हमारे लिए तो ईमान का ही नाम लिख ले, हमारा निफाक दूर कर दे, हम तुझे पूरी इजाजत देते हैं, चाहे जोर से करे चाहे जबरदस्त, यानी इजाजत हमने क्या देनी है, इसको काट दे। हम तो अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें पूरे दिल से ईमान के लिए चुन ले, हमें निफाक वाली जिंदगी नहीं चाहिए, हमें ऐसी जिंदगी नहीं बसर करनी कि जिसको पाकर हम तुझे नाराज करके तेरे पास आए, बल्कि तू हमारे लिए आसानियों के मामले करते हुए हमारे हमारे पर वो आजमाइशें ना डालना कि जो आजमाइशें हमारे ईमान को ले ले, इसके बाद जो भी आए हमें उस पर राजी कर दे। फिर इसके बाद एक और बात देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत आयत है, वाकई आजमाइशों के अंदर ये आयत जो आयतें बंदे को बहुत तसल्ली देती हैं। वकाल अल्लज़ीना कफरू लिल्लज़ीना आमनु तबिउ सबीलना वला नहमिल खताياكم, ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं हम तुम्हारे तरीके की कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे। जरा सोचिए आज भी कोई कहता है, बहुत सारे कहते हैं, मैंने अपने कानों से माओ को कहते सुना, अपनी बेटियों को करो करो पहनो ये, जाना पड़ेगा मूवी सेशन होगा, करो करो, अगर अल्लाह पूछेगा मैं आगे आ जाऊंगी, यकीन करें। अल्लाह ताला कहते अच्छा ये इतनी बहादुर माँ है कि अपने गुनाहों के साथ बेटी का भी उठाएंगी, हालांकि इनकी खताओं में से कुछ भी वो उठा नहीं सकेंगे, और अलबत्ता ये तो झूठे लोग हैं, अलबत्ता ये कतन झूठ कहते हैं। तो जिंदगी में कभी किसी बंदे को खुश करने के लिए रब को नाराज ना करें, क्योंकि क्यामत का बोझ आपने मैंने खुद ही उठाना है। हाँ जरूर ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी, और क्या अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी, और क्यामत के रोज यकीनन इन इफ्तराबाजियों की बाज बरस होगी जो वो करते रहे। आज तो सकते औलाद खामोश हो जाए, ये बीवियां खामोश हो जाएं, ये बहुएं खामोश हो जाएं लोगों के ये लोगों की ऑफर सुन के, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कल मैं तो जरूर पूछूंगा कि सुनाओ भाई तुम क्या करके आयो। यकीन करें इस दुनिया के दजल से बच के जो इंसान दुनिया में आएगा, वही बंदा अपने आप को अल्लाह ताला की काम का करेगा, वरना ये दुनिया तो हमें जन्नत में भी नहीं जाने देगी। यकीन कीजिए हमारा दिन इतना बैलेंस दिन है कि कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं है। अल्लाह को अल्लाह का हक दो, बंदों को बंदों का हक दो, खुद को भी हक दो, नफ्स का हक है, मेहमान का हक है, घर वालों का हक है, करते जाइए मुतमईन रहेंगे। कहीं कोई आपसे हक से ज्यादा मांगे तो आपके एक्सक्यूज मी क्या कहा आपने, सॉरी आपका हक तो नहीं है, इसमें तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें तो मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। हम बहुत सारी ऐसी इजाजतें लोगों से मांग रहे होते हैं जिसकी कतन जरूरत नहीं होती। हमें से कोई वॉशरूम में जाने से पहले किसी से इजाजत नहीं मांगता कि मैं घर में जा रही हूँ, क्या मैं वॉशरूम में जाऊं। खाना खाते हुए कोई इजाजत नहीं लेता शोहर से खाने की, शोहर को पता ही आपकी बेसिक्स है। तो इसी तरह हिदायत भी मेरा आपका बुनियादी हक है। अब आगे कौमों के थोड़े से किस्से जिसमें यही पता चल रहा है कि आजमाइशों के बाद कौन लोग बचाए गए। वलकद अरसलना नूहन इला कौमी ही, हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, वो 50 कम 1000 बरस इनके दरमियान रहे। आखिरकार इन लोगों को तूफान ने घेरा इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह को और उन कश्ती वालों को हमने बचा लिया और इसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बना के रख दिया। इशारा अल्लाह के नबी की तरफ कि आप भी बच जाएंगे और आपके पैरोकार भी बचेंगे। और आप देखिए वो कश्ती अभी तक खुलेआम तो बाहर नहीं आई, लेकिन आएगी, हमारा ईमान है। जूदी पहाड़ कहते हैं डिस्कवर हो गया जहाँ तूफान नूह के बाद कश्ती टिकी थी कुरान की रोशनी में, और अब वो कश्ती ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी अब इंशाल्लाह। जैसे फिरौन की मम्मी मिली तो उस वक्त कुरान की आयतें साचे, अल्लाह ने क्यामत तक के लिए इसको निशानी बनाई कि देखो तौहीद और शिर्क का ये बड़ा फर्क है कि आज अगर तुम आजमाइशों में हो और तुम्हारी टूटी फूटी कश्तियां ईमान की, अल्लाह ताला तुम्हें कल बचा लेगा। जैसे कि आगे इब्राहिम का किस्सा है, वह इब्राहिम इस काल अली कौम में ही और इब्राहिम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूछ रहे हो वो तो महज बुत हैं। बुत थे जी बिल्कुल, और तुम तो महज झूठ कर रहे हो। दर हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिस्क भी देने के इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिस्क मांगो, इसी की बंदगी करो और इसी का शुक्र अदा करो, और बात क्या है कि इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। ये पलटाए जाने का एहसास बंदे को बहुत ज्यादा चुकन्ना कर देता है, होशियार कर देता है। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले की बहुत सी कौमें झुटला चुकी और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तिदा करता है, सुम्मा युईदुहू, फिर वो इसको दोहराएगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाही यसीर, आप देखते हैं कि अल्लाह ताला कैसे मखलूक की इब्तिदा करता है। बाप और मैं तो इंसानी मखलूक की बात करते हैं ना, कल अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मंजर दिखाया जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा तो मतलब वीडियो में ही है लेकिन अमेजिंग है। इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाते हैं कि किस तरह अंडे में से बच्चा निकलता है। आप तो हम सब जानते हैं, बचपन से हमने ये बातें सुनी हुई है कि हैच होता है और अंडा होता है, तो वो एक मशीन थी बेसिकली कि जिसके अंदर वो अंडा तोड़ के तो उसको एक खास टेम्परेचर में रखते हैं, फिर उसको उसमें से ऑब्जर्व करें, जैसे इंक्यूबेटर में बच्चे को देखते हैं कैसे वो अंडे के अंदर एक वाइट सी छोटी सी फुटकी होती है। आपने भी देखी होगी जब अंडा तोड़ते हैं वो असल में मेल और मेल होता है, फिर वो दोनों मिलके असल में अंडा जो होता है ना जाइगोट होता है। जिनको समझ आ रही है बात उनको समझ आ रही है। तो वो फिर ना उसको एक खास टेम्परेचर में रखते हैं, फिर वो अंदर जो शेप बदलती है और उसके बाद फिर आखिर में उसमें से एक बच्चा निकलता है चूजे का। ये आज मुझे पढ़ते ही वो याद आ गया, इंशाल्लाह मैं आपको भी भेजती हूँ तो आप जब हम खोलेंगे स्क्रीन तो फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह मालिक अल्लाह की शान है किस तरह वो खल की तख्लीक करता है। और मैं और आप कभी इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं, हमारी जिंदगी में इस तरह की तो कोई बातें ही नहीं आती। और जब मुझे आपको इस चीज का यकीन आ जाएगा ना कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है, तो फिर हम वाकई उस वक्त अपने आप को अल्लाह ताला के आगे पेश कर देंगे। कुल सीरु फिल अर्दि फंजुरु कैफ बदा अल खल्क थुम्मा अल्लाहु युंशिउ नशअत अल आखिरा, इनसे कहो जमीन में चल फिर कर तो देखो कि इस तरह खल की इब्तदा की है अल्लाह ने, फिर अल्लाह दूसरी बार भी जिंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, जिसे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम कर दे। और फिर इसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो, तुम ना तो जमीन में आजिज करने वाले हो और ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए है ही नहीं है। सच है कि नहीं? जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया और अल्लाह की उससे मुलाकात का इनकार किया, जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयतों का इनकार किया और साथ उसकी मुलाकात का, वो मेरी रहमत से मायूस हो चुके हैं, उनके लिए दर्दनाक सजा। आप एक चीज पे थोड़ी सी तवज्जो रखें कि बार बार इसमें अल्लाह ताला से मुलाकात का तज़किरा है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि 20वें पारे के बाद जैसे वो जिंदगी का आखिरी दौर नहीं शुरू हो जाता कि जिसमें मौत भी याद आती है, बार बार बीमारियां भी आती हैं ताकि मैं मौत याद आए, इसी तरह इन पारों में अल्लाह ताला हमें वापसी याद दिला रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अब तक 29 और 30वें पारे का तो पूरा थीम ही जो है वो हमारे सामने आ जाता क्या, क्यामत, हशर, नशर। तो आज मैं और आप अपने लिए ये चीज नोट करें कि क्या वाकई हम अल्लाह ताला से मिलने को तैयार हैं, और अल्लाह ताला हमें मायूस ना करे और अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामले फरमा दे। फिर इसके बाद फरमाया, फिर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा कि कत्ल कर दो इसको और जला डालो इसको। आखिरकार अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया। यकीनन इसमें निशानियां हैं, यकीनन इसमें बहुत सारी निशानियां हैं उस कौम के लिए जो ईमान लाने वाली है। और इसने कहा, तुमने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना दिया। यानी मोहब्बत की कुछ बेसिस होती है ना, ये कौन सी बेस है मोहब्बत की, कि जिसमें फन, फ्रॉलिक, ना गाने बजाने और शेयरिंग और केयरिंग और क्या कुछ लोग उस वक्त कर रहे होते हैं कि जिसके नाते से वो अपने आप को अल्लाह से दूर और दूसरी चीजों से करीब महसूस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं, क्या तुम बुतों की मोहब्बत पे हो? आप और मैं भी जरा अपनी मोहब्बतों का जायजा लेकर देखें, किस वजह से मेरी दूसरों से मोहब्बत है। यदि इस वक्त मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम किस नाम पे बैठे हैं, हमें किस चीज से मोहब्बत है? ये आपका मेरा काम है कि अपनी मोहब्बतों के किबले दुरुस्त करें, इससे पहले कि हमें हसरत होने लगे। मगर क्यामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे, और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। फामन लहु लूत, इस वक्त लूत ने उसको माना, और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करता हूँ। इसको हाईलाइट कीजिएगा, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, अपनी जिंदगी का स्लोगन बना ले। मैंने तो अपने कुछ पर्सनल कामों में यही लिखा होता है, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। हकीकत ये कि जब तक मैं और आप अल्लाह ताला के लिए कुछ चीजें छोड़ेंगे नहीं, हमारी जिंदगी में कभी वो सच्ची खुशियां नहीं आएंगी जिसका हम तकाजा भी करते हैं और जिनको हम मानना चाहते हैं। तो अपनी जिंदगी की खूबसूरती अगर आप देखना चाहते हैं तो मुहाजिरुन इला रब्बी, एक एक कांटा रास्ते का निकाल दीजिए, एक एक बुरी आदत निकाल दीजिए, एक एक बुरी कंपनी निकाल दीजिए, बुरी बुरी दोस्तियां निकाल दीजिए। क्या सोचकर कि मैंने लम्हा लम्हा, लहजा लहजा अपने रब के करीब जाना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं ना, तो फिर प्यार भी अल्लाह से तभी होता है। जैसे दुनिया में जिस चीज के लिए कुछ कुर्बानियां दी होंगी ना, तो उसकी हमें बहुत कदर होगी, हम उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा मामला रखते हैं। जिस बच्चे को माँ बहुत ज्यादा देखे, वो बीमार रहे, दुखी हो, तो माँ को उस बच्चे से ज्यादा प्यार हो जाता है। तो जब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देंगे, तो ये भी अल्लाह की मोहब्बत को लेने वाली एक चीज है। इन्नहु वल अजीज और रहीम, और वो जबरदस्त भी है। इन्नहु वल अजीज अल हकीम, और वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। और हमने इसे इसहाक और याकूब याकूब और अनायत सॉरी और हमने इसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद और हमने उसे इसहाक और याकूब जैसी औलाद इनायत फरमाई, और उसकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी, और इसे दुनिया में इसका अजर अता किया, और आखरत में वो यकीनन सालेहीन में से होंगे। और हमने लूत को भेजा जबकि इसने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फुहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने ना किया। क्या तुम्हारा हाल ये कि मर्दों के पास जाते हो और अफसनी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? फिर कोई जवाब इसकी कौम के पास इसके सिवा न था कि उन्होंने कहा कि ले अल्लाह का अजाब अगर तू झूठा, अगर तू सच्चा है। लूत ने कहा, मेरे रब इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। देखिये ये मुफसिद क्यों है, इस काम को फसाद क्यों कहा गया, क्योंकि इसे डीकम्पोजिशन हो जाती है सोसाइटी की। औरत मर्द को अल्लाह ताला ने माशरे के दो कॉम्पोनेंट बनाकर पेश किया है। जब मर्दों को मर्दों में अट्रैक्शन होगी तो औरतों में नहीं रहेगी, जब औरतों में नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, सोसाइटी कैसे पनप लेगी? और आप इस बात को थोड़ा सा आज से 10 साल आगे जाकर सोचिए, मैं अपने दिल से आपको बता रही हूँ ये सोचकर कि जिस तेजी से शब्दों मत से, जिसको कहना चाहिए कि एक बड़ा अच्छा काम समझ के इस काम की हिमायत वेस्ट कर रहा है, और जो चीज आज वेस्ट में बहुत आपको इन लग रही है ना, और हमारी सोसाइटी में अगर वो भी ऑकवर्ड है, बैकवर्ड फील हो रही है, 5-6 साल बाद वहां भी शुरू हो जाएगी। अभी भी ढका छुपा बहुत है लेकिन खुल के आएगी। तो मैं सोचती हूँ 10 साल बाद जब सारे ही होमोसेक्सुअल हो जाएंगे 90% लोग, तो फिर बच्चे कहाँ होंगे, शादियां कहाँ होंगी? ये दिन ब दिन शादियों के मसले बढ़ते जाएंगे। और आज एक ये बिग रीजन है, कई माएं कहती बेटा कहते शादी नहीं करनी, मैंने कहा कोई चक्कर है ये कैसे, इतनी बड़ा शरीफ है? मैंने कहा या फिर दो तरह की बात है, या तो उसमें कोई नॉर्मलिटी है, मर्दानगी के खिलाफ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, चेक कराइए, या फिर उसका कोई और प्रॉब्लम है। जवान मर्द सेहत मंद कमाता खाता सब कुछ है, शादी नहीं करनी ये खतरे की बात होती है। तो आप देखें कि आने वाले दौर में फिर बच्चे कहाँ से होंगे, नस्लें कैसे होंगी। हदीस में आता है कि क्यामत के करीब ये दुनिया इतनी वर्स्ट हो जाएगी, इतनी खराब होगी कि लोग अल्लाह का यानी अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और जब कोई कब्रिस्तान के पास से गुजरेगा तो कहेगा कब्र वालों तुम कितने खुशकिस्मत हो कि जमीन के पेट में हो, हम जमीन के ऊपर हैं। फितने फितने और जानवरों वाली जिंदगी होगी। तो आप देख रहे दिन ब दिन ये जानवरपन सामने आ रहे हैं। हजरत लूत ने आज से कितने सौ साल पहले इस बात का खतरा महसूस किया, हमें आज ही इसको महसूस करना है क्योंकि हमारे सरों पर ये खतरा आप मंडला रहा है। अभी ये नहीं कह सकते दूर है, हम वाकई खतरे की जद में। बचपन से अपने बच्चों को अलग सुनाइए, बेटे बेटी को अलग सुनाए, बेटी बेटी को अलग सुनाए, खासतौर पर 7-8 साल के बाद जब बेटी के असरात शुरू हो जाए, एक लिहाज में एक बिस्तर में दो बेटे भी न सोए, दो बेटियां भी न सोए, भाई बहन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बच्चों के कमरे में रातों को उठ के बहाने से कमरा ठीक करने लाइट जलाने आने के बहाने 2-3 चक्कर लगाया करें, वल्ला की आज बहुत फितनों का दौर है। लाइट जलाएं, आप उनको चेक करें, और ये कोई तजस्सुस के नाम पे नहीं करें, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करें। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है, नए नए कामों का शौक होता है, इंसान नए नए तजुर्बे करना चाहता है। तो अगर ये सारी बातें पता चल जाएं अगर वक्त पे, तो कम अज कम इंसान अपने नफ्स पे काबू तो पाए। और अगर किसी को अपने अंदर ये जज्बे महसूस हो तो फिर अपनी नजरों को पाक करें, मत देखें वो चीजें जिससे ये जज्बे उभरते हैं, मत हैवी फूड खाएं, मत ऐसी जगहों पर जाएं जहां ऐसी फिक्शन है, शादियों में मत जाएं, कुछ ना करें, अपने आप को हत्तुल वदा इबादत में रखें ताकि इस किस्म की चीजें ना हो। और साथ ही साथ शादियों में जल्दी कीजिए, आज तो वो वक्त आ गया है कि इधर बच्चा बालिग हो उधर आप शादी कर दें, वरना तो अल्लाह की रहम अल्लाह ही रहम कर दे, वरना तो पता नहीं क्या क्या फितने अंदर आ सकते हैं। फिर उसके बाद फरमाए वलम्मा जात रुसुलना इब्राहिम बिल बुशरा, और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास बिशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वहां तो लूत मौजूद है। देखिए इब्राहिम को कितना फिक्र है दूसरों का, हर वक्त ऐसा लगता है कि इब्राहिम दूसरों के गम में घुलते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको भी इसकी तौफीक दे। खैर क्या हुआ, उन्होंने कहा खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है, हम उसे और उसकी बीवी के सिवा, हमें उसे और उसकी बीवी के सिवा इसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। और वो बीवी का क्या हाल होगा, वो तो पीछे रहने वालों में थी। लूता, फिर जब हमारे भेजे हुए लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इनकी आमद पर वो सब परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा ना डरो और ना रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी बीवी के। तीसरी दफा इन आयतों में जिक्र है बीवी का, साफ साफ बता दिया आंखें खोल लो, नेक शोहर बीवी को फायदा नहीं देगा अगर बीवी में नेकी ना होगी, और इसी के ऑपोजिट भी बात है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं इस फिस्क की बदौलत जो ये करते हैं, और हमने इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। कैसे अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि नबी की मौजूदगी भी लोगों को नहीं बचा सकी, और आज तो अंबिया कराम भी नहीं है। फिर कौम शुएब माली मामलात बिगाड़, और मदीन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो, रोजे आखिर के उम्मीदवार रहो, और जमीन में मुफसिद बनकर ज्यादतियां न करते फिरो। मगर उन्होंने इसे छुटला दिया, आखिरकार एक सख्त जलजले ने इन्हें आ लिया और वो अपने घर में पड़े के पड़े रह गए। और आदर समूद को हमने हलाक किया, तुम वो मुकामात देख चुके हो जहाँ वो रहते थे, इनके अमाल को शैतान ने इनके लिए खुशनुमा बना दिया। आज भी यही होता है, ऐसे विनीर चढ़ाता है शैतान कि चांदी सोना लगने लगे, लोहा सोना लगने लगता है, गुनाहों को ऐसे नेकियां बनाकर पेश करता है कि सारी कामयाबी ही गुनाहों में है, और लोगों को लगता है नेक बने तो शायद पता नहीं हम नाकाम हो जाएंगे। और क्या किया, और इनको रोक दिया राह रास्त से, किस तरह से बरगश्ता किया, फसद्दा हमने सबील, यानी नेक राह उनको अच्छी ना लगी। और याद रखिये जब गुनाहों का चस्का लग जाता है ना तो नेकियां बोरिंग लगती है, बोर, मजा नहीं आ रहा, एंजॉय नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। कब अखानु मुस्तफसरीन, हालांकि वो होश घोश रखते थे, समझदार थे, दुनियावी इंटेलेक्ट तो बड़ा स्ट्रांग था, आईक्यू तो 20 से भी ऊपर था, लेकिन दीन के मामले में अकल बिल्कुल काम ना की। وقارون وفرعون وحامان، اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، آخر کار ہم ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ قوم لوط کی طرف اشارے ہیں آخری دو، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اب شرک کی بڑی خوبصورت مثال ہے اور غالباً یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام عنکبوت ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، اس مکڑی جیسی ہے جیسے وہ اپنا ایک گھر بناتی اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے یا کاش یہ لوگ علم رکھتے، ان اللہ یعلم ما تجدون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو حق کے ساتھ، مگر سوری اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان والوں کے لیے۔ یہاں دیکھیے مکڑی کی بات ہے، مکڑی کس طرح سے جالا بناتی ہے، اصل میں یہ شرک اور توحید کا فرق ہے۔ بظاہر آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی آج ایک نیٹ پھیلا ہوا ہے، نیٹ کہتے ہیں ویب کو، ویب کا نام سنتے ہی ہیں، ویب سائٹس کیا ہے، ویب کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو، دیکھنے میں بڑا کمزور لگتا ہے لیکن ہوتا بہت اسٹرانگ ہے اور ایک پھونک ماری جائے تو اڑ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر جہالت، نافرمانی اور ناشکری اور فسق اور کرپشن کی ایک وبا آئی ہوئی، ایک پلیگ آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وقتی ہے، تم اس کو مضبوط نہ سمجھو، دیکھنے میں خوبصورت بہت لگتا ہے لیکن اصل میں بودا ہے، اندر اس کے جان نہیں ہوتی۔ اب یہ سب کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بنایا۔ یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کی تصویروں کو اور آپ لوگ خود محسوس کر کے دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت طریقوں سے یہ ویب بناتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کا تار اتنا اسٹرانگ ہے، میں خود بھی ایک صبح ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص جنگل میں گھوم رہا ہے اور دوسرے دوستوں کو نہیں دکھا تو کہنے لگا ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں، انگلش میں تھی وہ ویڈیو، تو اپنے گلاسز اتار کے نا اس نے یوں پھینکے تو وہ گلاسز اس کے ایسے لگے کہ جیسے ہوا میں معلق ہو گئے، ہلنے لگ گئے، تو اس کے دوست کہے واہ ہائے یہ کیا ہوا نا کہ یہ کوئی میریکل ہے، تو اس نے کہا ادھر آؤ، پھر ان کو ایک اینگل سے دکھایا تو وہاں مکڑی کا جالا تھا، اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کے اوپر اس نے گلاسز بھی ڈال دیے تو وہ نہیں ٹوٹا۔ تو اس کا تار کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ہوتا ہے، پوری دنیا کے گرد گھما سکتے ہیں، اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس طرح سے مکڑی کا گھر نہایت بودا، کمزور اور ناپائیدار ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کے سہارے بھی ناپائیدار ہے۔ جس طرح سے مکڑی کا گھر ہاتھ کے ادنا سے اشارے سے ختم کر دیا جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے سوا دوسروں کو معبود، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا بھی بیکار ہے، کیونکہ وہ کسی کام میں نہیں آ سکتے، چاہے ظاہری طور پر خوبصورتی کیوں نہ ہو، حقیقتاً کمزور ہو۔ دیکھیں خوبصورت کتنا لگتا ہے لیکن ہے یہ اس ناطے سے کمزور، چاہے ظاہری طور پر بکثرت ہی کیوں نہ ہو، حقیقتاً کمزور ہے۔ یہ پورے پورے جو درخت ہے نا، یہ جالوں سے بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کو کلوز سے دیکھیں تو یہ پورا جال ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور وہی ہے جو ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ العزیز الحکیم، اللہ کی شان ہے جو یہ کرتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ بناتا کیسے ہے تو یہ امیزنگلی یہ کناروں سے شروع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک جگہ سے کھڑا ہوا دوسری جگہ پہ جاتا ہے، یہ دیکھیے ایک جگہ سے ادھر گیا پھر ادھر گیا پھر ادھر سے دوسری طرف جائے گا، کوئی کلک کر کے دکھائیں، یہ دیکھیے گا اب یہ اس کے تین کونے بنیں گے۔ بالکل آپ میں سے کسی کو اگر کریشیا بنا ہونا تو وہ یاد آئے گا، یہ دیکھ لیں پہلے کونے بنتا ہے، سارے کونے بنائے گا، پھر اس کے بیچ میں جا کے اچھلے گا تو یہ گھر بن جائے گا۔ کس نے سکھایا اس کو یہ سوچیے، سو یہ دیکھ لیجیے یہ کون سکھا رہا ہے، یہ مالک ہے۔ تو انسان کے پاس تو بہت ساری عقل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس عقل کو عقل سلیم بنا۔ وہ انڈے بنا ریڈی جی، آئیے ذرا دیکھتے ہیں، جو اس صورت میں ہم نے وہ انڈے کی فارمیشن دیکھی تھی، تو اللہ کرے ادھر آپ کو صحیح کلیئر دکھ رہا ہو تو دیکھیں گے۔ بس ہر چیز میں اللہ یاد آئے گا آپ کو، اس کے بعد جب بھی کبھی انڈا توڑیں گے تو آپ کو رب یاد آنا چاہیے، کس طرح سے وہ دکھاتا اور کرتا۔ یہ انہوں نے ایک جار میں انڈا ڈالا اور اس کے اندر آپ اس کو किसी इंक्यूबेटर में रखेंगे। ये एक डॉट है जिससे बच्चा बनेगा। अब गौर से देखिए, इसमें बच्चे की छवि बननी शुरू हो गई है। ये देखिए उसका दिल धड़क रहा है। ये इतनी बारीक रगे हैं, ये जो रगे थी ना स्क्रीन में, कैसे लगता है इसे ट्रांसपेरेंट है। थोड़ी सी आवाज कम कर दें। ये देखिए बिल्कुल चूजे का स्ट्रक्चर है, और ये बाहर उसकी पूरी ये रिब, ये वो जैसे छिल उसकी खाल होती है ना बाहर, ये वो है, और अंदर उसका दिल धड़क रहा है। बेजान अंडा था, युख्रिजुल हय्या मिनल मय्यित। अब ये उसकी अगली फॉर्म में देखिए, पहले अंडा था अब ये बना है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से वो देखे उसके पाँव बनने शुरू हो गए, वो अंदर उसकी नोके देखिए हिलजुल शुरू हो गई है ना। वो सबको पैदा करने वाला, माँ के पेट में भी तो यही कुछ होता है। अब ये देखिए बिल्कुल वो उसकी गर्दन, ये नीचे पाँव है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गोश्त का छोटा सा बोटा है। ये देख लीजिए ये बन गया, ये खूबसूरत सा चूजा बन गया। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र वाला बना दे। हर चीज में इबरत है, हर चीज में गौर है। एक्टिविटी दे दो, आज अंडे से कोई चीज बनाए घर में है, अंडे जिसके पास है आज अंडा तोड़े और उसको दे करके इस बेजान अंडे को कोई चलाना शुरू कर दे चलता। आप बताएं कि अंडा खड़ा अपनी जगह से घूमना शुरू हो जाए और वो भागता है उधर जा रहा है, आप किसको क्या हुआ। कभी हम वो काउंटर पे रखें तो नीचे गिर जाए तो कितना कम पड़ जाता है। लेकिन एक ये भी तो चूजा भी तो भागता हुआ अंडा ही है ना, तो ये अल्लाह की शान है, इतना प्यारा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वमा या किलो है इल्ला लालिमुन, इल्म वाले इसको जानते हैं। अब यहाँ से पारा 21वां शुरू होता है, 21वां पारा, पारा नंबर 21 सूरत अनकबूत आयत नंबर 45। ए नबी तिलावत कीजिए इस किताब की जो आपकी तरह वही के जरिए से भेजी गई, और नमाज कायम कीजिए, यकीनन नमाज फुखश और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र इससे भी बड़ी चीज है, अल्लाह जानता है। तो तदब्बुर करें, अल्लाह ताला जानता है मा तस्नाउन जो कुछ तुम करते हो। अब इस एक आयत में आप देखिए दो चीजों की बात है जो बहुत ही अहम है। पहली बात तो क्या है कि ये वही जो आप पे नाज़िल की जा रही है आप इसको दूसरों से शेयर करें। अल्लाह के नबी ने इस हुक्म पर अमल कैसे किया, जूं ही को आयत उतरती आप उसको अपने इर्द गिर्द वालों से शेयर करते, अपनी बीवियों को सिखाते, और इसी तरह से आपका काम भी इसी के साथ था। फिर इसके बाद आप देखिए कि जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, आप खुद भी पढ़ें आपको मजा बहुत आएगा, लेकिन कुरान का मिजाज सुनने वाला है। जितना ज्यादा कुरान सुनने में मजा आता है शायद उतना पढ़ने में नहीं आता, और खास तौर पे जब बंदा खुद ठीक तरह से पढ़ भी ना रहा हो और खुद से ठीक तरह से समझ भी ना रहा हो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि दूसरी बात जो है वो क्या है कि जब आप कुरान को दूसरों से शेयर करते हैं तो आपका अपना कुरान भी पक्का होता है, दूसरों को आप साथ लेके आते हैं तो आपका अपना आना भी पक्का हो जाता है। और इसी तरह से आप देखिए कि जब आप और मैं अपनी जिंदगी को इस किताब के लिए लगाते हैं तो इसकी असल खूबसूरती हमारी जिंदगियों में किस तरह आती है कि हमारे बच्चे और आए सभी घर वाले शौहर और दूसरे लोग भी इस दीन में मुआविन हो जाते हैं। यही असल में जिंदगी का हुसन है कि उत्लुमा इलैहि कमिनल किताब, इस किताब को दूसरों तक पहुंचाइए, इसको सीखिए। और अल्लाह के नबी की जिंदगी का पूरा जो खुलासा किया जाए तो वो यही आता है कि आपने इसे एक आयत पे अमल किया कि इस किताब को अपने तक नहीं रखा। फिर आप देखिए वाकई में सलात नमाज की बात हुई, तो कुरान पढ़ने के बाद जो सबसे पहले अमली चीज इंसान की जिंदगी में आती है वो नमाज है, सबसे अहम है। नमाज बेहजाई और मुनकर से क्यों रोकती है, क्योंकि नमाज की एक तासीर है, मिजाज के अंदर तब्दीली पैदा करती है, इंसान के अंदर तवाजो आती है, نماز انسان کی ہے کو اللہ کی معرفت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین آ جاتا ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے. دن میں 5 بار اگر انسان کے اندر یہ مختلف کیفیات پیدا ہونے لگیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے رنگ روپ سے، اس کی عادتوں سے، اس کے بات چیت سے یہ رنگ چھلکتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی نافرمانی کی چیز آ جائے وہ جھک جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کروں گا، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے. اور نماز حقیقت میں بے حیائی سے روکتی ہے. مثلا وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور گھر سے نکل رہے تو کپڑے کیسے پہنے گا جس میں نماز ہوگی؟ اگر آپ دیکھیے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلط چیز کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے، آپ کہتے نہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، میرا وضو خراب ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتی، گندا جوک نہیں آپ سن سکتے، آپ گندی جگہ پہ نہیں جا سکتے، تو بالکل ایک وقت آتا ہے کہ جب 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر ایک نماز سے دوسری کے بٹوین بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. پھر یاد رہتا ہے کہ میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے، میں نے ابھی پڑھی تھی، میں نے اللہ کو کیا کہا کیا نہیں کیا. کیونکہ آپ دیکھیے جب اللہ یاد رہتا ہے تو غلط کام ہوتے ہیں. آپ نماز پڑھیں تو کیا آپ اپنا حلیہ خراب کریں گے؟ کیا آپ دیکھیے کہ کوئی کسی کو گالی گلوچ دے سکتا ہے، فحش باتیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے. مسند احمد کی روایت ہے 9778 نمبر کی، کہ ایک شخص آپ کے پاس آ کے کہنے لگا کہ فلاں آدمی ہے رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے یہ کام سے روک لے گی. کتنا پیارا نسخہ ہے کہ برائیاں چھڑانے کا طریقہ بھی یہی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند احمد کی 21556 نمبر کی، 21556. آپ نے پتھر کے موسم میں، جیسے وہ پتے اترتے ہیں نا، جیسے آٹم کا سیزن ہے، تو ایک درخت کی 2 ٹہنیاں لی تو پتے جھڑنے لگے، پتے گرنے لگے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو والا ذکر اللہ ہی اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد بڑی پیاری. نماز پوری ذکر کے ساتھ تو بھری بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجوں کی بلندی کا ذریعہ، اور سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر ہے. کیونکہ ہر ایک تو سونا چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتا. تو کہا کہ اور دشمنوں کی گردنیں مارنے سے بھی اچھا، یعنی ہر ایک جہاد میں نہیں جا سکتا. تو کہا بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر. تو زبان کو ذکر سے تر رکھیں. یہ ترمذی کی روایت ہے 3377 نمبر کی. تو ہر وقت اپنے دل دماغ کو اللہ کی طرف رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. پھر اس کے بعد آیت 46 میں فرمایا ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں. اور ان سے کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس پر بھی جو کہ تمہاری طرف بھیجی گئی. کوئی تعصب نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب بھیجی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اب یہ کتاب ہمارے عمل کے لیے، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم اور فرما بردار ہیں. اے نبی اسی طرح ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، پھر کون نہیں لاتا؟ فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. ہماری آیتوں کا انکار تو صرف کافر لوگ کرتے ہیں. اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے؟ کب تک؟ 40 سال بغیر پڑھے لکھے گزار دیے. اگر آپ میں کوئی سسٹر 40 یا 40 سے اوپر ہے تو وہ غم نہ کریں اگر آج تک انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں. بعض لوگ کورسز کی بات کریں تو کہتے نہیں ہمیں تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کو بھی نہیں آتا تھا، اور ہمارے پاس ایسی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ جن سسٹرز کو لکھنا بھی نہیں آتا، قلم نہیں پکڑنا آتا، پڑھا لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، اردو نہیں پڑھنی آتی، پورے پورے کورسز کر جاتے ہیں. کیونکہ ہم کوئی جمع تفریق میں تھوڑی ڈالنے والے ہوتے ہیں، ہمارا تو مقصد ہے کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ جم کے آپ اپنے آپ کو کمٹ کرائیں اور پھر آپ سیکھیں. اور قرآن کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ لفظی ترجمہ یاد ہو جاتا ہے، بالکل کورے چٹے ان پڑھ لوگوں کو بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے کب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. اور شاید آپ میں سے کسی کو نہ پتا ہو کہ اللہ کے نبی تو آخری وقت تک پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ تو اپنا نام بھی نہیں تھے لکھنا جانتے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ اس کی دلیل موجود ہے. حضرت علی سے آپ نے پوچھا تھا بتاؤ کدھر لفظ محمد اور کدھر رسول اللہ، تو میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتا ہوں. سوچیے ذرا آپ، تو کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ تو اپنا مورال بلند کریں، ہمت بڑی کریں. بلکہ میں سوچتی ہوں بڑی عمر ہے یا ساری زندگی پڑھا لکھا نہیں، تو اب موقع مل رہا ہے، اب لے لیجیے. ہم بھی تو کہہ کے جائیں کہ ہم بھی کچھ پڑھ لکھ کر گئے، ہم نے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کرنا ہے. फरमाया अगर ऐसा होता, क्या हिकमत ही अल्लाह के नबी के पढ़े लिखे ना होने की वो बताई जा रही है, अगर ऐसा होता तो बातिल परस्त लोग शक में पड़े रहते। दरअसल ये रोशन निशानियां इन लोगों के लिए जिनको इल्म दिया गया और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते, मगर वो जो जालिम है ये लोग कहते हैं क्यों ना उतारी गई शख्स पर निशानी है इसके रब की तरफ से, कहो निशानियां तो अल्लाह के पास है और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर, और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल कर दी और जिनको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है, दर हकीकत इसमें रहमत है और नसीहत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। क्या आप इसकी गवाही देंगे किस किताब में रहमत दी है और नसीहत दी है? रहमत कब मिलती है? जब इसको सादा पढ़ते हैं ठीक तरह से, और जिक्रा कब बनती है? जब इसको समझ कर पढ़ते हैं तर्जमे के साथ। ऐ नबी से कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है, वो आसमान और जमीन में सब कुछ जानता है, जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफर करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं। अल्लाह ताला में ऐसे लोगों में ना करे, और हकीकत है कि ऐसे लोग ही फिर अल्लाह की पकड़ का शिकार हुए। वयस्ताजिलून कबिल अजाब, ये लोग तुमसे जल्दी अजाब लाने का मुतालबा करते हैं, अगर एक वक्त मुकर्रर न कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन अपने वक्त पर वो आकर रहेगा अचानक इस हाल में कि इनको खबर भी ना होगी। कहां से अल्लाह के पकड़ता बंदे को होश नहीं आती, इसलिए हमेशा अल्लाह से डरते रहे इंसान, इंसान हमेशा अल्लाह ताला से डरे कि कहीं अचानक ना पकड़ा जाए। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, हालांकि जहन्नुम इन काफिरों को घेरे में ले चुकी है, और इनको पता चलेगा उस रोज जबकि अजाब इनको ऊपर से भी ढांक लेगा और पांव के नीचे से भी, और कहेगा आप चखो मजा इन करतूतों का जो तुम करते थे। शुरू में आपको बताया कि सूरत अनकबूत उस वक्त नाजिल हुई जब हालात बड़े तंग थे, अब यहाँ इशारा दिया जा रहा है कि मक्का छोड़ दो जाओ, और आज भी सबके लिए यही बात है, जिस जगह अगर इंसान को लगता है कि वो अमल नहीं कर सकता दीन पे, उस जगह को छोड़ दे, वो जॉब छोड़ दे जो आपकी नमाजों के रास्ते में रुकावट है, उस जॉब को छोड़ दीजिए जिसमें आपको शराब बेचनी पड़ती है और जिस जगह आपको हराम चीजें करनी पड़ती हैं, उसको छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। क्यों? अल्लाह आपको उसका बेहतर नेमल बदल देगा। कैसे? या इबादी अल्लज़ीना आमनु इन्ना अर्दी वासियतुन फैय्या फअबुदून, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो मेरी जमीन वसी है बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ, और हर मुतनफ़िस को मौत का जायका चखना है, फिर तुम सब हमारी तरफ ही पलटा कर लाए जाओगे। चंद लम्हे के लिए तदब्बुर करते हैं हम सब, मैं कौन सी चीज नहीं छोड़ सकती अल्लाह के लिए, जगह लोग इंसान कोई चीज जे वो, तो मौत तो एक बहुत बड़ी हिजरत का दूसरा नाम है, फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो जब फिर छोड़ दें तो आज ही छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है, आज अपने हाथ से छोड़ेंगे अजर मिलेगा, अल्लाह ताला भी राजी, और अल्लाह ताला आपके लिए दूसरी चीजों का आसान कर देंगे। कल अगर जबरदस्ती छुड़ा भी लिया गया तो वो कौन सी बड़ी बात होगी, और अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े फैसले करने वाला बना दे। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए इनको हम जन्नत की बुलंदों वाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वहां वो हमेशा रहेंगे, क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर ले। इन लोगों के लिए कौन से लोग जिन्होंने सबर किया और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह हमें भी सबर और तवक्कुल दे। पीछे हिजरत की बात थी ना, तो फिर मनपसंद चीजें छोड़ते हुए जरा सा इंसान इनसिक्योर फील करता है, हाँ ये कारोबार छोड़ दिया तो क्या होगा, अच्छा ये जॉब छोड़ी तो खाएंगे क्या, अच्छा ये कर लिया तो वो, तो अल्लाह कहते हैं क्यों फिक्र करते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, इतना प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। क्या आपको अल्लाह का प्यार महसूस होता है अपनी जिंदगी में? मेरा वाले दिन में 50 मौके से ज्यादा होते होंगे जब आप एक एक लम्हे में अल्लाह का प्यार महसूस करते हैं, हर सांस के साथ अल्लाह की मोहब्बत को महसूस किया करें। अगर जरा सा सांस उखड़ जाए तो कहां हम गिर के पड़े, सीधा चलते हैं अल्लाह का प्यार महसूस कर, इतना सा सिर्फ हमारी एक टांग से दूसरी में फर्क कर दिया जाए तो बंदा गिर जाए। हमारे साथियों में ऐसी मिसालें मौजूद है, कोई एक ब्रदर सिर्फ इतनी सी टांग छोटी बड़ी थी जिसके वजह से वो चल नहीं सके, आखिर उसको वो दूसरी को कटवाना पड़ना है पड़ा कि ये कटेगी तो बराबर होगी तो चलेंगे वरना गिर जाएंगे। ये अल्लाह की कितनी बड़ी शान है, तो इस प्यार को महसूस करें, वो रब आपसे बहुत प्यार करता है, सिर्फ यह कि हम उसकी मोहब्बत को महसूस नहीं करते। वकाय मिंदा बतिल्ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए फिरते हैं, कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह इनको रिस्क देता है और तुम्हारा रासिक भी वही है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। रिस्क का बड़ा मामला होता है, बंदे को फौरन लगता है कहाँ से खाएंगे, आज भी लोग कहते हैं तुम्हारी मान लू तो खाऊं से कहाँ से, तुम्हारी मानू तो क्या रोड पे आ जाऊं, क्या हम अब घर छोड़ दें अब कारोबार छोड़ दें, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पे एतबार करो اپنے آپ کو میرے اوپر ڈال کر تو دیکھو، میں کبھی تمہیں رسوا نہیں کرتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جب کرتا سب اللہ ہے تو تم اپنا فوکس اللہ کو کیوں نہیں بناتے؟ تم کیوں نہیں اس کے ارد گرد گھومتے؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق شادا کر دے اور جس کا چاہے وہ تنگ کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے کو پوچھو اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی بھی زمین کو جیلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ. مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. جب بھی کبھی کوئی سوکھی کیاری کو ہرا ہوتے دیکھیں یا درختوں کے پتے آتے دیکھیں تو کہا کریں الحمدللہ، یہ اللہ نے ہمیں موسم دکھا دیا، ورنہ شاید ہم یہ دیکھ ہی نہ پاتے. رہ گئی دنیا تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. سچ کے نہیں، یہ صرف ایک پلے ہو رہا ہے. ہم سب مختلف کردار نبھا رہے ہیں اور موت کی صورت میں ہم اسٹیج سے اتار دیے جائیں گے. اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے. اصل زندگی تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہیں. ذرا سا سوچیں، یہ دنیا گڈے گڈی گڈے کا گھر نہیں ہے. یعنی سوری، یہ دنیا اگر آپ دیکھا جائے تو گڑیا کا گھر ہی تو ہے. ہم صرف 4 دن کے لیے کھیل کود رہے ہیں. کتنا نہ سمجھ ہے جو کھیل کھیل میں پڑھا رہے اور اسکول نہ جائے، کھیل میں پڑھا رہے اور کھانا نہ کھائے، کھیل میں پڑھا رہے اور ماں کے پکارنے پہ بھی نہ آئے. جب کھیل کے دل بھرے گا تو جانا تو ماں کے پاس ہے. اسی طرح جب میرا آپ کا اس دنیا سے دل بھرے گا تو ہم نے جانا تو اس کے پاس ہے. اور میں نے تو دنیا میں دیکھا کہ جب دنیا میں بیماریاں لگتی ہیں نا، تو زندگی میں لوگ جیرن ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو اللہ میں اٹھا لے، میں تھک گیا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں، میرے سے اور دوائیاں نہیں کھائی جاتی، مجھ سے اور نہیں برداشت ہوتا. تو ماں کا خیال آتا ہے تو ایسے اللہ کا خیال آتا ہے. تو آج صحت ہے، عافیت ہے، تندرستی ہے، دعا کریں اللہ نیکیاں کروا لے. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی اس نجات پر اس کا کفرانے نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. کبھی کوئی لمحہ سوچئے، خالص ہو گئے، نمازیں بھی پوری ہو گئی وقت پہ، کپڑے بھی ٹھیک ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پھر آئے آہستہ آہستہ دوبارہ. یہ کون سا شرک ہے؟ شرک فی الحکم ہے، اللہ کی مرضی کے بجائے دوسروں کی مرضی کا بننا. انجام کیا ہے؟ اچھا ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے، پھر جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ بڑی خوبصورت آخری آیت ہے. سورت کا شروع بھی مجاہدہ تھا، محنت، سٹرگل، اٹموسٹ کوشش، اور آخر میں بھی دیکھ لیجئے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. کیسے یہ مجاہدے کے ہیں؟ لمحہ لمحہ چلنا پڑتا ہے اللہ کی طرف، پھر اللہ راستے دکھاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں معیار آپ چلتے ہیں نا، دن بدن اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دیتا ہے، دماغ کھول دیتا ہے، سوچ کھل جاتی ہے، جرت بڑھ جاتی ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی نیکیاں مشکل لگتی تھیں، پھر بڑی بڑی نیکیاں آسان ہوتی ہیں. لکھ کے رکھ لیں یہ بات اپنے پاس کہیں بھی، صرف شروع کے دن مشکل ہوتے ہیں. جب آپ لین پار کرتے ہیں نا، بس آپ دیکھیے کہ گاڑی میں آپ 4th لین پہ تھے، آپ کو ایگزٹ لینا ہے، پہلے 3rd پہ آئیں گے، پھر 2nd پہ آئیں گے، پھر 1st پہ آئیں گے، پھر ایگزٹ لیں گے نا. اب 4 لینے کراس کرتے ہوئے خطرہ ہے، گاڑی ٹکرا سکتی ہے پیچھے سے آگے سے، لیکن جو ہی آپ 1st لین میں آتے ہیں آپ سیکورڈ ہیں، آپ کہتے ہیں آپ جب چاہوں گے ایگزٹ لے لوں گی. اسی طرح زندگی میں بعض دفعہ انسان بہت ہی دور گناہوں میں جا چکا ہوتا ہے، اس کو ایک ایک لمحہ جو ہے نیکی کی طرف آنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. بس ایسے وقت میں انڈیکیٹر دیتے جائیں اور پلٹتے جائیں، پچھلے لوگ خود ہی الرٹ ہوتے جائیں گے. ہم جب اپنے پیاروں کو اور اپنی پیاری دوستوں کو اور اپنے پیارے ساتھیوں کو ناراض نہ ہونے کے ڈر سے یا ان کو ناراض نہیں کرنا، جب اس ڈر سے ان کی غلط باتوں کو بھی مانتے جاتے ہیں نا، تو پھر کبھی بھی ضرورت نہیں ہوگی. کیا میں اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ہم رش سے نکل جائیں، ہم ایگزٹ لیں، اپنے گھر جائیں، देखिए आपके घर का एग्जिट आया हुआ और आप फोर्थ लेन में, कहेंगे अब क्या करूं, बड़ा मुश्किल है, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट पे आना पड़ेगा, चलो बेहतर है कि अपने आप को इसी में खपा दो। नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। क्यों? कि आपको अपने घर तो जाना है, तो आखिर मुझे आपको भी तो रब के पास जाना है। और जितना ज्यादा रब के पास जाने का एहसास बढ़ता जाएगा, उतने आप मोहसिन बनेंगे। और मोहसिन वो होता है जो अल्लाह के रास्तों में थकता है लेकिन शिकवा नहीं करता, गिला नहीं करता, बस मुजाहिदा मुजाहिदा, कोशिश, मेहनत, स्ट्रगल, क्या करूं, अब और कुछ करूं, अब कुछ और करूं, अब कुछ और करूं। फिर आप देखेंगे कि आपने मैंने कितनी पीछे आयतें पढ़ ली ना, जहन्नुम कितनी सख्त है, जन्नत कितनी खूबसूरत है। हदीस में आता है कि दोजख इब्ने आदम का हर उस खा जाएगी सिवाय सजदों के निशान, अल्लाह ताला इसको दोजख पर हराम कर देगा। ये बुखारी की रिवायत है 7437 नंबर की। तो क्या कोई चाहता है कि जहन्नुम में जाए? फरमाए सबसे हल्के अजाब वाला जहन्नमी वो होगा जिसके पाँव के नीचे आग का अंगारा रखा जाएगा और उससे उसका दिमाग खोलेगा। ये बुखारी की 6561 नंबर रिवायत है। जैसे हांडी उबलती है ना, फिर है जरा सा सर में दर्द हो तो महसूस तो करके देखें कि क्या उस वक्त दिल करता है। टकरे मारते हैं लोग दीवारों को कि सर दर्द ठीक हो जाए। तो क्या वो जहन्नुम जिसकी बातें करके अल्लाह मुझे आपको डराता है, क्या उससे बचने के लिए मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा? क्या हिजरत करनी मुश्किल लग रही है? कब तक इस दुनिया के और रोटी पानी के दारू धंधे में पड़े रहेंगे? आखिर एक दिन तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वमा हाजिल हयात दुनिया इल्ला लाखों वाला खेल तमाशा। गजवा खंदक के मौके पे जब आप जमीन खोद रहे थे तो आप साथ साथ जो शेर पढ़ रहे थे उसका मतलब क्या था? कि अल्लाह कोई ऐश नहीं मगर आखरत की ऐश, ला ईश इल्ला ईश अल आखिरा। ये बुखारी की रिवायत है 3795 नंबर की। तो ऐश वहां जाके करेंगे, यहाँ गुजारा कीजिए, यहाँ जस्ट वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल रखिए, सिर्फ वो कहते हैं कि जीने के लिए जिए, ना कि इस दुनिया को जन्नत बनाने लगे। और हदीस में आता है कि तुम्हें पता है कि जान अल्लाह की तरफ लौटना क्या है, ये जो बात है ना तुर जाऊन उसकी तरफ पलटा, तुम जानते हो कि अल्लाह की तरफ लौटना क्या है? तुम पता है फिर जन्नत की तरफ या जहन्नुम की तरफ जाना ये क्या है? वो ऐसी इकामत का है जहां से वापसी नहीं होगी, इससे आगे कहीं नहीं जाना। वो ऐसी हमेश की है कि जिसमें मौत नहीं आएगी, वहां ऐसे जिस्म होंगे जो कभी नहीं मरेंगे। सही रिवायत है ये, नासिरुद्दीन अल्बानी ने इसको सही कहा। और मुस्लिम की रिवायत में आता है कि एक आवाज देने वाला जन्नत में आवाज लगाएगा, जन्नत वालों तुम्हारे लिए तय हो गया, यानी इट्स डिसाइडेड कि अब तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं रहोगे, तुम जिंदा रहोगे कभी नहीं मरोगे, तुम जवान रहोगे कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम खुशहाल रहोगे, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं आएगी। 6544 सही मुस्लिम की रिवायत है। तो क्या उस टेंशन फ्री दुनिया जन्नत में जाने के लिए मुजाहिदा नहीं करना पड़ेगा? वहां तो नींद तक नहीं होगी। सही रिवायत में आता है नींद मौत की एक किस्म है, इसलिए जन्नत वाले सोएंगे भी नहीं। आप सोते हैं जब 4 दिन के लिए किसी बहुत खूबसूरत जगह पे गए हो, भाई कहते हैं सो सो के गुजार देंगे, बाप भी कहेगा सोने आए थे, इधर उठो चलो घूमने चलते हैं। हाँ? तो जन्नत में जाके किसने सोना है? वहां जाकर तुमने पता नहीं अपनी क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह में मुजाहिद बना दे। और मुस्नद अहमद की रिवायत है 25958 नंबर की, फरमाया मुजाहिद वो है जो अल्लाह की इताअत में अपने नफ्स से जिहाद करे। तो इस वक्त मेरा आपका जिहाद तो फिलहाल यही है कि अपने नफ्स को ही सरेंडर कर लें, इसी को ही जीत लें, बाकी चीजें तो बाद की बातें होंगी। और आपने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम गुजारना जो और जो कुछ इससे बेहतर है उससे बेहतर है, यानी दुनिया में रहते हुए अल्लाह के रास्तों में कीजिए। जंग भी करनी पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन जरूरत है कि हम आज कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। तो बड़ी खूबसूरत सूरत के साथ सोच के साथ सूरत खत्म हुई, अगली सूरत रोम है। थोड़ी सी तिलावत भी सुनते हैं और फिर हम इसका खुलासा करते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
دل تو نہیں کرتا روکنے کو لیکن رکنا پڑے گا تھوڑا سا سورت کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کتنا پیارا ہے آپ کو ایک مرحلے آخری 3 دنوں میں بلا کر سادہ قرآن مل کے پڑھا لیتے ہیں اچھی سی تجوید کے ساتھ اور واقعی اس کی بڑی لذت ہے اچھی سی تلاوت سنیں اور ساتھ خود پڑھیں تو بندہ وجد میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بھی بنائے اور اس پہ غور و فکر کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سورت روم بہت خوبصورت سورت ہے مکی سورت ہے ومن آیاتہ کا لفظ اس میں بار بار آئے گا مکی سورت تو ہے لیکن اس میں جنت اور جہنم والے کوئی اعمال کی بات تو نہیں ہے صرف اشارے ملتے ہیں اگر آیتوں کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے تو اس سورت کے اندر 84 آیتیں ہیں لیکن ان سورتوں کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی جلدی سورت پوری ہو رہی ہے اور ہر سورت کے ساتھ ہمیں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے سورت روم میں بنیادی طور پر ایک پیشن گوئی کی گئی تھی جو سچی ثابت ہوئی جس نے قرآن کی سچائی کو اور زیادہ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا اس کے باوجود بھی جن کو ہدایت نہیں ملنی تھی ان کو نہیں ملی اور اس میں ہم سب کے لیے بھی آج سبق ہے کہ جس طرح آج مسلمان مغلوب دکھتے ہیں ان شاء اللہ آنے والے وقت میں غلبہ ہوگا تو دل توڑ والی یا ہمت توڑنے والی باتوں کی بجائے کام کرنا چاہیے اور مغلوبیت کی وجہ کو ڈھونڈنا چاہیے آیتوں کے اعتبار سے دیکھیے تو 8 مختلف اس میں ٹاپکس ہیں پہلا ٹاپک آیت 1-7 ہے رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت ہے آیت 8-27 میں دلائل آخرت ہے 28 اور 29 میں توحید کے دلائل ہیں آیت 30-39 میں مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں آیت 40-42 میں مشرکین کو چیلنج ہے اور آیت 43-45 میں توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا حکم ہے پھر آیت نمبر 46-53 میں توحید کے دلائل بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں اور آیت 54-60 تک بشارت اور دلائل ہے جزا اور سزا کے مرکزی مضمون فتح بدر کی خوشخبری ہے پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا ہجرت قریب ہے لیکن اس صورت میں فتح ہوگی بدر میں اور اس کو ریلیٹ کیا گیا ماضی کے واقعات سے اور اسی طرح آخرت کے دلائل بھی ہیں اور ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی ابھی کافی سال رہ چکے تھے لیکن اس کے باوجود جو باتیں ہوئیں وہ منو ان پوری ہوئی آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے لیں گے اور اس میں اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی چونکہ دعوت ہے تو ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر والا دل دماغ دے دے سوچیں سمجھیں غور و فکر کریں دیکھیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کبھی کوئی خبر سنے تو سوچا کہ یہ کیوں آئی، کبھی کچھ پڑھے تو یہ کیوں ہوا، کوئی میسج آ گیا تو یہ کیوں ہوا، کیونکہ جب مسلمان سوچتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے سے حالات پیدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے جبکہ اللہ کی بخشی بھی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت عطا فرماتا اور جسے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم رحیم بھی ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آیتوں سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی جو کہ مسلمانوں کے قریب تھے، ان کی جنگ فارس والوں سے ہوتی رہتی تھی. فارسی جو تھے وہ اپنے ذہن کے اور اپنے عقائد کے اعتبار سے مشرکین مکہ کے قریب تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ یہاں کر کے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ آج جو فارس کے لوگ بہت کامیاب دکھتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ رومنز کو فتح ہوگی. اور 9 سال کے اندر یہ بات ہو گئی تھی. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر ایک شرط بھی لگا لی اور اللہ کے نبی کے کہنے پہ کچھ سال بڑھوا لیے. اس سارے کو تو اب تاریخ سے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک تو ہمارا اپنا بڑا دل ٹھکتا ہے اس بات کو پڑھ کر کہ اللہ کے قرآن کی باتیں دنیا میں ثابت ہو گئی نا. یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اور جس دن رومی جو تھے وہ غالب آئے، اسی طرح سے اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح ملی تھی. تو یہ دو چیزیں اکٹھی ریلیٹ کر دی گئی، جس کا یہاں تذکرہ ہوا ہے کہ اس دن مسلمان بھی بڑے خوش ہوں گے. لیکن اصل میں آج کے گلوب کو اگر آپ اور میں دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. آپ دیکھیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں. تل کل ایام نداولھا بین الناس. شرط یہ کہ لوگ خیر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانتے جائیں، سمجھتے جائیں. قرآن کا انداز بھی ایسا ہے، ذرا سی ڈپریشن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ امید کی کرنیں کھول دیتے ہیں. آج بھی پوری دنیا میں اگر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی آپ کو پرچھائیاں نظر آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے. اور اب کائنات کے جو انداز ہیں ہمیں دکھ رہے ہیں کہ اب مسلمان دوبارہ جاگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی ایک دو صدی ہو، ابھی بھی کچھ وقت گزرے، لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میرا آپ کا کام کیا ہے کہ آج اپنے حصے کا حصہ ڈال جائیے کہ آج کی اس دنیا کو کیسے خوبصورت کرنا ہے. اگلی آیتوں میں دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی. واقعی بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ جو واقعی انسان کو سوچنے پہ مائل کرتی ہیں کہ دنیا کو چاہنے والوں کو بھی دنیا نہیں ملتی، صرف اس کا چھلکا ہی ملتا ہے. کیسے؟ آیت نمبر 7. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. لوگ دنیا کی زندگی کا بھی بس ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. یعنی جو دنیا میں آتا ہے نا وہ بھی دنیا کی خوشیاں سچی نہیں پاتا. نقلی خوشیاں، نقلی ہنسی، نقلی بھاگ دوڑ. دوستیوں میں بھی ایسے کہیں زہر برستی ہے، کوئی لیگ پولنگ ہے، کوئی دلوں میں کینے ہیں، کوئی بغض ہے، یہ ہے وہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ بہت ہی کامیاب ہیں نا ملک، یعنی ہو سکتا ہے کہ سائنس میں کامیاب ہوں، ہتھیاروں میں کامیاب ہوں، وہ اپنے سوشل سیٹ اپ میں کامیاب نہیں ہے. عورت کو سکون نہیں ہے، بیویاں پریشان ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے لنگ نال ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس دنیا کے بھی ظاہری حسن پہ لگ گئے. چلو مجھے ناراض کرتے، آخرت چھوڑتے، دنیا تو بناتے، وہ بھی کوئی نہ بنی، اور آخرت سے تو وہ خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس پہ غور کریں، کوئی ہے مقصد اس دنیا میں میرے کھانے کا، پینے کا، چرنے کا، چگنے کا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں، یعنی اکثریت کوئی نہیں مانتی. اور کیا لوگ کبھی چلے پھرے نہیں زمین پر کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، یعنی خوب ترقی کی، اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا. ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ جو آج ہمارے دن میں ایک غرغرہ ہے نا کہ آج بڑی ترقی ہو گئی، ترقی یافتہ دور ہے، کمپیوٹر ایج ہے اور سائنس کا ایرا ہے، پہلے لوگ زیادہ ترقی یافتہ تھے، آج تو مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں نا، پہلے لوگ خود کرتے تھے۔ تو یہ اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بڑے بڑے نام تھے لیکن ثم کان عاقبۃ الذین، آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج کے ترقی یافتہ لوگوں کو بھی بہت زیادہ اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں، اور اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ آپ سوچئے انسان پورا ایکٹیو ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کے ایسے نام موجود ہے فیمس لوگوں کے، اتنے مشہور لوگ تھے، آج بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی حادثہ ہوا ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ کیا ساری بات اور صرف دنیا میں جینے کے لیے تو نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی اس بھاگ دوڑ میں آخرت کی بھی کو فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کسی جگہ بستر پہ ڈال دے پھر بیٹھیں گے، جیسے ہمارے یہاں نابینا لوگوں کو کہتے ہیں چلو حافظ بنا دیتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ساری سکلز ختم ہو جائیں اور ہم بیکار ہو جائیں۔ آج ذرا سی مشکل آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا آپ نے میں نے کبھی سوچا اس بات کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور اگر سوچتے ہیں تو مبارک ہے آپ کو، لیکن بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ لگا دے، اسی لیے کائنات کی کچھ نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سوچنے کا انداز سکھا رہے ہیں کہ غور کرو اللہ ہی ہے کون، آیت 11-11، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ پھر انڈے والی مثال یاد کر لیں، چوزے والی، انڈے اور چوزے کی مثال یاد کر لیں، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے جب وہ ساتھ برپا ہوگی، کون سی؟ قیامت۔ اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، وجہ تیار ہی نہیں تھے، مینٹلی پریپیئر ہی نہیں تھے کہ کب قیامت آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کل پیپر ہے، پھر آپ کی دوست رات کو فون کرتی ہیں پتہ کل ٹیسٹ ہے، پھر آپ کی جان نکلتی ہے، پتہ ہے تیاری کوئی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو ٹوٹلی ان پریپیئر تھے، نہ ڈیٹ شیٹ دیکھی، نہ پیپر کھولا، نہ سلیبس خریدا، کچھ تیاری نہیں کی، اور اللہ نے بلا لیا تو حق دک رہ جائیں گے، سرپرائزڈ، یہ کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ایسے ہی ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شِفَاءٌ، ان کے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس میں سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ذرا امیجن کریں، دنیا میں گھلے ملے رہتے ہیں، ہم کہتے نہیں دیکھنا لوگوں کے ساتھ مل کے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، قیامت کے دن سب الون، ٹوٹلی الون، آپ سب اپنی اپنی لائنوں میں چلے جائیں۔ کبھی آپ کسی آفس میں گئے ہوں تو وہ کہتے ہیں بس اس سے آگے آپ کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، جہاز پہ چاہیں کتنی دور تک بھی کوئی آپ کو سی آف کر دے، ایک جگہ کے بعد کہتے ہیں سوری پیسنجرز اونلی۔ کیا بنتا ہے اس وقت جب انسان پہلی دفعہ سفر کرے، یا خوف ہو دل میں یا غم ہو دل میں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وہ ایک باغ میں شاداں فرح رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ فسبحان اللہ ہی نہ تم سو نہ وحی نہ تصبح ہون، بس تصویر کرو اللہ کی جبکہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان و زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ اب پتہ کہ آسمانوں کے اندر اوپر جب جائیں تو وہاں بھی اللہ کے فرشتوں کی آوازیں آتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے تو آپ ایک خاص مقام پر اوپر گئے تو آپ نے فرشتوں کی آوازیں سنی، کہیں قلم چلنے کی آوازیں سنی جو لوگوں کے تقدیریں لکھ رہے ہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے ویسے آسمانوں کی بھی سیر کرنے کو، خاص طور پہ جب جہاز اوپر جاتا ہے نا تو کہتے تھوڑا سا اوپر اور جا کے دیکھو نا بھلا کیا ہے، مرنے کے بعد تو جائیں گی روحیں ہماری، دیکھیں گی، اور آپ کو تو اوپر اتنی خوبصورتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے اس واقعہ معراج، اوپر سونے چاندی کے درخت ہیں، کیونکہ جنت بھی اوپر ہے، آج بھی موجود ہے جنت، یا آپ کے میرے بیچ میں جو جنت کے آسمان کے ساتھ پردے ہیں نا، یہ جنت کی نعمتیں ہم دیکھ لیں، اوپر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج میں لے جایا گیا تو اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برستی بھی دیکھی، کوئی فن پلیکس اور کوئی بہت خوبصورت سجا ہوا ہال دیکھیں اس تصور میں لائیں، گولڈن سلور اور جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے شینگلرز ہیں آسمانوں پہ، آج بھی یہ سب کچھ ہے۔ ہم تو وہ چیزیں سجاتے ہیں نا جو لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے کوئی پوچھے کہ ہمارے کلوزٹ کتنے گندے ہیں اور ہماری پینٹریز کتنی گندی ہیں، کون دیکھتا ہے وہ، ہم تو ڈرائنگ روم سجاتے ہیں نا۔ اللہ نے کونے خدرے سجائے ہوئے، آج بھی آپ جنگلوں میں جائیں تو بہت حسن دکھے گا، دریاؤں کے کنارے جائیں حسن ملے گا، پہاڑوں کی تہ میں جائیں، یہ غیر آنگن کی جس کی آپ باتیں کرتے ہیں وہ کیا ہے، کتنے لوگ رہتے ہوں گے وہاں، جاتے اور آ جاتے ہیں، رہتا کوئی نہیں ہے. اللہ کی شان دیکھیے حسن کو چھپاتا ہے. آپ اس بات پہ غور کر کے دیکھیں، آپ کو فطرت نظر آئے، خوبصورتی ہو، چھپی بھی ہو، اپنے لیے انجوائے کرو، دیکھو کیا اچھا ہے، اپنا دل خوش ہو رہا ہے، اپنا گھر کمفرٹیبل کر رہے ہیں، اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں، کریے، کوئی حرج کی بات نہیں، انسان کی ایفیشنسی بڑھتی ہے. لیکن ڈسپلے کلچر ذہن سے نکالتے ہیں، دکھاوا دکھا رہی، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کو واقعی دل چاہتا ہے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم تو زمین پہ کتنے خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، اور آپ ناروے والے ماشاءاللہ، اور میں، ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں. لوگ ترستے ہیں جن موسموں کو، اور جن گرمی سردیوں اور جن نظاروں کو، لوگ دیکھتے ہیں جاتے ہیں، چار چار پانچ پانچ دن کے لیے مری جا رہے ہیں، سوات جا رہے ہیں، آپ کے میرے رستوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم شکر نہ کریں. لیکن ہمیں یہ چیزیں بھی غافل کر دیتی ہیں بعض دفعہ، ہم انہی میں پڑے رہ جاتے ہیں. اور تسبیح کرو، اس کی تیسرے پہ ہے، جب کہ تم پر ظہر کا وقت آئے، یعنی ہر وقت تسبیح کرو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار والزلف من اللیل، سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹوٹلی میری طرف انوالو ہو جاؤ، توجہ دو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بہت، وہ جس کو بولتے ہیں کہ اردو میں ہم کیسے بولیں گے، توجہ مانگتے ہیں، بہت پوزیسو ہوتے ہیں کچھ لوگ. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسا کچھ تو نہیں بولتے، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس سوچو تو میرے بارے میں سوچو، دیکھو تو مجھے، بات کرو تو میری، تمہاری زبان پہ میرا نام، سب کچھ ہو، کیونکہ میں کرتا بھی تو اتنا کچھ ہوں نا. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. ذرا 3 سیکنڈ تک سوچیے، جب ہم قبروں سے نکلیں گے کیا وہ وقت ہوگا؟ 7 انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا، اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ میں اور آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی پھر رہی ادھر ادھر، اور مٹی کو کیا خوبصورت زبان دی، بولتی جاتی ہے، اور مٹی کو اتنے پیارے جذبات دیے، ذرا سی بات سنی ٹپ ٹپ پانسو نکلے. آپ اور میں مٹی کی بوری ہیں، بس اللہ نے اس کو ایک شیپ دے دی ہے، کسی کو لمبی پتلی موٹی کچھ نہ کچھ. تو یہ اللہ کی شان ہے نا، کتنا کچھ کر کے جب مٹی کو اتنا حسن دیتا ہے، تو آپ بتائیے کہ جب زندہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو جنت میں انسان کس چیز سے بنا ہوگا، جنت کی عورت کیسی ہوگی، جنتیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے، یہ مٹی کے تھوڑی ہوں گے. ہم اپنے اخلاق سے بنیں گے. کریکٹر دنیا میں جتنا خوبصورت ہے نا، ہائی تھنکنگ، سوچ اچھی، غیبت نہیں، چغلی نہیں، تانے نہیں، الزام نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ولگر ٹاکنگ نہیں، لطیفے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، آپ اتنے خوبصورت ہوں گے کرسٹل کی ڈالز. کہ جنت کی عورت جب شربت پیے گی، تو جہاں سے وہ پانی گزرے گا نا شربت، تو وہاں ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کرسٹل کو ریڈ ڈوری میں ڈال دو، ریڈ ڈوری کے اندر کرسٹل کو ڈال دو، اس طرح وہ چمکتی بھی پھرے گی، پتا نہیں وہ کیا باربیز ہوں گی. ہم تو آج بار بھی بننا چاہتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے. 6-7 فٹ کی قد ہوگا تو پھر آپ کا فگر باربی جیسا بنے گا. آج کی لڑکیاں اپنے آپ کو باربی سے جوڑتی ہیں، ہائے میری شکل، میرا ناک ایسا، میرے کان کھلے، کیوں میرا وہ کیا. بھائی چھوڑ دو، تم نے اس کو کیا کرنا ہے، تمہاری بات کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جاتے ہو. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اس بات کا احساس دلا دے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلانا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری یہ جنس بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً، پھر پڑھتی ہوں، اس نے تمہاری ہی ہم جن سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. شادی کی بات ہے، شوہر بیوی کی بات ہے، اور مقصد شادی کیا ہے؟ سکون. بعض لوگ کہتے ہیں نا مقصد شادی کا بچے ہیں. نہیں، کہ جن کے بچے نہیں ہوئے تو کیا شادی کا مقصد ختم ہو گیا؟ لکھ لیجیے اسلام میں نکاح اور شادی کا مقصد سکون ہے، اطمینان ہے. آج ویسٹ اتنا بے سکون کیوں ہے؟ کیونکہ شادی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اسلام بھی رومانٹسزم سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ کرو، یہ سارا کچھ تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ تم شادی کے بندھن بند کو نہ کھولو. آپ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، مودہ اور رحمہ. شادی کے شروع کے دنوں میں مودت ہوتی ہے، सेंटिमेंटल होता है इंसान, इंटिमेसी होती है। वक्त के साथ साथ औरतें बच्चों में मगन हो जाती हैं, जज्बात कम हो जाते हैं, फिगर खराब हो जाते हैं। अब हो सकता है एक औरत बड़ी मोटी हो गई, बच्चों में चली गई, अब मर्द क्या करे उसको छोड़कर, फिर कोई 16 साल की ले आए? नहीं, रहमा नहीं, अब रहम करो उस पर। बुढ़ापे में जब कभी एक दूसरे को दवाइयां देते और दिलाते हैं, उस वक्त देखा करें इस वायद का मतलब। इस्लाम में शादी जितनी पुरानी होती है ना, उतनी खूबसूरत होती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको न सुनाऊं औरतों की खबर दूं, क्या मैं तुम्हें औरतों की खबर ना दूं जो जन्नत में होंगी? हमने कहा जरूर। आपने फरमाया मोहब्बत करने वाली, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, जब इसे गुस्सा आए या इसके साथ बुरा किया जाए या इसका शौहर इससे नाराज हो जाए, तो वो शौहर को कहती है मेरा हाथ आपके हाथ में और मैं अपनी आंखों में नींद का सुरमा नहीं लगाऊंगी जब तक कि आप राजी ना हो जाए। ये तरगीब तरहीब की रिवायत है 1941 नंबर की। यानी अच्छी बीवियां रात को सोती नहीं है जब तक उनके शोहर उनसे राजी ना हो जाए। वो ये नहीं कहती आप जाए नाराज हो, जो मर्जी करे मैं जा रही हूँ। तो अच्छी बीवी बने। देखिए औरत के पास सुकून है, घर को पुरसकून रखने में सबसे ज्यादा औरत का काम है। ठीक है मर्दों का मिजाज बिगड़ा हो, टेस्ट ही बदल गया, करप्शन आ गई, दूसरी औरतों में चले गए, उसको ना डिस्कस करें। आम शरीफ सीधे साधे मर्द को जहन में ले आइए, उसके साथ एक अच्छी औरत निभा कर लेती है। वो बार बार नहीं सोचती इसको बदलना, इसको छोड़ना, इसके साथ ये करूं। हाँ में हिला मिलाने वाली औरत हदीस में आता है पसंदीदा, ये नहीं कि एतराज आती जड़ती रहे। जो औरतें अपने शोहरों का मिजाज समझ जाती है ना, वो बिल आखिर शोहरों की हर चीज को कॉन्कर कर लेती हैं। शोहर बेचारे हार जाते हैं, आखिर में क्या करें, इसने ही मुझे डिस्कवर कर लिया। वो पहली जान जाती है इस वक्त क्या चाह रहे हैं। बेगम आपको किसने बताया? मुझे पता नहीं, मैं कोई पहली दफा आपके साथ मिली हूँ, मुझे आपका पता है। तो हमेशा याद रखें। फिर इसमें एक और बात भी देखिएगा कि इस्लाम मियाँ बीवी के बीच में रोमांस भी चाहता है। इस्लाम में रोमांटिसिज्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ बहुत रोमांटिक होते थे, पर कब होगा ये सब? शादी के बाद। एक्स्ट्रा मैरिज नहीं या बिफोर मैरिज नहीं है। आज हमने वेस्टर्न स्टाइल में पढ़कर या मीडिया कल्चर से जो रोमांस सीखा वो शादी से पहले का। फिल्म तो खत्म हो जाती है जब शादी हो गई, पूरी फिल्म तो शादी से पहले का रोमांस दिखाते हैं। तो ये चीज भी बार दफा हमारे बच्चों की सोचों को बिगाड़ देती है। अल्लाह ताला कहते हैं शादी कर लो, उसके बाद चैटिंग करो, उसके साथ डेटिंग करो, आप उसका हाथ पकड़ें, आप उसको जोक करें, आप मजाक करें, आप रात को खाने पे जाएं, जहां मर्जी जाएं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जब ये सारे जज्बे पहले से इधर उधर पूरे हो जाते हैं तो बाद में फिर शादियां खराब हो जाती हैं। अल्लाह सुबहान ताला हमें आपको इस बात की तौफीक दे कि अपने घरों में सुकून लाए। और अक्सर मैं सबको कहती हूँ अपने समेत आपको भी कि जिन औरतों को दीन की खिदमत का शौक है या दीन सीखने का शौक है, उनको तो दूसरों से ज्यादा अपने शोहरों को और अपने घरों को खुश रखने की जरूरत है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह ने खुश रखने का हुक्म दिया है। ये नहीं कि वो कहते हैं नमाज ना पढ़े, आप कहते हैं अच्छा जी ठीक है, वो आपकी खुशी के लिए नमाज छोड़ती है, वो आपको गलत काम का कोई मशवरा दे दें आपके चले दिए। अब शोहर को खुश भी तो रखना नहीं। ला तअतली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खालिक को नाराज नहीं करना, फिर मखलूक को जहां जिस तक हद तक खुश कर सकते हैं आप करते रहिए, अल्लाह ताला उनको आपसे खुश करेगा। लेकिन आप अल्लाह को खुश करते रहे, अल्लाह दिलों में प्यार खुद ही डाल देगा। जितना आपकी नेकी से अल्लाह खुश होता है ना, उतना आपका शोहर भी खुश होगा। जितना अल्लाह आपसे प्यार करता है, उसी तरह अल्लाह ताला आपके शोहरों के दिलों में भी प्यार डालता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा है, और जिस दिल में अल्लाह का डर होता है वो अपनी बीवी को खुश जरूर रखता है। तो लिहाजा इन सारी बातों को दुरुस्त रखना चाहिए। एक खास चीज जो शोहर बीवी का बॉन्ड होती है, सही मुस्लिम की रिवायत है 3613 नंबर की। आपने फरमाया जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो वो जात जो आसमानों में है वो नाराज रहती है हत्ता कि इसका शोहर इससे राजी हो जाए। तो ये खास हक की तरफ इशारा है, क्योंकि मर्द को बीवी के अलावा किसी और से तो ये ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। तो लिहाजा अपने घरों को पुरसकून बनाने के लिए हर तरह से मर्द को मुतमईन करें, खाना अच्छा खिलाएं, उसका पेट सुकून में आएगा, घर साफ रखें, उसकी आंखें सुकून में होंगी, खुद अच्छी लगे, अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को सजाएं। आप अकेले हैं, अगर घर में कोई गैर महरम नहीं है आप खुशबू लगा सकते हैं, आप अपनी ब्यूटी को एक्सपोज कर सकते हैं ताकि बाहर नजर ही ना जाए। जब हम दीन के नाम पे बेढंगेपन से भी घरों के माहौल भी अजीबो गरीब बना ले तो वो चीज असल में दीन की बदनामी का जरिया बनती है। फिर इसके बाद एक और चीज की तरफ इशारा किया जाए, हमीन आयाती ही खल्क समावाती वलर्द, और इसकी निशानियों में से आसमानों जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और रंगों का मुख्तलिफ होना। जरा देखिए एक दूसरे का रंग, एक दूसरे का फेस देखे, हाथ से हाथ मिला नहीं, ऐसे हाथ मिलाए जैसे ये मैंने अपने दो मिलाए, रंग फर्क है आप सबके? अब तो खुश हो मेरा गोरा कोई के मेरा काला, अल्लाह की शान है। परेशान हो गए, देखिए किसने बनाए ये मट्टी को, अल्लाह ने रंग दिया हुआ। मट्टी पे पेंट भी तो करते हैं ना लोग, रंग कोई और होता है, ऊपर से कोई और पेंट करके दिखाते हैं, ये सब किसकी शान है। आपको पता है कि दुनिया में 3000 जुबानें थी जो खत्म हो चुकी हैं, और अब इस वक्त तकरीबन 1000 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ इंग्लिश जुबान के 24 एक्सेंट है, और अगर शोहर की जुबान और बीवी की और हो फिर तो लग मजा आए। कितना खौफ आता है उस वक्त कि हाय मैं अपनी बात इनको कैसे समझाऊंगी, मुश्किल होता है ना, लेकिन अल्लाह आसान करता है। प्यार मोहब्बत होता है सब जुबानें एक हो जाती हैं। आप में से भी हो सकता है किसी के शौहर उर्दू बोलते ही ना हो, पंजाबी तो पता नहीं आती ना हो। कल मैंने इधर एक पंजाबी का जोक सुनाया इनको, टीम हमारी टीम साथ थी, हम लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा अब दौरा कुरान पढ़ा हुआ है तो किया हुआ थके हुए, चलो इनको सुनाओ। तो एक मजे का जोक था, उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी, तो मैंने सुना दिया, तो वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हुआ। घर गई तो मैंने इनको कहा कि आपको मैं एक चीज सुनाऊं, इनको पंजाबी आती नहीं लेकिन इनको शौक बड़ा है ना ऐसे पूछने का, तो मैं वो चिल्ला के रिकॉर्डिंग खुद नीचे किचन में चली गई। तो बाद में मैंने कहा कुछ समझ आएगा तो कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा शुक्र है जी जोक मैंने आपको नहीं सुनाया, कि आपका वो मिजाज ही नहीं मिलता, आपके समय क्या जॉब करूंगी इसका। तो हकीकत है कि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको दूर करता है। लेकिन ये अल्लाह की शान है कि कैसे रंग फर्क, जुबानें फर्क, और दुनिया में लोग फिरते हैं। कभी क्या हरम में जाकर आप एक स्याह औरत को देखकर सोच में नहीं पड़ जाते, और उसी के पहलू में एक खूबसूरत तुर्की औरत, पतली नाक वाली गोरी चिट्टी औरत आ जाती है। मैं तो वहां खड़े बैठ के ही सोचती हूँ अल्लाह रंगों का कितना फर्क है, अमलों का कितना होगा, इंसानों की आदतों का कितना फर्क है। तो ये चीज गौर के काबिल है। अल्लाह ताला कहते हैं देखो मैं इसमें निशानियां रखता हूँ लोगों के लिए, कौन से लोग, तो दानिशमंद है। तो सोचा करें, गौर व फिक्र क्या करें, लेकिन याद रखिए गोरे अच्छे नहीं है कालों से, और काले बुरे नहीं है गोरों से, मोटे पतले दुबले कोई फर्क नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत हुजरात के अंदर। वमिन आयाति, अब एक और निशानी, वमिन आयाति ही मनामुकुम बिललैल वन्नहार, और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना, और तुम्हारा इसके फजल को तलाश करना है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानी इन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। कौन कौन गौर से सुन रहा, सारी सुन रहे हैं। क्या हाल होता है जब रात को नींद आती है, बिस्तर पे पढ़ने को दिल करता है ना, और जब सुबह उठते हैं तो कैसे चहक रहे होते हैं, चम चम करते उठ जाते हैं फ्रेश। कुछ तो वैसे मॉर्निंग वर्ड्स होते हैं, सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं, हैं? और कुछ बेचारे तहज्जुद के नाम पे मियां साहब को भी दुखी कर रहे होते हैं, नहीं तहज्जुद पढ़ रही हूँ, बस लाइटें जला रही हूँ, और कुरान भी सुनना बड़ा अच्छा होता है, कुरान की तिलावत भी करूंगी, और ये भी करना है वो भी करना है। तो रात और दिन पे भी गौर किया करें, ये तो वैसे ही हमारे लिए तो वैसे ही यहाँ बड़ा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और इसकी निशानियों में ये है कि तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी और तमा के साथ भी। बिजली चमकती है तो रोशनी होती है, साथ आवाज आती है तो डर लगता है, दोनों चीजें साथ है। ये जिंदगी का खुलासा है, असल में यहाँ ये सीखने की बातें हैं। जिंदगी धूप छांव है, जिंदगी रात और दिन है, जिंदगी स्याही और सफेदी का नाम है। हालात कभी एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी तो दिल सोच के दिल डर जाता है, अल्लाह जो आज है वो कल नहीं होगा। अल्लाह आफियत रखना, अल्लाह सुकून देना, अल्लाह तला किसी भी मुश्किल में ना डालना। और साथ ही फरमाए आसमान से पानी बरसाता है, फिर इसके जरिए से जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। अब कितने लोग इन निशानियों पर गौर करके अक्ल से काम लेंगे, ये अब आप खुद जाने, लेकिन जरूर सोचिएगा। फिर एक और चीज, वमिन आयाति हन तकूमस समा वल अर्द बिअम्रिही, और इसकी निशानियों में से यह है कि आसमान और जमीन इसके हुक्म से कायम है। फिर जो ही कि इसने तुम्हें जमीन, फिर जो ही कि उसने तुम्हें जमीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। फिर उस दिन नहीं कहोगे अभी मुझे और सोना है, मुझे सहरी नहीं खानी, मुझे नमाज नहीं पढ़नी, और समझ ही रहे कब उठने की बात है, क्यामत के दिन आएगा, किसी को सुस्ती नहीं होगी, उस दिन तो उठना ही पड़ेगा। आसमान जमीन में जो भी है उसके बंदे हैं, सबके सब इसी के ताबे फरमान है। वही है जो तखलीक की इब्तिदा करता है, फिर वही इसको दोहराएगा, और जिसके लिए आसान तर है। अल्लाह के लिए पहली दफा भी आसान था, दूसरी दफा भी आसान है। हमारे लिए हमेशा चीज शुरू में मुश्किल होती है, बाद में आसान हो जाती है। آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ ایسے غلام بھی ہیں، کچھ ایسے غلام بھی ہیں جو تمہارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ہم سروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ شرک کا رد ہے کہ تم کہتے ہو اللہ نے فلاں بزرگوں کو فلاں اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم دیتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے نوکروں کے حق برابر ہو جائیں؟ تو ملازموں کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو کیا میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا؟ تو شرک کے لیے کوئی گنجائش اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ آئیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیاروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ساتھیوں میں، امت مسلمہ میں جو شرک میں مبتلا اس کو اس سے نکال دیں۔ دیکھیے اسلام میں آئے کیوں تھے؟ لا الہ الا اللہ، پھر شرک میں گھسنا تو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کر رکھے۔ کرو کیا فاقم بچہ کل دینی حنیفہ، پس نبی اور نبی کے پیروکاروں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمع دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سیدھے ہو جاؤ، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، کسی اور طرف نہ دیکھو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین، قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جو ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا۔ یہ ہے القرآن حیاتی۔ جب قرآن زندگی میں آتا ہے نا تو بندہ منیب بنتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع، فقط اس کا ڈر، اسی کی طرف جانا، ادھر جانا۔ اور اس کے برعکس من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین اپنا، جنہوں نے یعنی ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین بنا لیا، الگ کر لیا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی ہے تو یہاں آپ کو پتا چلا فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ نہ شکرے لوگ ہیں جو امت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر اتنے پیارے قرآن اور حدیث سے دور کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور انسانوں کی لکھی ہوئی چیزوں میں اور کتابوں میں کھو جاتے ہیں لوگ، اور ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح فرما دے۔ پھر انسانوں کی عادت، اس کا تذکرہ، وَإِذَا مَسَّنَا ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو اس وقت جگہ جگہ خود میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہوئے اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نہ شکرے نہ بنو، اللہ کی شکر گزار بنو۔ کیسے؟ جب ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب کبھی ان کو اپنے کیے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت بھگتنی پڑتی ہے تو یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نیک دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، پس مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حق نبھانے والا بنا، اور مسکین و مسافر کو اس کا حق دے دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا دین ہے، کتنے بیلنس طریقے سے ہمیں دوسروں کے حق سکھاتا ہے۔ تو زندگی میں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کا دین جب آپ پوری ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں نا، اے ٹو زی، اسلام اے ٹو زی، قرآن اے ٹو زی، سننا اے ٹو زی، سیرا اے ٹو زی، آپ کو جینے کا ڈھب آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ساری زندگی لوگ دنیا کی باتیں بھی سنتے ہیں، ڈرتے بھی، خدمت بھی کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں۔ 10 جگہ گئے ان کے کہنے پہ، ایک جگہ نہ جا سکے، گلا۔ بہو سارا دن کام کرتی رہی، ایک کام نہ کر سکی تو گھر والوں کا مزاج بگڑنے لگتا ہے۔ इसके बरस मैंने उन लोगों को देखा है जो एक बैलेंस तरीके से सबको चलते हैं लेकर, और अल्लाह के डर से ही दूसरों की खिदमत भी करते हैं। अल्लाह घर वालों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देता है, वो भी कहता है हाँ इनकी मजबूरी है, इनको पढ़ना है, इनको पढ़ाना है। हमारे स्टूडेंट्स में कुछ साथी इस तरह डिस्कस करते हैं, तो एक स्टूडेंट थी तो उन्होंने बताया कि वो उधर है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, तो जो अमूमी तौर पर आप देखे घरों में काम होते हैं वो करती रहती थी। तो जब उन्होंने कोर्स ज्वाइन करना था तो उनको इस चीज का बड़ा खौफ था कि मैं कैसे करूंगी ना, क्या करूं और मैं कमिटमेंट क्या करूं। अल्लाह का हुक्म देखे, उनकी सास ने भी कोर्स किया दारे कुरान जब हुआ था, तो उन्होंने भी अपनी बहू से कहा कि बेटा तुम कोर्स करो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं भी करूंगी तो फायदा तो होगा, लेकिन अगर तुम करोगी तो ज्यादा फायदा होगा, तो मैं बच्चों को रखती हूँ, तुम कोर्स कर लो। वो इतना रिगार्ड देती है अपनी सास को, कहती है मैंने ये कोर्स जो किया और आगे भी बढ़ी माशाल्लाह, वो कहती है इसमें मेरी सास का हिस्सा। हालांकि बच्चों की जगह होती है कई भी जगह ऐसी, लेकिन चले घर वालों ने कॉपरेट कर, ऐसी ऐसी सासें मैंने देखी हैं कि वो बहुओं को इस तरह से कौन कुरान के कोर्स करवाती हैं जैसे माएं अपनी बेटियों को इम्तिहान और पेपरों के दिनों में खिदमत करती है। कपड़े तक उनको इसरी करके देना, घर के कामों से आजाद कि आप जाके अपना काम करें, कॉपरेटिव। तो फायदा क्या हुआ, उन्हीं की नस्लें संवरी, उन्हीं के पोते पोतियों को अच्छी मां नसीब हो गई। तो ये दीन है, हुमुल मुफ्लिहून, फलाह क्या है कि हम अल्लाह के दीन को और दुनिया के मामलों को लेकर चलें। और कुछ सारी जिंदगी का तो खेल होता भी नहीं है, अगर इंसान अल्लाह के रास्ते पे चलता है उसके बाद वो खुद बहुत एडजस्टमेंट्स में आ जाता है कि मुझे कहां किस चीज को लेकर चलना है। फिर आगे आप देखिए इतने पारों के बाद दोबारा सूद की बात आ रही है, वमा अतैतु मिर रिबल यरबुअ फी अमवालिन नास, जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अमवाल में शामिल हो जाए। क्यों करते हो ऐसा कि बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। फला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो नहीं बढ़ता। जरा 3 सेकंड इस पे गौर कीजिए, अमूमन जो चीजें ली जाती हैं सूद पे दी जाती हैं वो इसी सोच से ली जाती है ना कि बढ़ जाएंगी, घर अपना हो जाएगा, किराए के घर से निकल आएंगे। हालांकि जितनी सूद की किस्त होती है उससे कम पे शायद किराए का घर मिलता है, लेकिन एक शैतान ख्याल डालता है कोई बात नहीं, किराए का घर है तो किराया तो जाया हो गया और घर के पैसे किस्तों में घर तो अपना बन जाएगा ना। कहां कभी बना जिंदगी में आज तक, मैंने तो नहीं लोगों के बनते देखे, बाद में बच्चे किस्तें दें तो होंगी इल्ला माशाल्लाह, और अगर बन भी गए तो आप बताइए कि अल्लाह को नाराज करके बना। फला यरबु इंद अल्लाह, कोई नहीं बढ़ता अल्लाह की तरफ। इसी तरह इसी आयत का एक मानी तोहफे तहाइफ भी लिया गया, किसी को जब हम गिफ्ट देते हैं ना तो वो इस नियत से नहीं देना चाहिए कि हमें ज्यादा मिले, क्योंकि ये नापसंदीदा बात है। और जब गिफ्ट को तवक्को में ले आया जाए ना कि अब यहाँ तो कोई जरूरी हमें तोहफा देगा तो वो रस्म बन जाती है, तो रस्मों में नहीं देना चाहिए। जब कोई उम्मीद रखे कि ये मुझे देगा तब ना दे, अपनी खुशी से दे, कीमत को ना देखें, अपने प्यार से दे। और आप देखेंगे कि जब हमारे खानदान में तोहफे लड़ाई का जरिया बन जाए, पसंद ही नहीं आया, कमजोर चीजें दे दी, शादी में क्या दे गए, सास को क्या डाल दिया, बहू ने ये कर दिया वो कर दिया, तो समझिए कि वो तोहफे नहीं है, वो एक किस्म की लाइबिलिटीज है। तो इस वक्त रियलिस्टिकली हम उम्मत वालों को इन चीजों को भी कम करना चाहिए, लेन देन खाना पीना इन चीजों को रिलैक्स पे रखिए और तरीके से चलिए। उसको दीजिए जिसको आपका देने को दिल करे, तब दीजिए जब आपका देने को दिल करे, इंशाल्लाह इसमें बरकत होगी। फिर फरमाया वमा तो मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह, जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी के लिए देते हो, फौलाइका हुमुल मुदीफून, बस वही दर हकीकत सॉरी इसी के देने वाले दर हकीकत अपना माल बढ़ाते हैं। समझ आई, सूद नहीं बढ़ता, ज़कात का माल देने से बढ़ जाता है, अल्लाह ताला उसको आसानियों में डाल देता है, आपके लिए कसरत होता है। और मुझे लग रहा है कि रमजान के पूरा होने से पहले हमारे लिए ये एक रिमाइंडर है, क्या कि ज़कात दिए कि नहीं दी। आम दिनों में भी दे सकते हैं लेकिन रमजान में अमूमन लोग देते हैं, और साल पूरा हो जाए तो उस माल पे ज़कात दे देनी चाहिए। कोशिश करके उसको लगाइए ऐसे किसी काम में कि जहां आपका सदका जारिया भी बने और आपके लिए बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला उसको खैर के कामों में डाल दे। लेकिन यह कि इस बोझ को साथ साथ से उतारते जाए तो फायदा होगा। बुखारी की रिवायत है कि तुम जो कुछ भी अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए खर्च करोगे तुम्हें इस पर सवाब मिलेगा, यानी बंदों के चेहरों के लिए नहीं, यानी दूसरों की खुशी के लिए नहीं कि उसको खुश करना है उसको देना है उसको नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए। हत्ता के फरमाया कि अगर एक लुकमा भी बीवी के मुंह में डालोगे तो उस पर भी अजर मिलेगा। ये बुखारी की रिवायत है 4409 नंबर की। फिर इसी तरह मुस्तद अहमद की रिवायत 2533 सबसे अफसल सदका वो है जो अपने रिश्तेदार पर खर्च किया जाए, जो पोशीदा दुश्मनी रखने की बिना पर तुमसे एराज करे। क्या समझे, जो रिश्तेदार आपका दुश्मन है جو گلے رکھتا جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کو دینے کا زیادہ اجر ہے. کیوں؟ ایک تو مال دیا, دوسرا آپ نے اپنی عزت کو بھی تو قربان کیا نا, اپنی انا کو بھی تو قربان کیا. تو لہٰذا دلوں میں بغض نہیں رکھنے چاہیے. جہاں کوئی آپ کو لگے کوئی آپ سے کٹا کٹا ہے, آپ اس کو گفٹ دے دیں, اس کو تحفہ دے دیں. غصے کو ختم کریں, نفرتوں کو ختم کریں. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اور صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں. بخاری کی روایت ہے 5991 کی, کہ جس میں انسان اس چیز کی خواہش رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا, اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیتا ہے, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک کہ وہ اللہ جو بالا برتر ہے شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باس مال کا, شاید کہ وہ پلٹ آئے. یہ آیت آج کے حالات کی منہ بولتی تصویر ہے. دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے ہر طرف. آپ دیکھیے یہ دنیا جس میں شرک عام ہو جائے وہاں کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. اور فساد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور بندوں کے تعلقات کا بگڑنا اور بندوں کے بندوں سے تعلقات کا بگڑنا. آج عمومی طور پر دیکھیے رشتوں کی وہ مٹھاس نہیں رہی, آج وہ لحاظ نہیں رہا. تو یہ سب فساد کی مختلف قسمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح والا بنا دے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. پس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی ذمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. وہ دن آئے گا تو جائے گا نہیں, اس کی فکر میں جینا ہے. اسے لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. کیوں؟ ناراض ہوں گے, تم نے مجھے برباد کیا, تمہاری وجہ سے گناہ کیے, تمہاری وجہ سے حرام کیا, تمہاری وجہ سے غلط باتیں مانی. اس دن جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں گے. اور جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا ببال اسی پر ہے. اس کے برس جن لوگوں نے نیک اعمال کیے, فلی انفسہم یمہدون, تو وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے, تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے, یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. قیامت کے ان مناظر کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر. اس کی نشانیوں میں ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے, اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا, وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر انہوں نے جرم کیا. نوٹ کیجئے گا, جرم, کرمنل تھے وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ بات تو ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. کیا صرف کل تھا کہ آج بھی ہے؟ آج بھی ہے. ایمان پیدا کر لیں, اللہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے گا. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا, اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل کو اوپر اٹھاتی ہیں, پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے, ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے, پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے ملکوں میں بھی خیر کی بارش برسا, کتنا خوش ہوں گے لوگ بارش دیکھ کر. حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات, کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. اسی طرح اللہ ہماری مردہ امت کو بھی زندہ کر دے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ تو کفر ہی کرتے رہ جائیں. اے نبی, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو, اور جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں ان کو بھی نہیں. تو شرک چھوڑ دو, قبروں پہ جا کے بزرگوں کو ستانا چھوڑ دو, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر آہے راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو, تم تو صرف انہیں کو سنا سکتے ہو. یہ باپ لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ قرآن سنوا رہا ہے. کون؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں. اللہ ہمیں اندر تک جھکا دے, ہمارے سر جھک جائیں. کبھی آپ کسی بھی جھکے ہوئے سر والے انسان کا تصور لائیں कितना खूबसूरत तसव्वुर आता है उससे। फिर इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल की बात है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअला मिन बादी ज़ौफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह ही तो है जिसने ज़ौफ़ की हालत में तुम्हारी पैदाइश की, इब्तिदा की, फिर इस ज़ौफ़ के बाद तुम्हें कुव्वत बख्शी, फिर इस कुव्वत के बाद तुम्हें ज़ईफ़ और बूढ़ा कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, वो सब कुछ जानने वाला है और हर चीज पर कुदरत रखता है। कभी किसी के घर में कोई बुजुर्ग हो और जो बेड पे हो और जिनको फूड की पाइप लगी हो, ड्रेनेज की पाइप लगी हो, जिनको कभी झटका लग जाए तो सांस उखड़ जाए, उनको याद करके इस आयत को समझिए। कुव्वत तक आज मेरी कुव्वत कल कमजोरियों में ढलेगी। मासूम बच्चे होते हैं कितने कमजोर से फिर इतने ताकतवर हो जाते हैं। कभी भी मान ना करे कोई अपने ऊपर, और बुजुर्गों को जरूर देखा करे, उनके पास बैठ के सोचा करे, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसी होंगी, अल्लाह ना करे मुझे बीमारियां लग गई तो मैं सिर्फ बिस्तर पे जाऊंगी, और अल्लाह ताला हमें सेहत आफियत में रखे आखिरी दिन तक। वयौम तकूमु साथ युक्सिमुल मुजरिमून, और जब वो साथ बर्पा होगी तो मुजरिम कसमें खा खा कर कहेंगे हम एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे। इसी तरह वो दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे, मगर जो इल्म और ईमान से बहरा मन किए गए थे वो कहेंगे अल्लाह के नविश्ते में तो तुम रोजे हशर तक पड़े रहे हो, सो ये वही रोजे हशर है लेकिन तुम न जानते थे। बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को इनकी माजरत कोई नफा न देगी और न इनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। वक्त तो दुनिया में था, वो तो गुजर गया, और वहां जाकर अब क्या फायदा। सूरत कैंड देखिए कितना खूबसूरत है। वलकद दरबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरआनि मिन कुल्ली मसल, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है, तुम ख्वाह कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो यही कहेंगे कि तुम बातिल पर हो। इस तरह ठप्पा लगा देता अल्लाह इन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म है। अल्लाह हमारे दिलों पर ठप्पे न लगाना, जहालत बहुत बड़ी तबाही है। बंदे को याद भी नहीं रहता मैं कौन हूँ, पता भी नहीं चलता मैं कितना महरूम हूँ। बस ए नबी सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। फसबिर इन्ना वादल्लाहि हक, अंदाजा लगाइए कितने मुश्किल हालात थे अल्लाह के नबी पे। आसमान से तसलियां आ रही हैं, सब्र कीजिए सब्र कीजिए। और वो लोग, और हरगिज हल्का ना पाए तुमको वो लोग जो यकीन नहीं रखते। किस मामले में हल्का, किसी मामले में, असूलों में, अमल में, जाब्तों में। क्योंकि आप देखिए जब एक इंसान अपना आप कमजोर पाता है ना तो वो अक्सर दूसरों के प्रेशर में आने लगता है। तो इशारा इसमें कि ये ना कहो कि अब हम मुसलमान तो कुछ नहीं कर सकते, अब हमें गैरों की बातें तो माननी पड़ेगी, उनके तरीकों को अपनाना पड़ेगा, उनका रंग ढंग ना अपनाएंगे तो हम दुनिया में कैसे आगे चलेंगे, का ऐसा नहीं है। जिसने तुम्हें कमजोरियों से सेहतमंदी दी क्या आगे जाके नहीं देगा? तो ये सारी सूरत निशानियों पर गौर करने वाली है। सबर करना ही पड़ेगा। हदीस में आता है कि तुम्हारे बाद वाला जमाना सबर आजमा होगा। इस वक्त हक को थामने वाले को तुम्हारे 50 आदमियों के अजर के बराबर सवाब मिलेगा। ये सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है 494। क्या पता चला, जो जितने मुश्किल हालात में नेकियों पे जमेगा उसको उतनी ही अल्लाह से बड़ी खैर मिलेगी। अल्लाह तआला हम सबको भी अता करे। थोड़ी सी तिलावत सुनते हैं फिर सूरत लुकमान का खुलासा लेंगे।
الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
सूरत लुकमान नाम से ही थोड़ी सी अनयूजुअल सूरत है। लुकमान कोई नबी नहीं थे, लेकिन जिस तरह हर कल्चर में कुछ ना कुछ साहिब फरासत लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल को हकीम उम्मत कह दिया जाता है, इसी तरह अरब लोग लुकमान को एक हकीम के नाम से पहचानते थे और लोगों ने घरों में इनके कुछ सखीफे और उनके अकवाल जरीन वगैरह रखे हुए थे। जब कुरान आया तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेट था, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को माइल करने के लिए इस कुरान में उस शख्सियत का जिक्र करके बता दिया कि इस्लाम कुरान के सिवा दूसरी चीजों का दुश्मन नहीं है, शर्त यह है कि वो इस्लाम की सच्ची तालीमात जो है उससे कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो। इस सूरत में बहुत प्यारे तरीके से इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए इसका तस्करा किया गया, मोहसिन बनना सिखाया गया और खास तौर पे औलाद की तरबियत के इसमें बहुत प्यारे नुकते हैं। इंशाल्लाह हम इसका सेकंड रुकू जब पढ़ेंगे तो आप खुद भी देख लेंगे कि किस तरह बच्चों की तरबियत में किन किन चीजों का किस उम्र में ख्याल रखना चाहिए और उनको किस तरह से अल्लाह ताला से जोड़ना है। इस सूरत के मजामीन को देख लेते हैं तो 34 आयतें हैं टोटल, मक्की सूरत है, चार इसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक आयत 1 से 9 तक, खुदाए हकीम का कलाम ही हकीम है यानी कुरान हिकमतों भरा है। आयत नंबर 10 और 11 में खालिक और रब को वाहिद ना मानना जुल्म है। और फिर 12 से 13 में शुक्र और तौहीद अदल यानी शुक्र और तौहीद का तस्करा भी है और साथ ही साथ शिर्क को जुल्म कहा गया। फिर आयत नंबर 13 से 19 तक आप देखेंगे लुकमान की नसीहतें हैं जो अपने बच्चे को की और मुख्तलिफ सिफात को तरतीब के साथ पेश किया गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 20 से 34 में तौहीद के असबात और शिर्क के रद्द हैं मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है और खास तौर पे फिर आखिर में शैतान की बात है। पूरी सूरत का जो थीम है ना वो शुक्र और हिकमत है। जिंदगी में हिकमत आ जाए और शुक्र आ जाए इसी से तौहीद का रास्ता भी मिलता है और तौहीद अदल है और शिर्क जुल्म है। ये सूरत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी दौर में नाजिल हुई थी जबकि सूरत अनकबूत नाजिल हुई और बिल्कुल मुसलमानों को थ्रेट किया जा रहा था और बच्चों पे स्पेशली यंगस्टर्स पे बहुत प्रेशर था। इस सूरत में भी वायत आ रही है कि जिसमें सहाबी मुसलमान हुए तो उनकी माँ ने उनको मजबूर किया कि इस्लाम को छोड़ दो। तो आज के दौर में हर वो यंग बच्चा बच्ची जो दीन पे चले और उसके माँ बाप उसको रिवायात के नाम पे या खानदान के नाम पे कुछ ऐसे कामों के करने पे मजबूर करें जो कुरान सुन्नत से टकराता है तो उसके लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं। आइए शुरू करते हैं तर्जमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस सूरत का शुरू सूरत बकरा से मिलता हुआ लगेगा। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन। अलिफ लाम मीम ये किताबे हकीम की आयात हैं, हिदायत और रहमत नेक लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, जकात देते और आखरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। حکمتوں بھری کتاب آپ کو کبھی غلط کام کرنے کا موقع نہیں دے گی یا دعوت نہیں دے گی. آپ شروع سے آخر تک بکرا سے لے کر اب تک دیکھ لیجیے, کوئی ایک امورل قسم کا حکم دیا قرآن نے؟ کوئی نیوڈیٹی کی بات کی؟ کوئی بے حیائی کی بات کی کہ یہ کیا کرو, بدتمیزی کرو, جاہل بنو, گموار بنو؟ کچھ بھی تو نہیں. یہ ہے حکمت بھری کتاب. اور حقیقت ہے کہ یہ کتاب زندگی میں آتی ہے تو جینا جینا آ جاتا ہے, لوگوں سے معاملہ کرنا بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس کتاب سے دور ہیں. وجہ, اب اگلا حصہ آپ بڑے غور سے سنیے گا. قرآن سے دوری کی وجوہات میں ایک وجہ, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے, جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بٹا دے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے. حال کیا ان کا؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا. اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا خبر سنا دو ان کو ایک ایسے دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ ہی حقا, یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ان 9 آیتوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو آپ کو کیا بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے حکمتوں بھرا کلام نازل کیا لیکن لوگوں میں کوئی ایسا بد نصیب ہے کہ جو پیسے لگا کر ایسی چیزیں گھروں میں لے کر آتا ہے, خرید کر لاتا ہے کہ جس سے لوگ اس کتاب سے دور رہے. لفظ یشتری کو ذہن میں رکھیے, خریدنا, تو بائے. کس کو؟ لہو الحدیث. یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے. جیسے اردو میں ہم لغو بولتے ہیں نا, لغویات, اسی سے لغو ہے. ایسی چیز جو بہت حقیر ہو لیکن اعلیٰ چیزوں سے آپ کو غافل کر دے. اور احادیث میں اس سے جو مراد ہے, گانا بجانا, قصے, کہانیاں اور ایسی چیزیں جو اپنے اندر انسان کو انوالو کر لے کہ نہ قرآن میں دلچسپی رہے, نہ نماز سے کوئی تعلق رہے اور نیکی اور خیر کے کاموں سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو. اللہ کہتے ہیں پیسے لگا کر لوگ ایسے آلات خریدتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے کیا کچھ ہے. سب سے زیادہ خرچہ گھر میں کن چیزوں کا آتا ہے؟ بجلی کا بل زیادہ کیوں آتا ہے؟ مہنگے آلات کون سے ہیں؟ کن چیزوں کو لوگ زیادہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں؟ کبھی گانوں کے البم تو دیکھیں, لاکھوں لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے. اور کتنی پیمنٹس دیتے ہیں, ایک ایک سی ڈی, ایک ایک کیسٹ کتنے کی خریدتے ہیں, ایک ایک فلم کتنے کی ہے, کتنے لاکھوں ڈالر لگا کر ایک ایک فلم بنتی ہے. لہو الحدیث. ابن عباس کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, اس سے مراد غنا, جنا گانے کو کہتے ہیں. اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کیونکہ یہ انسان کو اپنی طرف گم کر لیتی ہیں. صحیح ترغیب کی روایت ہے 3527, دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں, یعنی جن آوازوں پہ لعنت کی گئی, ایک خوشی کے موقع پہ گانا بجانا اور دوسرا مصیبت کے وقت جزا و فضا کرنا. سینہ کو بھی چیخو پکار. ہم کہتے ہیں لو شادی کیسے سجے گی اگر ڈانس نہیں ہوگا اور لڑکے لڑکیاں ناچے نہ مزہ ہی نہ آئے گا. اب آپ خود دیکھ لیجیے, یہ حدیث ہے آپ کے سامنے, مجھے اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ وہ حصہ جس پہ میوزک پہ کثرت سے بات کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ انسانوں کو سکھاتے ہیں, اسی نے ان چیزوں سے ہمیں روکا ہے. ایسی چیزیں بندے کو غافل کرتی ہیں. اور ایک جم لکھ لیجیے اس بارے کا, جہاں تک پھیلا دے, موسیقی کے ساتھ قرآن ہضم نہیں ہوتا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کیلشیم کی گولی کھانی ہے تو کہتے ہیں چائے کے ساتھ نہ کھانا, اس کا بھی اثر ختم ہو جائے گا. کچھ دو چیزیں آپس میں ریپیل کرتی ہیں نا, قرآن اور میوزک ساتھ نہیں چل سکتے. ایون آج جن لوگوں نے میوزک کو قرآن کے ساتھ پیش کر دیا, اسی لیے تو بے اثر ہو گئی عبادات بھی. یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یہ تو گرم اور ٹھنڈے کو جمع کرنے والی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن میں لگے تو اس کا آلٹرنیٹ اچھی آوازوں میں قرآن سنیں. آپ دیکھیے میرے پاس آپ آئے, میرا پسندیدہ شغل ہے یہ, 10 سے زیادہ کاریوں کے نام آپ کو لکھا دوں گی, سلو, فاسٹ, سیڈ, تھرل, یا جو بھی آپ کے نام ہے گانوں میں. کبھی آپ کا سلو سننے کو دل کرے تو ان کو سنیں, پیسفل سنیں تو ان کو سنیں, تیز سننا تو ان کو سنیں. اتنی ورائٹی ہے الحمدللہ آج کے دور میں. फिर भी अगर एक इंसान इन चीजों में पढ़ जाए ये उसका नसीब है, और कुरान पढ़ने पढ़ाने सुनने वालों को तो जेब ही नहीं देता कि वो अपना वक्त इन चीजों में लगा दे, जिसके बाद कानों में सीसा पिलाए जाने की भी बातें आती हैं। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाते हैं कि देखो मैं कितनी बड़ी हस्ती हूँ। खलक समावाती वल अर्द खलक समावाती बिगैर अमदिन तरौनहा, उसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाए, इसने हर तरह के जानवर फैला दिए इसने हर तरह के जानवर फैला दिए जमीन में, और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगाई। ये तो है अल्लाह की तखलीक, अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात है कि ये जालिम लोग सरी गुमराही में पड़े हुए हैं, यानी इतनी प्यारी कायनात नहीं दिखती, उस मालिक के कारनामे नहीं दिखते, उससे मुतासिर नहीं होते, और कोई चार बोल बाल बोले तो कहते मैं फैन हूँ, आई एम डाइंग फॉर हिम, मैं तो उसके लिए मर रही हूँ, मुझे उसका ऑटो चाहिए, मुझे उसका धक्का चाहिए, मुझे उसका हाथ चाहिए, मुझे ये चाहिए। किन किन चीजों को बनाते हैं। इसी नॉर्वे में 2 साल 3 साल पहले एक वाक्य हुआ था, याद आ चुका होगा कुछ लोगों को, कि कैसे एक फॉरनर आया था सिंगर, और यंग लड़कियां वो दीवारें तोड़कर वहां पहुंच गई थी, और कितनी मर गई थी, शायद लिफ्ट में किसी का पांव आया था और काटना पड़ा था। जी किसको देखने के लिए, जो 2 दिन ना नहाए तो बू आए उसके पास से, जिसने कभी जिस जुबान ने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन था, वल्लाही मैं जानती नहीं इसीलिए बोल रही हूँ, पता होता तो ना बोलती, हमें क्या पता वो कौन है, लेकिन उसके मीठे बोल सुनने गई थी ना औरतें, ये लड़कियां, और मुस्लिम लड़कियों की खबरें आई थी अखबारों में, हिजाबी लड़कियां भाग भाग के जाके उस जंगलों को तोड़ तोड़ के पहुंच रही हैं, तो अल्लाह से नहीं मुतासिर होते। कितना घटिया शौक है तुम्हारा, कितना बुरा। एक लफ्ज पढ़ो 10 नेकियां, एक लफ्ज तिलावत का सुना, आप देखिए एक आयत आप सुनते हैं ना अभी यहाँ बैठ के, घर जाके उसके गिल्फ गिनिएगा, वाला कद आते ही ना, एक एक लफ्ज पे 10-10 नेकियां, किस गाने को सुनने पे 10 नेकियां, एक लफ्ज पे 10 नेकियां, किसको पढ़कर बाद में नेकियों के जज्बे उभरते हैं, किसको देखकर बंदे मोटिवेटेड होते हैं, जिनको पढ़ने से जिन फिल्मों गानों को सुनकर और ही ज्यादा गुम होने को दिल करता है, क्या तो और ही डूब जाओ नशे में किसी और चीज के, तो आप बताइए उन चीजों के अंदर नस्ल पड़ी हुई आज। अलावा इकबाल ने क्या कहा था, पहला मिसरा मुझे याद नहीं, दूसरा क्या, कि तौसर रबाब आखिर, आ मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, तौसर रबाब शमशीर सना अव्वल तौसर रबाब आखिर, कहते हैं तुम चाहते हो कि उम्मतों की तकदीर किस चीज में लिखी है, तो ये गाने के और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ना लोगों को बच्चों को पकड़ाओ, इनके हाथों में शमशीरें पकड़ाओ, और जब हमारे बच्चों के हाथों में ये आया उसी वक्त से उम्मत बिगड़ गई। ये कोई आज की बात नहीं, ये 100 साल हो चुका है, इसी में खो गए, फिल्में ओल्ड मूवी फुला गाने फुला, ये इसलिए ये जिंदगी इसलिए आई थी, आपको 3 घंटे मिले कमरे इम्तिहान में, आपके मुझे 2 घंटे तो इसमें से गाने और फिल्में देखनी है, 1 घंटे में पर्चा हल करूंगी, तो जिंदगी के भी ये 3 ही घंटे हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा, खुद सोच लें कि मुझे अपनी आने वाली जिंदगी में क्या करना है, कोई अच्छी सी नीयत करते हैं 3 सेकंड तक और करते हैं। इसके बाद अब तरबियत औलाद के सिलसिले में ये बहुत अहम रुकू है, इस पे लेक्चर्स भी हैं, इस पे पूरा सेमिनार मौजूद है, मैं इस पूरे रुकू को पढ़ूंगी और फिर इंशाल्लाह तरतीब के साथ आपको ही बता दूंगी, और आपको खुद भी दिख रहा है कि बच्चों को बताते हुए क्या बात पहले बतानी चाहिए क्या बाद में, क्योंकि बाद दफा हमारी हिकमत वाली तबलीग नहीं होती जिसकी वजह से फिर बच्चे रिएक्शन में आ जाते हैं। हिकमत के साथ बात करेंगे तो फायदा होगा। पहली चीज के वलकद आतैना लुकमान अल-हिकमत अनिश्कुर लिल्ला, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र गुजार हो, जो कोई शुक्र करेगा इसका शुक्र करना उसके अपने हक में होगा, और जो कोई नशुक्री करेगा तो उसका वबाल उसके ऊपर पड़ेगा, और जो कुफर करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज है और आपसे आप महमूद है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, सबसे पहले बच्चों को रब से जोड़े। हक ये कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालदैन का हक पहचान की दावत अब हर पहचानने की खुद ताकीद की है, इसकी माँ ने जोफ पर जोफ यानी कमजोरी पर कमजोरी उठाकर इसे अपने पेट में रखा और 2 साल इसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर और अपने वालदेन का शुक्र बजा ला। मेरी की तरफ तुझे पलटना है, लेकिन अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज न मान। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी इस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही तरफ है। उस वक्त मैं तुमको बताऊंगा जो तुम अमल करते थे। या बुनैया इन्नहा इन्तकुम इस्काल हब्बत मिन खर्दल। और लुकमान ने कहा, बेटा कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह इसको निकाल लाएगा। वो बारीक बीन भी है और बाखबर है। बेटा नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सबर कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई। और वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुंह फेर कर बात न कर, न जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में इतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज जरा पस्त रख, और सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। देखिए क्या क्या बातें बच्चे को सिखा रहे हैं, बोलना चालना बात करना। आप देखिए कि इसमें तरतीब बहुत अहम थी। पहली बात है कि हिकमत क्या होती है, क्योंकि माँ बाप में हिकमत होगी तो बच्चों में भी आएगी। तो हिकमत होती है सही वक्त पर सही बात करना। गलत वक्त पे सही बात का फायदा नहीं होगा, सही वक्त पे गलत बात का फायदा नहीं होगा। इसको अच्छे तरीके से बात करने की जरूरत होती है। तो तबलीग में ये बहुत बड़ी चीज है। हर लम्हे तुम फैसले कर रहे होते हैं क्या करें किधर जाएं। मतलब देखिए कि खाना पका रहे हैं, हिकमत क्या है, नमक उतना ही डालें जितना डालना है, मिर्च उतनी डालें, भूने उतना जितना भूनना है, उतने ही गोश्त को गलाएं जितना गलना है, ये हिकमत है। इसी तरह जिंदगी में भी लोगों के पास इल्म बहुत होता है, हिकमत नहीं होती। इल्म है, इस्तेमाल करना नहीं आता उसको, सिचुएशन सामने आती है फेल होते हैं, सपारा खोलते हैं सब कुछ याद आ जाता है। इम्तिहान का पर्चा जब ससुराली रिश्तेदारों की सूरत में आता है सब भूल जाते हैं कि लोगों से कैसे डील करना था। तो विजडम, डिसीजन पावर और ये सारी चीजें, राइट को रॉन्ग, रॉन्ग को राइट ना कह देना, ये सब कुछ हिकमत में आता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि शुक्र की बात है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अल्लाह के और आपके बन जाए, एक जज्बा उनमें डाल दें, शुक्रगुजारी, बी थैंकफुल। जब आप किसी के शुक्र गुजार होते हैं ना, तो फिर आप उसकी हर बात को समझते हैं। जो लोग किसी की बात को अहमियत नहीं देते ना, असल में वो उसको अहमियत नहीं दे रहे होते हैं। तो जब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह की बात मानेंगे, आपका शुक्र अदा करेंगे आपका फायदा होगा, आपकी मानेंगे। तो अगर मैं आपकी, अगर अपने माँ बाप के साथ कोई नेकी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वी शुड बी थैंकफुल। लेकिन आजकल के बच्चे तो कहते हैं आप ना पैदा करते हैं, इट वॉज योर डिसीजन। हमने कहा भाई आपका मजा था, हमें क्यों रोका आपने, हमें तो नहीं आपने कहा था। अब देखिए किस हद तक जुबानें खुल गई हैं, कि इस हद तक बच्चे कहते हैं कि आप हमें बिल्कुल ना पैदा करते, हमने कब कहा था कि आप हमें पैदा करें, तो फिर आप भुगतें। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू दर्दा की रिवायत है, कि अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना ख्वाह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, फिर भी शिर्क न करना ख्वाह तुम्हें जला दिया जाए। क्या मतलब कि माँ बाप के कहने पर भी शिर्क नहीं करना। और रिवायत में आता है जिस हाल में मरे कि अल्लाह को शरीक ठहराता था वो जहन्नुम में जाएगा। ये बुखारी की रिवायत है, जाके खुद खोल के पढ़ ले 1238। इसलिए शिर्क को पहचानना है। माँ बाप भी मजबूर करेंगे तो शिर्क फिर भी नहीं करना। और ये जो आयात हमने पढ़ी है माँ बाप की फरमा बरदारी की, ये साथ भी नबी वक्कास के बारे में, जब ये मुसलमान हुए तो इनकी माँ ने कसम खा ली कि ना खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक शिर्क पे वापिस ना आ जाओ। अब ये परेशान हुए कि इस्लाम तो माँ बाप कितनी बात मानने को कहता है, तो ये तो मुझे ये कह रही है। तो ये नबी सल्लम के पास आए कि मेरे लिए क्या हुक्म है, तो आपने फरमाया तुम उनकी बात नहीं मानोगे। ये अदबुल मुफरत की रिवायत है 18 नंबर की। तो क्या पता चला, मुशरिक माँ बाप या बेनमाजी माँ बाप या बेदीन माँ बाप हो जाए और औलाद दीनदार हो, तो फिर वो किस बात को मानेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के। लेकिन दुनियावी मामले में अच्छा रहे, जैसे आपने हजरत अस्मा बिनते अबी बकर को कहा, इनकी वालदा मुशरिका थी, मदीना में आई बेटी के पास कुछ मदद लेने, कहने लगी क्या मैं अपनी मुशरिका माँ की मदद कर दूं। तो आपने कहा क्यों ना करो, जरूर करो, जैसे कोई माँ बेटी बेटी अपनी माँ के साथ करती है, यानी सिला रहमी करो। लेकिन बात नहीं माननी। ये बुखारी की रिवायत है 2620 नंबर की। तो बहरहाल इस्लाम हमें सिखाता है। फिर आप देखिए कि बच्चों को जो चीज सिखानी है वो तकब्बुर से बचना है। बड़ाई का एहसास, खुद उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना पहना कर और अच्छे जूते देकर और ब्रांडेड चीजें देकर हम सेल्फ कॉन्शियस कर देते हैं। हदीस में तो राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, ये मुस्लिम की रिवायत है 276 नंबर की। तो अपने अंदर से भी तकब्बुर निकालना है दूसरों पे। एक चीज जिसकी आज बहुत जरूरत है और यहाँ देखिए बात की गई, वो बॉडी लैंग्वेज है, एटीट्यूड औलाद का ठीक करना चाहिए। ला तसायर खद्दा कलिनास, आज बच्चे बड़ों से बात नहीं करना पसंद करते, माँ की दोस्त आ गई बच्चे को परवाह भी नहीं है। और यकीन करें नॉर्वे में ये बहुत कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ के बच्चे में इस तरह नहीं देखा, आज भी है। दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ अब ये एक प्लेक आ गई कि माँ बाप की दोस्तें हैं तो बच्चियां पास नहीं बैठती, आ नहीं रही, बात नहीं कर रही, फोन उठा अस्सलाम वालेकुम मम्मी इज नॉट होम खुदा हाफिज, दरवाजे पे अम्मा घर पे नहीं है। कुछ घरों में ऐसे, सब में ऐसा नहीं, लेकिन ये चीज अब कहीं ना कहीं मुसलमानों के बच्चों में दिख रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को फ्रेंडली होना चाहिए, बड़ों के साथ बैठना चाहिए, इनकी महफिलें उनसे अलग और उनकी इनसे अलग नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझ पर वही की गई कि तवाज़ु इख्तियार करो, यहाँ तक कि दूसरे पर ज्यादती ना करे और ना एक दूसरे पर फख्र करे। तो ये बच्चों में कब आएगा, जब आप उनके पालने के अंदर आप उनको थोड़ा सा जरा दबा के पालेंगे। अबू दाऊद की ये रिवायत थी 4897 नंबर की। फिर देखिए चलने का अंदाज सिखाया जा रहा है, बच्चे घर में हो शोर भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, नहीं वक्त की मस्जिद, हम कहते हैं बच्चे हैं बच्चे, नहीं आगे भी आप पढ़ेंगे यहाँ भी देखिए आवाजें नीची रखो, चाल हल्की रखो। क्या ये बच्चे बेचारे अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे ये सारी बातें सुन के जो कुरान में आई आ रही है? नहीं, जैसे उनको घड़ेंगे ना, जैसे वो कहते हैं ना रोटी को जैसे घड़े वैसे घड़ती है, चाल बचपन से सेट हो जाती है, बोलने का स्टाइल बचपन से सेट हो जाता है। आप दूर से खड़े चीख रहे हैं अम्मा बा फुलां भाई को बुला रहे हैं, नहीं बेटा इधर आइए करीब आके बात कीजिए, आपको इजाजत नहीं कि आप नीचे खड़े होकर ऊपर भाई को आवाज दें, नेवर यू कैन डू दिस। इस तरह से आप अपने घरों का माहौल बनाएं कि आपका घर यूजर फ्रेंडली माहौल हो, आपके घर में कोई सो रहा है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई इबादत कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो माहौल बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, इससे फिर दिखिन में सुकून आएगा। वरना ये खुद ही हाइपर होकर हमें दुखी करते हैं, फिर माँ बाप परेशान होते हैं। अल्लाह ताला सबको सालेहीन कर दे। फिर इसके बाद अल्लाह ताला की कायनात की कुछ निशानियों पर गौर व फिक्र। अलम तरवन अल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुम लोग देखते नहीं हो कि अल्लाह ने जमीन और आसमान की सारी क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसखर कर रखी हैं और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल यह है कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई इल्म हो और हिदायत हो या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब हो। कितनी सच्ची बात है, इल्म के बगैर पैसे करने वालों की बात है, किताब के बगैर दीन सीखने और सिखाने वालों की बात है। और जब इनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं हम तो इस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया, क्या ये इन्हीं की पैरवी करेंगे, ख्वाह शैतान इनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुलाता हो। कैसा प्यारा सवाल है, करो क्या, हाईलाइट कीजिएगा। वमई युस्लिम वजहहू इलल्लाहि वहुवा मुहसिन, जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अमलन नेक भी हो, इसने फिल वाके एक भरोसे के काबिल सहारा थाम लिया और सारे मामला का आखिरी फैसला अल्लाह ही के हाथ में। थोड़ा सा अपने आप को इजी छोड़ करके कि अल्लाह मैंने तुझ खुद को तेरे सुपुर्द किया। देखिए तीसरे पारे में ये आयत आई थी ना, ये मफहूम था आयत का, तीसरे पारे में थी मफहूम की आयत, आयतुल कुर्सी के बाद गुजरी थी, आज यहाँ फिर काबिल और तिल वस्का, जरा सा करके तो देखिए अल्लाह के आगे खुद को सरेंडर, सारी फ्रिक्शन खत्म कर दे, रेजिस्टेंस खत्म, मुखालफत नहीं करूंगी अल्लाह आपकी बात की, चिढ़ूंगी नहीं, पाँव नहीं पटकूंगी, बस अल्लाह आप मुझे थाम ले, मैं गिरने लगी हूँ, बोन लेस बन जाए, हड्डी बोटी के बगैर बन जाए, जो अल्लाह के करूंगी, जहां से रोके रुकूंगी, जो कह बोलना है बोलूंगी, फिर देखिए अल्लाह आपके साथ मेरे साथ क्या मामला करता है। और नहीं करता कोई तो वह मन का फर फला यहजुन का कुफर हो, और अगर अब जो कोई कुफर करता है तो इसका कुफर आपको गम में मुब्तला ना करे, इनको पलट कर तो हमारी ही तरफ आना है, फिर हम इनको करके आए हैं, यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है, हम थोड़ी मुद्दत तक इन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं, फिर इसके बाद इनको बेबस कर देंगे और एक सख्त अजाब की तरफ खींच लेंगे। जवानी मस्तानी चार दिन की, दुनिया दीवानी चार दिन की, फिर ना खत्म होने वाला अजाब है। कौन फायदे में रहा कौन नुकसान में रहा, हर बंदा अपने बारे में सोच ले। वला इंसान तो मन खलक समावाती वाल अर्द, और अगर आप इनसे पूछो कि आसमानों जमीन को किसने पैदा किया, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह के रब होने से कोई इनकार नहीं करता। मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं, आसमान और जमीन में जो कुछ अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह तआला बेनियाज और आप ही आप महमूद हैं। जमीन में जितने दरख्त हैं वो सब के सब, पहले तो आप सोचिए जरा कितने दरख्त हैं, यहाँ से बाहर निकले तो कितने दरख्त हैं, आपके यहाँ से घर के रास्ते में कितने दरख्त हैं, अब इसको जरा इमेजिन कीजिए, पूरी दुनिया के दरख्त। और मैंने कई जगहों पे जाकर देख के देखा, हर जगह के दरख्तों के पत्तों का स्टाइल फर्क, शेप फर्क। दरख्त ही एक अपनी जगह बड़ी खूबसूरत चीज है, फूल तो और बात की बात है। अल्लाह ताला कहते सारे दरख्त कलम बन जाए, पेंस, और समंदर दवात बन जाए। इमेजिन करें कोई एक समंदर सोचे, इतनी इतनी कलमे, इतने पेन और इतनी इंक, इसी जैसे साथ मजीद समंदर रोशनाई मुहैया कर दें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म नहीं होंगी। लोग कहते एग्जेजुरेशन है, नाउज़ुबिल्लाह। और आपको तो वक्त के साथ अल्लाह ताला की खूबियां और अल्लाह ताला के कारनामे और अल्लाह ताला की इस दुनिया में जो कुदरते हैं, ये खुल खुल के सामने आ रही है लोगों के, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, इसलिए नहीं समझ पाते। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। बेशक अल्लाह जबरदस्त भी और हकीम भी है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिंदा करके उठा देना, तो इसके लिए बस ऐसा ही है जैसे एक मुतनफ्फिस को पैदा करना और जिंदा करना। हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। असल में हमें ये सपना मुमकिन इसलिए लगता है कि हम अल्लाह की कुदरत को अपनी कोशिशों पर क्यास करते हैं, नहीं इतनी स्याही, इतने दरख्त, इतने कलम, लेकिन क्या आपको इस दुनिया में अनयूजल हद तक नाकाबिले यकीन चीजें नहीं नजर आ रही? एक बच्चे का पैदा होना देख लीजिए, एक चूजे का पैदा होना देख लीजिए, ये रात का दिन में ढलना और सितारों और सैयारों को घूमना देखिए, क्या उस रब के लिए मुश्किल है कि उसकी बातों को लिखने बैठे और वाकई सारी स्याही खत्म हो जाए? हम कहते हैं हमारी इतनी सींग डलती है और वो पता नहीं कितने महीने चलती है, तो फिर शायद ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं है, अल्लाह इससे बहुत बड़ी जात है जिसको मैं आप अपने तसव्वुर में भी ला सके। इसीलिए आखिरी आयतों में कहा, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में फिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, और इसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले आ रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह बिमा तअमलून खबीर, कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला इससे बखबर है। और ये सब कुछ इस वजह से कि अल्लाह ही हक है, और इसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग बरतर है। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी बड़ाई का एहसास दिला दे। अलम तारा नल फुल का तजरी फिल बहरी, ये भी तो देखिए कितनी अजीब चीज है, समंदरों में, दरियाओं में कश्तियों का चलना और बड़े बड़े जहाजों का चलना। ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला हमें मशहूर करना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें मरूब कर रहे हैं, और अल्लाह करे हम हो जाए। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सबर करने और शुक्र करने वाला हो। यानी देखिए, सबर नहीं सब्बार और शाकिर नहीं शकूर, साबिर नहीं सब्बार और शाकिर नहीं शकूर, सुपरलेटिव दर्जा, यानी हर दर्जे का साबिर और शाकिर अल्लाह ताला मुझे आपको बना दे। और कौन होता है सबूर और शकूर? आपको पता है कि जो हर हाल में राजी, जो कह दिया, जो कर दिया, जो हालात हो गए चल पड़े, जम जाए, तौहीद पे जम गए, अमल पे जम गए, जिसका मिजाज बदलता ही ना रहे, मुतलविन मिजाज ना हो, ना गवार हो या गवार हालात, सख्त हो या नरम, अच्छे हो या बुरे, बस अल्लाह को रब कह दिया चल पड़े, जिस बात की कमिटमेंट कर दी अब उसको निभाना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैन ऑफ दी वर्ड्स, मैन ऑफ दी वर्ड। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसा बना दे, और ऐसा ना हो कि हम अपने आप को जाया करके इस दुनिया से चले जाए। दिस इज द ओनली चांस। अब लोगों की ना शुक्री, जब मुश्किलों में पड़ते हैं तो रब को याद करते हैं, और जब निकलते हैं तो क्या करते हैं? वैसा गशीज हम मौज, और जब समंदर में लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल इसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचा कर इनको खुशकी तक पहुंचा देता है तो इसमें कोई दरमियानी रख बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता। मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुकरा है। इकरमा बिन अबी जहल का नाम आपने कई दफा सुना है इस सफर में, तब वो जहल का बेटा था, बाप की तरह इस्लाम दुश्मन था, हत्ता कि मक्का फतह हुआ। जब मक्का फतह हुआ तो इसका नाम उन लोगों में आ गया जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कह लीजिए कि वारंट जारी थे, اللہ کے نبی نے کہا کہ زندہ مردہ جو بھی ان کو اٹھا لاؤ. تو اکرمہ نے سوچا کہ مکہ میں رہوں گا تو پکڑا جاؤں گا, میں بھاگ جاتا ہوں. وہاں سے نکلے جدہ کے راستے سمندر یا میں کشتی کے راستے چلنے لگے. کشتی چلی تو پانی کے بیچ میں آئی تو سمندر میں طوفان آ گیا. اس دور کا رواج کیا تھا کہ طوفانوں میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے زمین کے جو خدا ہیں جو بت ہیں یہ نہیں آتے, ہم اوپر والے کو پکاریں گے. سب نے کہا پکارنا شروع کر دیا, اوپر والے ہمیں بچا دے, ہم بچ جائیں گے تو یہ کریں گے وہ. اس وقت اکرمہ کا دل کھل گیا, کہ یہ بات تو وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے, اور ساری بات ہے کہ جو اس پانی میں ہمیں بچانے نہیں آتے وہ خشکی میں کہاں کرتے ہوں گے. وہاں ان کے دل میں توحید کی ایک شمع ابری کہ اللہ اگر آج واقعی میں بچ گیا تو میں آگے نہیں جاؤں گا پیچھے جاؤں گا. اللہ کے حکم سے سمندر میں طوفان تھما, یہ واپس آئے, ان کی بیوی لے کر ان کو اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اسلام قبول کیا اور بچ گئے. انہی کی باتیں یہ ساری. دعا کریں کوئی سانحہ کوئی حادثہ اگر ہماری زندگی میں آیا ہے اور اللہ نے کرے اگر آگے آئے تو وہ ہمیں اللہ کی طرف لے آئے. یہ نہ ہو کہ تکلیفوں سے بھی ہمیں خیر نہ ملے, ادھر سے بھی ہم دوائیاں پھانک پھونک کے دنیا سے چلے جائیں اور ادھر ہی ہم دنیا کے اندر لوگوں کو دکھ اپنے غم سنا کے رو رو کے چلے جائیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده. لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. دنیا میں یہی دو رشتے ہوتے ہیں نا, جو مشکلوں میں سب سے پہلے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈالے. کون؟ شیطان کا ایک نام ہے الغرور. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الودود الغفور الرحیم الرحمن, تو شیطان کا نام الغرور, دھوکے والا, چیٹر. دھوکے بھی دیتا ہے اور دھوکے میں آتا بھی, خود بھی دھوکے میں جی رہا ہے اور بندوں کو بھی دیتا ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ, یہ پانچ چیزیں ہیں جس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. کون سا؟ اس کھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, وہ بارش برساتا ہے, وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے بیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے, اور کوئی نفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے, اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو اتنی بڑی ہستی جس کو اتنا کچھ پتا ہے, تو مجھ سے ڈر جاؤ. تو یہ تھی سورت لقمان جو آپ کو مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں آپ اللہ کی کائنات پہ غور کرنے والے ہوں, میں یسلم بچہ پہ عمل کر لیں, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کی نوید پا لیں, تو ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں, ہم کفر سے بچ جائیں, نہ شکریوں سے بچ جائیں. لیکن کیا کرا جائے اس انسان کا کہ جو سب کچھ دیکھتے سنتے بھولا بن جاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ نظریں نہیں لگاتا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی نظر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. آئیے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلی سورت شروع کریں گے.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Thank you.
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بات کو سمجھنے والا بنائے. سورت سجدہ شروع کریں گے. سورت سجدہ کی خاص بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت سجدہ اور سورت ملک پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے یہ آج آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ اس میں کتنے خوبصورت طریقے سے دنیا کا مقصد اور دنیا اور آخرت کا تقابل بھی کیا گیا. اگر دیکھیں تو آیات اس میں 30 ہیں, مکی سورت ہے. 5 ڈفرنٹ ٹاپک ہیں اس پوری سورت کے. پہلا جو ہے آیت نمبر 1 سے 3 میں قرآن کا تعارف, اور 4 سے 6 میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. آپ کہہ لیجیے انٹروڈکشن ہے اس میں, اور بتایا گیا کہ قرآن جھوٹ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک ہے. پھر آیت نمبر 7 سے 9 میں توحید, ایسی مثالیں دی گئی ہیں جس کا ہمارے اپنے نفسوں سے تعلق ہے. اور آیت 10 سے 14 میں قدرت اور طاقت اللہ کی دکھائی گئی ہے, یعنی کائنات پہ غور و فکر ہے بیسیکلی. پھر آیت نمبر 15 سے 19 میں مومنین کی صفات اور جزا ہے, اور آیت 20 سے 22 میں فاسقوں کی صفات ہیں, یعنی تقابل ہے قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کا انکار کرنے والوں کا. پھر آیت 23 سے 26 میں تاریخی دلائل ہے, اور آیت 27 میں ربوبیت کے دلائل ہے. دونوں کو ملا لیں تو جزا سزا کے دلائل بتائے جا رہے ہیں. اور آیت نمبر 28 سے 30 میں مظلوم مسلمانوں کو درگزر اور صبر کی نصیحت ہے. پوری سورت کا مضمون کیا ہے کہ کائنات پہ غور کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ, آخرت کو مانو, اور مومنوں اور فاسقوں کا انجام مختلف ہوگا, اور آخر میں مسلمانوں کو آزمائشوں کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. اور یہ سورت جو ہے اعلان عام کے بعد مکہ میں کے دوسرے دور میں تقریباً 4 یا 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی. اس وقت اللہ کے نبی پر جھوٹے ہونے کا اور اللہ کے نام پر جھوٹ بولنے کا الزام تھا. آئیے پڑھتے ہیں اور دعا کریں گے کہ یہ دعا سورت ہمیں یاد ہو جائے, اور ہم کوشش بھی کریں گے, صرف دعاؤں سے تو یاد نہیں ہوگی. تھوڑے سے دن رمضان کے رہ گئے ہیں, آپ دیکھ لیجئے اس کی آیتیں کو بہت زیادہ نہیں ہیں, 30 آیتیں, اگر 2-2 آیتیں کر لیں تو آخر تک یاد کی جا سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم, اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, یعنی کسی چھوٹی ہستی کی کلام, چھوٹی ہستی کی کسی چھوٹی ذات کا نہیں بلکہ اللہ کا یہ کلام ہے, اس کو اتنی ہی توجہ دو. ام یقولون افترا, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. کیا پتہ چلا کہ دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہو یہی نیت کیا کریں کہ شاید وہ مان جائے. ہم کیوں سوچے کہ وہ نہیں مانیں گے؟ ہر ایک کے لیے یہ سوچا کریں بس میرے کہنے سے اس کو بات سمجھ آ جائے گی. نہیں, میرا خیال ہے ابھی تک میں نے نہیں وہ بات کہی نا, اس لیے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو نیت رکھ کے, دعا کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اللہ تعالیٰ بندوں, اللہ کے بندوں میں بڑی خیر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا. جن کے درمیان ہے, کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیا. یعنی اللہ نے ساری کائنات اور اس کے بیچ کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا, تو کیا پھر تم ہوش میں نہ ہوگے؟ دعا کریں اللہ تو ہماری بھی مدد فرما, ہمارے سارے رکے پہ کام کر دے. یا اللہ دین دنیا کے سارے معاملے درست کر دے. یا اللہ ہمارے معاملوں کو, ہماری ساری چیزوں کو آسان حکمت کے ساتھ آسان درجے پہ پورا کروا دے. اور یا اللہ ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا دے. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, یعنی زمین پہ بھی اللہ ہی تدبیر کرتا ہے. کچھ بزرگوں کو نہیں دیا ہوا کام کہ اب ان کاموں کو تم دیکھ لو. اور اس تدبیر کی روح داد اوپر اس کے حضور چاہتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یعنی اللہ کے ہاں ایک دن 1000 دن کے برابر ہے. امیجن تو کرے ذرا کتنی بڑی ہستی ہے وہ. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پوری, ایسے لگتا ہے ہر چیز میں دی ایکسیلنسی, ایکسٹرا آرڈنری ہر چیز ہے. और आप देख सकते हैं कि फिर अल्लाह ताला के पास मेरे आपके ये मामले जो जाते हैं इनका क्या हाल है। आपको तो हमारा हर अमल अल्लाह के पास पहुंच रहा है, छोटा बड़ा ऐसा वैसा जो भी हम सोचते हैं, हमें पता चले ना चले एक ऑटोमेशन पे निजाम चल रहा है और अल्लाह ताला के पास जाते हैं। हदीस में आता है कि हर पीर और जुमेरात को बंदे के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, फिर अल्लाह ताला हर उस बंदे को माफ कर देते हैं जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता, सिवाय उस आदमी के जिसकी अपने भाई के साथ दुश्मनी हो। नोट कीजिए, अदावत, लड़े हुए भाई बहन है, कहीं जायदाद पे लड़ रहे हैं, कहीं रिश्तों पे लड़ रहे हैं, कहीं दोस्त हैं, कहीं दीनी दोस्त हैं, नहीं, ये सब खत्म कर दीजिए, इनको पीछे करें। फरमाया कब तक इनके अमल कबूल नहीं होते? जब तक दोनों आपस में सुलह ना कर लें। ये मुस्लिम की रिवायत है 6711 नंबर की। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके मेरे अमाल अल्लाह के पास जब जाएं तो कबूल भी हो जाएं। फिर उसके बाद कुछ मजीद चीजों पे गौर व फिक्र। ذالک عالم الغیب والشهادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی، سچ خوب بنائی۔ کوئی چیز دیکھ کے آپ کو لگتا ہے یونیورس میں کوئی اس میں کچھ کمی ہے؟ ایسی نہیں، ایسی ہوتی نہیں، آسمان کا رنگ ذرا سا گہرا ہوتا نا تو اچھا تھا، اور درختوں کا شیر ذرا دوسرا ہوتا، نہیں، خوب بنائی۔ احسن کل شیء خلقہ، تو دعا کرے اللہ ہمیں بھی اس کے کام احسن درجے پہ کرنے والے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سب سے چلائی جو حقیر پانی کا ہے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی کی، پھر اس کو نک سک سے درست کیا۔ کبھی نیو بورن بیبی دیکھا کسی کا؟ اپنے تو نہیں دیکھے ہوں گے، اس وقت یاد ہی نہیں ہوں گے۔ اب تو کیا نقص، کیا چھوٹی چھوٹی پلکیں، چھوٹی چھوٹی ہونٹ، پتیوں جیسے ہونٹ، چکس دیکھیے اور پپوٹے دیکھیے، اور اتنے پیارے پیارے ہاتھ، مننے مننے اللہ کہتے ہیں نک سکھ سے تیار کیا۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کام دل لگا کے کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا فلاں تو بہت پرفیکشنسٹ ہے، جو کام کرتی ہیں بہت اچھا کرتی ہیں، ویسے یہ الگ باتیں کرتی کبھی کبھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتے ہیں اور احسن کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، لیکن قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو اپنے دل کا اچھا استعمال کرتے ہو۔ ایک پریزنٹیشن ہے، ابھی موقع نہیں، اینڈ پہ دیکھ لیجئے گا کہ کیسے ہمارے کان اور آنکھیں اور دل کام کرتے ہیں، اس میں اتنی مشینیں فٹ ہیں لیکن ہم شکر نہیں کرتے۔ وَقَالُوا اِذَا دَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، ان سے کو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ذرا سوچے جو رات کو یہ سورت پڑھے اور اس آیت کا ترجمہ بھی آتا ہو تو کیا کسی کا بوجھ دل پہ لے کر سوئے گا؟ کسی کا لینا دینا لے کر سوئے گا؟ اس کو کیا پتا کہ میں نے اس نیند میں سے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن کا ترجمہ ضروری ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ وَلَوْ تَرَائِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ آیت تدبر ہے، ذرا دیکھیے کیا تصور میں آتی ہے چیز۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اب کیا فائدہ، پولیس کو دیکھ کر ہاتھ ڈال دیا تو کیا فائدہ؟ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب مزہ چکھو اپنی سرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ دعا کریں اندر سے ہم بھی ٹوٹ پڑیں، گر پڑیں اللہ کے آگے، اللہ کے حکموں کے آگے جھک جائیں۔ اور ایک خوبی اللہ یہ آپ سب میں اور میرے میں ڈال دے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی ساری رات اکڑ کے سوئے نہیں رہتے، कभी कभी उठते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं, और जो रिस्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये करने वालों को क्या मिलेगा? फला तालम नफ्सुम मा अख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता उसकी आंखों की ठंडक के लिए उसके, फिर जैसा उनकी आंखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की सजा में उनके लिए छुपा रखा है, इसकी तो किसी नफ्स को कोई खबर ही नहीं है। यदि जन्नत इतनी हसीन और छुपाई भी है, हर छुपी भी चीज खूबसूरत होती है, आपको पता है? अगर दुनिया में जन्नत दिख रही होती तो फिर शायद कशिश ही न रहती, या शायद फिर तो गुनाह करना ही मुहाल होता। फिर कौन है जो गुनाह करता और कौन है जो नेकियों को ना कर पाता? मुस्लिम की रिवायत है 7311 नंबर की, अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अल्लाह सवजल ने फरमाया, मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना कान ने सुना, और किसी दिल में उसका कोई गुमान तक नहीं गुजरा। इमेजिन तो करे क्या क्या रखा हुआ अल्लाह ने, सरप्राइज। जैसे आप भी अपने प्यारों को सरप्राइज देते हैं ना, अल्लाह ने भी आपको सरप्राइज देने हैं। हजरत मूसा ने एक मरतबा अपने रब से पूछा कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जा किसका है, यानी सबसे छोटे दर्जे का जन्नती कौन है? फरमाया, वो एक ऐसा शख्स होगा जो सारे जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नत में जाएगा। रापत बाद में वही जाता है ना जिसका रिजल्ट रुका हो। इस आदमी से कहा जाएगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो अर्ज करेगा, मैं कैसे जाऊं, सब लोगों ने तो अपनी अपनी जगह ले ली है, जैसे आप एंड पे आके कुर्सी ढूंढ रहे होते हैं, अब कहाँ बैठूं, कुर्सियां तो भर गई। हाँ तो कहा अल्लाह ताला मेरी तो जगह ही नहीं है, क्या करूं? तो अल्लाह ताला इस आदमी से फरमाएंगे, क्या तू इस बात पे राजी है कि तुझे इतना मुल्क दिया जाए जितना दुनिया के बादशाहों में किसी के पास था? इमेजिन करें, कनाडा, अमेरिका, चाइना, स्विट्जरलैंड, बड़ा बड़ा कोई मुल्क है, दे दिया जाए। हो गए कि अरब मैं राजी हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जहाँ हमने तुझे और भी इतना दे दिया, उतना उतना 5 गुना अल्लाह ताला कहेंगे और दे दिया। वो आदमी कहेगा अल्लाह मैं राजी हो गया, मैं खुश हो गया, ऐ मेरे रब। अल्लाह ताला फरमाएंगे और भी ले लो, 10 गुना ले लो, फिर 5 दिया, फिर ये भी ले लो, 10 बढ़ाओ, 10 गुना उससे बढ़ा दिया। अल्लाह की खजानों में कोई कमी है? कहा हत्ता कि वो आदमी कहेगा अल्लाह बस मैं राजी हो गया, मैं राजी हो गया। इसके बाद मूसा ने पूछा अल्लाह ताला सबसे बड़े दर्जे का जन्नती कौन है? मूसा कितने मजे से पूछ लेते थे, हम तो सोच के झुक कर जाते हैं। मूसा साहब पूछ जाते थे, कहा सबसे छोटे का ये हाल है तो सबसे बड़े का क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग जिनको मैंने खुद मुंतखब किया, जिनको अल्लाह चुनता है अपने लिए, वो जब मैंने इरादा किया तो इनकी इज्जत की जगह के दरख्तों को अपने हाथ से लगाया। सुभान अल्लाह, यानी इनकी इज्जत के ठिकानों पर जिन पर इनको रखना है, अल्लाह वहां के दरख्त खुद लगा रहा है। आप अल्लाह के रस्तों में चुने जाएं, अल्लाह आपके लिए दरख्त लगाएगा जन्नत में। फिर इस पर मोहर भी लगा दी कि इनको और कोई नहीं देख सकता सिवाय इनके, जिनके लिए तैयार है। तो ये चीजें किसी आंख ने ना देखी, ना कान ने सुनी, ना दिल पर इन नेमतों और मर्तबों का कोई ख्याल गुजरा, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। और पढ़ना हो तो पढ़ लो, फला तालम नफ्सुम मा अख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, सही मुस्लिम की ये रिवायत है 482 और 485। तो क्या अल्लाह आपका दर जाया करेगा अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही है? तो अल्लाह ताला कुछ नेमते दिखाता है, कुछ बताता है, कुछ छुपाता है, कि बाकी जाके वहां देखना। अल्लाह ताला बस वो अमल करा ले जो चुने हुए। मेरा तो दिल उस पर अटक गया कि जिनको अल्लाह खुद चुनता, अल्लाह मुझे भी चुन ले, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए दुआ करूं। भला कहीं ये हो सकता है कि वो शख्स जो मोमिन हो उस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक है? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, फलहुम जन्नातुल मावा, उनके लिए तो जन्नतों की क्यामगाहें हैं, ज़ियाफ़त के तौर पर इनके अमाल के बदले में। और जिन्होंने फिस्क का रास्ता इख्तियार किया, उनका ठिकाना दोजख है, जब कभी इससे निकलना चाहेंगे इसी में धकेल दिए जाएंगे। और इनसे कहा जाएगा चखो अब इसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम छुटलाया करते थे। इस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इनको चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बागियाना रविश से बाज आ जाएं। और इससे बढ़कर और कौन जालिम होगा जिसे इसके रब की आयात के साथ नसीहत की जाए और वो इनसे मुंह फेर ले? ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। है कोई इससे बड़ा बदबख्त जो अल्लाह के दीन की दावत को छुटला दे, मजाक समझे और बुरा समझे और के छोड़ो ये तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं? वलकद आतैना मूसल किताब, फिर इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके, بس اسی چیز کے ملنے پر آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا ان سب کے درمیان جس میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے. اور کہ ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کہ ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بیاب ہو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں, پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا تبصرون افلا یبصرون, کیا پھر یہ غور نہیں, پھر یہ پھر کیا ان کو نہیں سوچتا؟ یعنی کائنات میں بار بار دنیا بنتی مٹتی اور پھر بنتی ہے, تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں جی اٹھیں گے؟ وہ یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین, یہ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ آخر کب ہوگا اگر تم سچے ہو. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع مند نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا, پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. کرو کیا فارد انہم وانتظر انہم منتظرون, اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, یہ بھی منتظر ہیں. کس بات کے؟ یہ تو اللہ کی پکڑ کا انتظار کریں اور ہم آپ کی مدد کا فیصلہ کرتے ہیں, آپ اس کا انتظار کریں. تو یہ سورت سجدہ نیت کرتے ہیں اس کو رات کو رات کو پڑھنے کی, اور پڑھ پڑھ کے آپ کو اتنی عادت ہو چکی ہوگی کہ انشاءاللہ پھر یہ یاد بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ کر دے. ابھی 2 منٹ ہے, کوئی ساتھیوں کو ایڈمنس کو کوئی بات کرنی ہے آپ کو کرنی ہے کر لیں, کیونکہ اگلی سورت شروع نہیں کرنا چاہ رہی, وہ انشاءاللہ کل کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی باتیں کر لیں دل کی, 2 منٹ بھی ضائع نہیں ہوں گے. نہیں تو میں سورت شروع کر دوں گی. ہاں کیا سوچتے ہیں, 2 منٹ کے لیے صرف شروع کر دوں گی؟ ہاں اوپر جاتے ہیں تو میرا دل خوش نہیں ہوتا, مجھے کیا جلدی ہے اور آپ کو کیا جلدی ہے. انشاءاللہ آپ کو میرا خیال ہے نا. کدھر ہیں باجی, کدھر ہیں دونوں گھر والے, کدھر ہیں بھائی جی؟ آن لائن کے ساتھ ہی بھی لکھیں کیا سیکھ رہے ہیں, کچھ اپنا فیڈ بیک دیں. آپ کو کسی کو کوئی یہاں سے آپ میں سے کوئی اپنی شیئرنگ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو بند ہیں؟ جی ضرور نادیہ جی, موسٹ ویلکم. ابھی مائک آ رہا ہے آپ کے لیے, دوسرے بھی سنیں گے. ماشاء اللہ, پھر تو آپ اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں فیوچر میں. جی بولیے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. یعنی لاسٹ ٹائم آڈیو تھا, اس دفعہ ویژول ہے. اس دفعہ ویژول ہے بالکل. آگے چیئر مل ہی جاتی ہے, بس وہ اللہ نے رکھی ہوتی ہے آپ کے لیے کچھ نا. جی اسما جی, آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ پاس ہی ہیں تو کر لیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بھی پہلی دفعہ میں اللہ کی توفیق سے جو ہے قرآن آپ کے سامنے روز یہاں آ کر سن رہی ہوں. الحمد للہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. گھر سے کلاسیں لیتی تھی, گھر سے سنتی تھی, مگر وہ چیز یہ بالکل نہیں پائی پائی گئی جو اب مجھے مل رہا ہے. اندر سے اندر صاف ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی اس کیفیت کو ہمیشہ زندہ رکھے اور اچھا بننے کی توفیق دے, اور جو سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. عمر سے دم تک اللہ کی کلام سے جڑی رہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چن لے, آپ سب کو چن لے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو پیارے ابھی تک یہاں نہیں آ سکے ان کو لانے کی کوشش کرتی رہوں مرتے دم تک. آمین. بہت اچھا لگ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اور کہنا چاہوں گی کہ سجدے کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ آئی تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ ایک سسٹر ہے جو ہر روز کا 100 کرونا صدقہ دیتی ہے نا. تو مجھے بھی ایک چیز ملی, میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دوں. الحمدللہ ہر روز دیتی ہوں اللہ کی راہ میں, اور واقعی سے مشکلیں ختم ہوتی ہے. और इससे मेरा ईमान भी बढ़ता है और खुशी से देती हूँ। लगी मैं आपके लिए कर रही हूँ और मैं आप सबसे भी ये कहूंगी, ये बहुत बड़ी बात है वाकई। इसमें जो है तो 70 गुना ज्यादा हमें पैदा होता है होगा, तो हमें उस जगह पे लगाने के लिए जहाँ हमारी नजरें संवर जाए। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा स्कूल है, हमें इसको जितना हो सके हमें अल्लाह के लिए करना चाहिए और अपनी नस्लों को संवारने के लिए इंशाल्लाह।
ठीक है, टाइम पूरा हो गया, ऑनलाइन वाले चाहें तो हमारे साथ रुके, चाहें तो ले लें अपना माइक।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह हमारा जो है ना सूरत 21वां पारा चल रहा है और सूरत अल-फलाह में सजदा सुनी और सूरत लुकमान और हर चीज जो सी सूरत सुनते हैं वही लगता है कि ये मेरे लिए ही थी। और रोजे माशाल्लाह इतनी तेजी से जा रहे हैं कि आज आधा तो हो गया सिलसिला, तो पीछे गिने चुने दिन रह गए हैं और अल्लाह से यही दुआ है कि इनमें कुछ कर लें। यकीन करें जब अपना मुहासबा करती हूँ तो मुझे यही नजर आता है कि जो मैंने सोचा था वो कुछ भी नहीं किया, बस यही। फिर भी मायूसी नहीं होती, अल्लाह से उम्मीद होती है कि अल्लाह जी जो भी कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ, अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने जितने साथी रहते हैं उनको बार बार रिमाइंड करवाएं, जो दिन हमारे पास रह गए हैं उनमें हम फायदा ले लें, खुद भी ले लें दूसरों को भी दे दें। और जो आने वाला वक्त है जो इसके बाद रमजान गुजर जाएगा उसके बाद मैंने क्या करना है उसके लिए भी जरूर सोचे, इस चीज के लिए कि अल्लाह ने मुझे मोहलत दी हुई है मैं कुछ ना कुछ कर लूं, और कहीं ये ना हो जाए कि मेरे लिए वो सारी उज्जत तमाम हो जाए कि मुझे सारे मौके मिले थे तो मैं अल्लाह की किताब को कुछ टाइम नहीं दे सकी, वो किताब नहीं सीख सकी, वो अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ सकी। तो उसके लिए जिसको जिस चीज की जरूरत है पहले सबसे इसकी अरबी की जरूरत है हमें इसकी, फिर अरबी के साथ साथ हमें इसकी समझ की जरूरत है, समझ के साथ हमें अमल की जरूरत है, दूसरों को बताने की जरूरत है। ये कुरान के जो 5 हक है ये कुरान ने हमसे मांगने हैं। तो मैं सब साथियों से सब बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, हिम्मत करें, अल्लाह ताला बरकत देगा इंशाल्लाह। और जो आसमा जी ने अभी बात की सबका की तो उसमें मैं ये कहूंगी कि कुछ ना कुछ देने के साथ साथ यहाँ से कुछ ना कुछ लें भी, ये सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास चीजें हैं वो हमें हमारे साथियों ने ही दी हुई हैं, वो चीजें खरीदना भी सदका है क्योंकि उसका जो पैसा होगा वो भी इसी स्कूल में ही जाएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो चाहे खुद इस्तेमाल करें या दूसरों को दें। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज में फख्र महसूस करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है घर की सिर्फ ग्रोसरी भी कभी कभी यहीं से जाती है, जब कुछ साथी को चीज ऐसी दे जाते हैं जो स्कूल में हम इस्तेमाल नहीं करते। अमूमन तो यही होता है कि हम यही पकाते हैं, यही बेचते हैं, यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई दफा इस तरह भी हुआ है कि स्कूल से वो चीजें खरीद के लेके गए हैं कि दुकान से जो खरीद के लानी है, तो यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से कपड़े लेते हैं, यहीं से बर्तन लेके जाते हैं, तो जो किसी को गिफ्ट देना होता है वो भी इधर से ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास इतनी इतनी अच्छी बुक्स है, ईद आ रही है अपने बच्चों के लिए उनको कावे दें, और ये किताब जो है वो सबसे बेहतरीन गिफ्ट होता है। तो अब जो हम से गलतियां हो चुकी हैं अल्लाह हमें माफ करे और आने वाले वक्त में हमें इस चीज का सही इस्तेमाल और इसकी कदर करने वाले बनाए। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम यही नहीं कहते हमें इसका चंदा दे दे, हमारे ये मसले हैं, हमारे ये मसाइल हैं, जो चीज है सब आप लोगों के सामने खुली हुई है। इसमें यही है कि खुद ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डालें और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो आप इसमें अपना हिस्सा डालें अल्लाह उसको कबूल करे। और हम जो इस वक्त इस जगह पे लगे हुए हैं और यही सोच के जरा भी एक जिसको कहते हैं ना एक तिनका भी गिराने को और जाया करने को दिल नहीं चाहता, पता नहीं किसकी मोहब्बत है, किसका जज्बा है, किसका इखलाक है, किसका प्यार है, तो अल्लाह जी हमसे किसी चीज की बेकदरी ना करवाए। जजाकल्ला खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आमीन, जजाकल्ला खैर। जी सर, इंशाल्लाह यहाँ पे रुकते हैं। कल आपको तो कौन सी सूरत शुरू हो रही है? सूरत
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی ماشاء اللہ بہت اچھا آج کا سیشن رہا آپ نے کچھ سسٹرس کی شیئرنگ بھی سنی تو آپ لوگ بھی ریڈی رہیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی شیئرنگ ضرور سینڈ کریں جو لوگ رجسٹرڈ ہیں और आपने जैसे बार बार रोज कहा जाता है कि अपना मतलब मुहासबा करना, फिर जो कुछ सीखा है इसको करना, रिकैप भी डेली होता है क्लास के बाद में भी और स्टार्ट में भी, तो अभी मैं रिकैप तो नहीं करवाऊंगी ज्यादा, सिर्फ कुछ चीजें रिमाइंड के लिए, जैसे सूरत सजदा के सज ने भी बोला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सूरह मुल्क और सूरह सजदा पढ़े बगैर सोते नहीं थे, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि जो चीजें हम डेली सीख रहे हैं जितना हमसे हो सकता है हमको अपने हमने अमल में लेके आना है, ठीक है। सही जी, वॉल्यूम नहीं आ रहा सही, बस अभी क्लास वैसे भी कंप्लीट हो गई है, इंशाल्लाह हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कोशिश कीजिएगा कल सूरह अहज़ाब स्टार्ट हो रही है, जिस जिसको आप भी साथ लेके आ सकते हैं उनको लाजमन आप साथ लेके आए, ठीक है। तो जरूर जरूर कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह। सही अच्छा, बाकी सूरह अंकबूत का देख लें, मकड़ी का जाले की बात हुई, मकड़ी का बताया, शिर्क के बारे में हमने सीखा, और ये चीजों को लाजमन आपने थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा सूरह अंकबूत को। फिर इसके अलावा जी सूरह अरूम है, सूरह लकमान है, सूरह सजदा है, तो लाजमन एक दफा उनको रिवाइज कर लीजिएगा इंशाल्लाह। कल हम दोबारा से इसमें रिकैप करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी के साथ अभी वाइंड अप करते हैं, इख्ताम करते हैं, क्योंकि मैं नहीं लूंगी आपको ज्यादा टाइम, क्योंकि माशाल्लाह 3 घंटे हो गए हैं, आप लोगों ने माशाल्लाह एक स्ट्रेच में क्लास पूरी ली है। कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें हैर वाफियत के साथ कल भी इस कुरान के साथ हैर वाफियत के साथ लेके आए, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह है, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الهي امين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، وأهلا أنت أن تعبد، وأهلا أنت أن تطاع. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد في الأولى والآخرة.